धन्यवाद भाई नेविल, प्रभु आपको आशीष दे। शुभ प्रातः, प्रातः भाई। शुभ प्रातः मित्रों, भवन में आने के लिए आनंदित हूँ। अभी कुछ क्षणों पहले मुझे एक बूढ़े सेवक के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया और उसके ऊपर बेहोशी जैसी थी। उसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं मिली, वो प्रभु का एक संत है। वहाँ मार्ग में शैतान ने मुझे बीमार करने का यत्न किया कि उल्टी भी हो। मैंने कहा हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, ये ठीक बात है। जी हाँ, इसलिए ये भाई कॉगिन्स थे, हम उन्हें यहाँ आराधनालय में अच्छी तरह जानते हैं। वे कैरोलिना से आते हैं और वो बहुत ही बीमार थे और बेहोश जैसे थे, परंतु ऐसा नहीं लगता था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है शारीरिक रूप से। ये शैतान उनकी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो एक बड़ा बहकाने वाला है और वो एक अच्छा भी है। आपने एक बूढ़ी बहन की कहानी सुनी होगी, वो कलीसिया में गई, वो किसी के विषय में कुछ बुरा नहीं कहती थी। कहा कि आप शैतान के विषय में क्या सोचती हैं? कहा कि वो एक अच्छा विरोधी है, इसलिए वो जो है वो है। इस प्रातः हम आनंदित हैं, इस सप्ताह फिर से प्रभु के भवन में हूँ, प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और अब इसमें मैं इस विषय पर बोलने जा रहा हूँ, लहू के द्वारा सुरक्षा। और ऐसा लगा कि पवित्र आत्मा ने मेरा इस पर एक प्रकार से विचार बदल दिया, और मेरे पास सिखाने के लिए दूसरा विषय है। क्योंकि फिर इसके बाद मैंने पिछली रात्रि कहा, क्यों वो इस प्रकार के विषय में मेरा विचार बदलेगा, लहू के द्वारा सुरक्षा। आप समझते हैं कि विषय कहाँ पर होगा, इज़राइल लहू के नीचे प्रतिज्ञा की ओर बढ़ रहा है, आप समझे। इस पर किसी और समय बोलूंगा। इसलिए मुझे स्मरण है कि जो अधिक समय नहीं हुआ, मैंने एक स्वप्न देखा था, और मैं इस स्वप्न में मुझे आराधनालय में भोजन सामग्री जमा करनी थी, आप समझे, यहाँ इस स्वप्न में। कितनों को ये याद है, कुछ सप्ताहों पहले स्वप्न आया था। मैं आपको इसका अनुवाद नहीं दे सका था। यदि ये मेरा अधिक समय नहीं लेगा, मैं आपको बताऊंगा, यदि आप सुनना चाहते हैं, ठीक है। बहुत कम होता है कि मैं कोई सपना देखूं जिसका कोई अर्थ हो। ये अक्सर मैं देर में सोने जाता हूं और फिर उठ जाता हूं, और अधीर या थके हुए आप स्वप्न देखते हैं, फिर सोने जाते हैं और स्वप्न देखते हैं, फिर उठते हैं। आप जानते हैं ये कैसे है, मेरा जैसा एक विकल। और मैं भाई वुड और भाई साउथमैन के साथ बाहर था, और प्रभु लोगों को दे रहा था, आ रहे थे, और ये टूसान एरिजोना में था, और प्रभु सही सिद्ध हर मामले में, स्वप्न देने, अनुवाद में। और आप जानते हैं, जब कोई मुझे स्वप्न के विषय में बताता है, तो केवल एक ही विधि है कि मैं अनुवाद दे सकूं। मैं स्वप्न को देखता हूं, और आप में से बहुत से जानते हैं कि आप में से कुछ मुझे बातें बताते हैं कि आपने मुझे स्वप्न का सब कुछ नहीं बताया, परंतु जब ये मुझे फिर से मिलता है, तो वो मुझे वो भी पता लग जाता है जो आपने मुझे नहीं बताया, समझे। और इसलिए आपको इसे फिर से देखना होता है, और तब वो आपको बताता है। इसलिए ये कभी कभी अधूरा, कभी कभी ये कठोर और व्यक्ति सहमत नहीं होता, परंतु आपको सच्चाई पर होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, समझे। क्योंकि वे इसकी आशा कर रहे हैं, और ये कभी नहीं, प्रभु मेरे लिए सदा भला है कि ये हमेशा सही रहा। इस प्रकार उस रात्रि मैं सोने चला गया, और मैंने स्वयं एक स्वप्न देखा। मैंने सोचा मैं था एक व्यक्ति जिससे वर्षों पहले मैं बॉक्सिंग करता था, आप में से बहुत से पुराने लोग। मैं भाई रॉय स्लॉटर के विषय में वहाँ दरवाजे पर खड़ा सोच रहा था। मैं समझता हूँ कि ये हमारे एक बहुत पुराने सदस्य हैं इस कलीसिया में, भाई रॉय स्लॉटर। मैं समझता हूँ आसपास में ये सबसे पुराने सदस्यों में से हैं। और बस मैं जबकि मैं उनके विषय में बात कर रहा हूँ, उनकी बहुत सी अच्छी बातें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। ठीक है, वो मेरा भाई है, बल्कि मैं उनको एक गुलदस्ता भेंट करता हूँ, या एक कली बजाय एक पूरे गुच्छे के, जबकि वो चला गया। ये ठीक बात है, बहुत सी बातें हैं। भाई रॉय मेरे लिए एक वास्तविक भाई हैं। वो और उसका परिवार वहाँ रहते हैं, और छोटे परिवार के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, और अच्छे बालकों का पालन पोषण किया। मैं उनके सारे लड़के और लड़कियों को जानता हूँ, और उनका छोटा लड़का जब मर गया तो उसकी अंत्येष्टि पर प्रचार किया। और मुझे याद है एक बार एक व्यक्ति आराधनालय पर काम कर रहा था, और बड़ई होने के कारण उसे ये करना था, और हमारे पास अधिक पैसे नहीं थे, और वो भीतर की साज सज्जा कर रहा था। और कोई आया जो काम करना चाहता था और उसने वो नहीं किया और बैठा रहा, फिर दावा करने लगा कि मैंने आधा घंटा काम किया है या कुछ, और अपने पैर में चोट लगा ली और कलीसिया पर मुकदमा करने के लिए उसके लिए बहुत था और हम पर $10,000 का मुकदमा डाल दिया। हमारे पास कुछ नहीं था और हमें नहीं मालूम पड़ा कि जब तक उन्होंने न्याय कर दिया। भाई, हमारे पास कुछ नहीं था, हमें इस विषय में कुछ भी मालूम ना था और उन्होंने फैसला दे दिया। आप देखिए, उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस व्यक्ति का बीमा नहीं था, इसलिए ये हम पर आ पड़ा, हमें भुगतान नहीं करना था। और मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा, मैं वहाँ पीछे बैठा था। रॉय ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक बूढ़ा, भाई रॉय मुझे क्षमा करना, एक पुरानी सी डायरी और उसमें से एक चेक निकाला जो उन्हें लादान से मिला था। भाई बिल, मेरी ओर से ये है। छोटी बूढ़ी, उसकी बहन एवलीना, संभव है वो यहाँ कहीं पर बैठी हो। वो भाई ब्रणम, मेरा छोटा घर जिसकी कीमत $300 है, हमने उसमें सब लगा दिया। देखा, वो मूल वास्तविक तत्व, यदि आप मुझसे बातें करें, मेरी पुस्तक में ये वास्तविक है। तब मुझे याद है, उसके थोड़े समय के बाद मैं बाहर अपनी पहली सभा में था। मैं सेंट लुइस में था अपनी एक बड़ी सभाओं में, और एक तार आया, मेरी छोटी लड़की मरने को है। भाई स्लॉटर एकदम से आए। मैंने जल्दी से आकर अपने कपड़े अटैची में रख दिए, इसके लिए यही था। मैं बस उन्हें मना नहीं कर सका और हम यहाँ पर आ गए। मैं घर आया, कमरे में गया, नर्स वहाँ उसके अतुलिक अस्पताल में थी जो न्यू एल्बनी में था। उसकी छोटी लड़की को छोड़ दिया गया था। जैसे ही हम वहाँ कमरे में घुसे, प्रभु यीशु ने उसे चंगा कर दिया। अब वो यहाँ पर है, आप देखें, समझे, जैसे कि रोटी पानी पर, ये किसी दिन आपके पास वापस आएगी। अपने विषय से हटकर, परंतु फिर से आरम्भ मैं जा रहा हूँ। मैं बॉक्सिंग करता था, वहाँ पर एक व्यक्ति था जो इस नगर में है। अब वो बेचारा बुरी तरह पीता है, उसका एक लड़का पुलिस में है, स्मिथ, जॉर्ज स्मिथ, वे उसे 6 सेकंड स्मिथ कहते हैं। वो मुझे बॉक्सिंग का प्रशिक्षण देने को गया जब हमारे पास थे। इसके पहले कि गोल्डन ग्लव्स आरंभ हुए, हम यहाँ सरकारी में थे, और उसमें क्यों, वो बहुत ही कठोर व्यक्ति था जो मैंने कभी अपने जीवन में देखा। वो बस मुझे मारता और मैं हवा में घूम जाता, और मैं वापस आया। मैंने कहा, इस विषय में तुम्हें इतना कठोर नहीं होना चाहिए, समझे। मैंने कहा, तुमने तो मेरी सांस ही उखाड़ दी। उसने कहा, बिली, मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई मतलब नहीं कि तुम कितने प्रशिक्षित हो, तुम्हारे पास खेल कूद का कितना भी अनुभव हो, और तुम कितने मजबूत हो अपने कदमे या ऐसा कुछ। कहा, एक प्रहार लहू को रोक देता है जब इस प्रकार से मारा जाता है। और कहा, अब तुम मुझे से घृणा कर सकते हो, परंतु जब तुम वहाँ स्वयं उस घेरे में जाओगे, कहा, तुम इसकी सराहना करोगे। कहा, तुम्हारा शरीर इससे बनता है कि एकदम से वापस आओ। यदि आप पर प्रहार हुआ है और गिर जाते हो और आप पड़े हुए गिनती सुनते हैं, परंतु यदि तुम्हारा शरीर बना है और प्रहार को सहन कर सकता है, कहा, तब जब तुम इस पर प्रहार करते हो, कठोर प्रहार तुम्हें मारता है। कहा, जब तुम एकदम से वापस आ जाते हो और फिर से अपने पैरों पर घेरे से बाहर निकल जाते हो, घेरे में फिर वापस आते हो। वो इसमें होकर निकला था, मुझे घेरे से बाहर गिरा दिया, इसलिए उसने कहा, आपको ठीक ऐसे ही करना है, समझे। वो मुझे मार डालना चाहता था। वो मुझसे 30 या 40 पाउंड भारी था जो मैं कभी था, और वो एक लड़ाकू था, मैं एक विद्यार्थी, वो तो लगभग मुझे मार ही डालता। उसने कहा, परंतु तुम इसकी सराहना करोगे जब तुम घेरे में जाओगे। मैंने पाया कि यह सत्य था। तब मैंने उन सार्जेंट्स को सुना जो सेना में लड़कों को प्रशिक्षण देते हैं और कठोर, वे सार्जेंट से घृणा करते हैं, परंतु जब ये आक्रमण का मामला आता है, वे उससे प्रेम करते हैं, उस कठोर प्रशिक्षण के लिए। इसी प्रकार मैं मसीहों को प्रशिक्षित करना चाहता हूँ, अपने बालों को ना काटें, श्रृंगार ना करें, ये ना करें, कठोर हो गए। आप मेरी सराहना करेंगे जब मैं मार्ग के अंत में आता हूँ, समझे। प्रशिक्षण को देखिए, उस प्रशिक्षण को सही लें, परंतु हम वचन के साथ सही बने रहें। ये कठोर हो सकता है, नामधारी मतभेदों को टुकड़े टुकड़े कर दे, परंतु आप सराहना करेंगे जब आप मार्ग के अंत में पहुँचें, समझे। आप पुस्तक के द्वारा खड़े हुए हैं। इसलिए पत्नी ने मेरे हाथ में हाथ ले लिया और हम चले गए। और अब जॉर्ज स्मिथ, वो, मैं समझता हूँ वो पके बालों वाला व्यक्ति, मैं समझता हूँ वो मुझसे 7 या 8 वर्ष मुझसे बड़ा होगा, और वो वापस बॉक्सिंग के घेरे में आया और वो लड़ रहा था। और ये युवा लड़के जो आ रहे थे, बड़े चौड़े कंधे वाले लड़के, वे उसकी बराबरी नहीं कर सके, वे बस, वो उन्हें 1 मिनट में पीट देगा। और एक युवा लड़के ने कहा, मैं उस पुराने को पीट सकता हूँ, मैं जानता हूँ मैं सकता हूँ। इसलिए वो एक बड़ा खिलाड़ी वहाँ घेरे में कूद पड़ा, वो आधी मिनट नहीं रुक सका और वापस आ गया, बोला, मैं नहीं जानता कि ये कहाँ से आया है, परंतु निश्चय ही वो एक पुरुष है। और फिर मैंने अपनी पत्नी को स्वप्न में देखा और मैंने कहा, पत्नी तुम जानती हो उसने मुझे पहला प्रशिक्षण दिया। और फिर आप जानते हैं कि स्वप्न अजीब से होते हैं। मैं एक बड़े समुद्र पर आ गया, पानी उछाले मार रहा था और नाविक अब मीडा मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं थी। और फिर इसमें नाविक वहाँ आया और उसने मुझे लगभग 2.5 फुट की चौड़ी नाव दी और उसने कहा, ये बिल्कुल सफेद प्लास्टिक सी, उसने कहा ये आपकी नाव है। ओ, मैंने कहा मैं इससे पार नहीं करूंगा। उसने कहा ठीक है, कहा ये एक छोटे घंटे में 50 मील भागेगी यहाँ ऊपर नीचे। मैंने कहा ये किनारे पर ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु ये वहाँ नहीं देखा, मैंने कहा। उसने कहा अच्छा इनके साथ जाओ, और मैंने देखा और यहाँ भाई वुड और भाई फ्रेड सॉफ्टमैन बैठे हैं। वे दोनों भाई जिस रात्रि मैंने स्वप्न देखा मेरे साथ थे, और वे एक हरी नाव में बैठे हुए थे बहुत से साथ सामान के साथ, कैंप का साथ सामान, तंबू और आदि आदि, और वे वहाँ बैठे थे। उसने कहा उनके साथ जाओ, मैंने कहा वे तो नाविक भी नहीं है। मैंने कहा मैं ये जानता हूँ, मैंने कहा मैं नाविक हूँ और मैं नाव के विषय में जानता हूँ कि उसे कैसे चलाएं, परंतु मैंने कहा वे कभी नहीं करेंगे, वे नहीं कर सकते, जो भी है मैं इस तरह से नहीं जाऊंगा। भाई उसने कहा वे आपसे प्रेम करते हैं, और कहा क्यों नहीं आप यहाँ वापस आ जाते हैं और रुक जाते हैं। इसलिए मैं वापस चला गया और एक छोटा सा स्थान जहाँ हम कभी थे, एक छोटा स्थान कॉन्डाइक बस्ती से लगभग 40 मील, एक छोटा गोदाम चरागाह और चीजों के लिए। ऐसा लगा कि ये कॉन्डाइक है और ये इस आराधनालय में बदल गया। मैं ठीक यहाँ पर खड़ा था, मुझे भीतर बुलाया गया था, एक बड़ा बर्तन सुंदर भोजन का जो मैंने कभी देखा। गाजरें ऐसी लग रही थी कि 3 फुट लंबी हों, और चुकंदर और मटर और आलू और हर चीज। उसने कहा इसमें ढेर सारा जमा कर दो, समझे, और मैं वहाँ पर खड़ा था, इसमें जमा कर रहा था, और मैं जग गया। मैं इसे नहीं समझ सका, मैंने सोचा ये बस एक स्वप्न है, और मैं चला गया। भाई वुड और बहुत से परेशान हुए, इसलिए यहाँ उसका अनुवाद है। जैसा कि मैंने बहुत बार आपको बताया, मुझे प्रतीक्षा करनी थी, चीजों को घटित होना है इसके पहले कि आप सकें। निश्चित बातें जो उसे पंक्ति में लाती हैं, यहाँ वो अनुवाद है। वे हम समुद्र पार की आशा कर रहे थे। भाई मेनरिन एर्गन ब्राइट मेरे प्रिय मित्र, वो मेरी पत्नी और मेरा खर्चा का भुगतान करने जा रहे थे हमारे पैलेस्टाइन के पर्यटन का, और हम स्विट्जरलैंड से जा रहे थे और नीचे अफ्रीका 1 जून के अभियान में। और मेरी पत्नी और रिबेका और वे बहुत ही रोमांचित थे ये जानकर कि उन्हें जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और पैलेस्टाइन होकर जाना है। उन्हें तब तक प्रतीक्षा करनी थी जब तक मैं अफ्रीका का अभियान पूरा करूं और फिर वापसी पर उन्हें ले लूं। और वे एक महान आशा में थे। आपने मुझे सदा अक्सर कहते सुना होगा, यदि प्रभु की इच्छा हो, यदि प्रभु की इच्छा हो। मैं समुद्र पार के अभियान का लक्ष्य है अभी तक ठीक नहीं जानता, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु यहाँ जो था, ये श्री स्मिथ, जॉर्ज स्मिथ, जो इसमें मेरा पहला प्रशिक्षण देने वाला और किसी भी युवक से मुकाबले में अधिक था, वो अपनी लड़ाई के लिए यहाँ आज शहर में था। प्रार्थना पंक्ति में मेरा पहला प्रशिक्षण था, समझे। बहुत सी बार मैं लोगों के ऊपर लाता हूँ, वहाँ दर्शन होता है, प्रतीक्षा करें। जी हाँ, ये एक दर्शन है, वो एक दर्शन, इसने कभी भलाई नहीं की। जब मैंने पहले आरंभ किया, मैंने कभी भी व्यक्ति को, जब तक कि मैं पंक्ति में कुछ ना पाऊं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था, और उसने मुझे रोका, उस महान ने, देखिए इस विषय में मुझे बताया, मैं आगे जाऊंगा और लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। और मेरे परिणाम 100 गुना थे, क्योंकि मेरे पास मुझे एक रात्रियों में 400 या 500 के लिए प्रार्थना करनी होगी। इस प्रकार से हो सकता है 25 या 30 हो सकता है, इतने भी नहीं, हो सकता है 10 या 15 दर्शन, और मैं और आपको मुझे बाहर ले जाना पड़े लगभग। उसी बात पर फिर वापस जा रहा हूँ, अपने पहले प्रशिक्षण पर। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में कुछ नहीं था जो कभी इसके साथ खड़ा हुआ या देख सकता, क्योंकि ये वचन है, ये कोई नामधारी नहीं है, ये वचन है, समझे। और फिर वहाँ तब आप ध्यान दें, इसके बाद अगला भाग मेरा स्वप्न से चली गई। जब मैं समुद्र पर आया, जो था विदेश जा रहा था, अब भाई अर्गन ब्राइट ने मुझे बुलाया उस रात्रि, बहुत ही रोमांचित, और कहा भाई ब्रणम ये एक महान छुट्टियां होंगी। भाई शकेरियन को दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए विदेश यात्रा रद्द हो गई, और वे स्विट्जरलैंड की सभा के लिए, वो चाहता था कि मैं एक रात्रि के लिए वहां जाऊं, और वहां एक रात की सभा थी और बाकी सब छुट्टियां थी, बस देश में इधर उधर घूमना। और ये अब जो कि अच्छा है, भाई अर्गन ब्राइट एक अच्छे मसीह, मेरे और मेरे परिवार के करीबी मित्र, और परंतु आप देखिए वो छोटी प्लास्टिक की नाव जिसमें वो मुझे भेजना चाहते थे परमेश्वर का वचन थी, उसमें अधिक प्रचार नहीं था कि मुझे सागर पार बुलाना। मैंने कहा ओ ये नहीं, केवल इतने के लिए ओ। उसने कहा तो फिर उनके साथ जाएं जैसे वे जाते हैं। मैंने कहा वे नाविक नहीं है, प्रचारक, मैं एक सेवक हूँ। यदि वे गए तो ये कुल मिलाकर छुट्टी होगी, कैंप का सारा साथ सामान इसमें, परंतु मैं ये नहीं करूँगा। मैंने मना कर दिया, इसलिए ये स्वप्न का अनुवाद था, समझे। और फिर श्री एर्गन ब्राइट ने मुझे बुलाया कुछ रात्रि पहले और मुझे बताया, निसंदेह हमने सुना है कि समुद्र पार की सभाएं भाई शेकेरिन के पक्ष में रद्द हो गई, और तब वहाँ कुछ नहीं, वहाँ स्विट्जरलैंड में एक, मेरे पास केवल एक रात्रि थी और मैं पहले मेडा को मुझे बताना था कि वो जाना चाहेगी या नहीं। इसलिए मैंने उसे उस रात्रि फ्लोरिडा से फोन किया था या जॉर्जिया से, उसे बताया कि भाई एर्गन ब्राइट ने फोन करके कहा है कि हम 20 मई को जा रहे हैं। उसने कहा ये नहीं नहीं, समझे। तब बालकों की परीक्षाएं हो रही थी, नहीं जा सकते, उसे मना करना पड़ा स्वयं से ही, क्योंकि वो भी इसमें सम्मिलित थी, ये उसकी छुट्टी थी और ये वहाँ था। यहाँ तक कि स्वप्न आदि का भी अर्थ होता है, हर चीज में कहीं कुछ है, इसलिए स्वप्न के अनुवाद हैं। अब वापस आ रहे हैं, मैं कह सकता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे, और ये टेप पर है, लौटते हुए मार्ग पर थे। इसके पहले कि मैं वहाँ गया, कितनों को याद है कि मैंने दोहराया था कि एक आवाज मेरे पास आई एक सुबह कमरे में दर्शन के बाद, और इस विषय में कहा, सर्प के विषय में बताया, और ये बांध दिया गया, और किसी चीज से न डरे। उसने कहा मत डर, क्या मैंने प्रमाणित नहीं किया, जहाँ कहीं तू गया मैं तेरे साथ हूँ, क्या मैंने प्रमाणित नहीं किया कि मैं तेरे साथ हूँ जब तू शिकार पर गया। स्मरण रख जब मैंने तुझे इस विषय में बताया कि मैं क्या लेने जा रहा था इसके पहले कि मैं छोड़ता, और वो सब, समझे। कहा क्या मैंने प्रमाणित नहीं किया कि मैं तेरे संग हूँ। तब एक वास्तव में मीठी आवाज आई और कहा, कभी असफल ना होने वाली यीशु मसीह की उपस्थिति तेरे साथ है जहाँ कहीं तू जाता है। मैं नहीं जानता कि ये क्या है, मैं नहीं कह सकता। घर आ रहा था उस रात्रि या उस दिन, इसके पहले कि घर आता मुझे दर्शन मिला, और मैंने कुछ छोटे छोटों को देखा, दुबले दुबले युवा लड़के या कुछ टोपी सी पहने, और हम खड़े हुए शिकार कर रहे थे, और मैंने एक बड़े से पर गोली दागी, बड़ा भूरा भालू सा दिखने वाला, और तब वे घूमे और मुझसे कहा परंतु सभा के विषय में कुछ भ्रम है। मैंने कहा कोई मतलब नहीं कि क्या गड़बड़ है, यदि मुझे जाना था जहाँ कहीं भी जो भी है मैं जाऊँगा, इससे कोई मतलब नहीं, और दर्शन रुक गया। मैं नहीं जानता ये कहाँ पर है, परंतु ये टेप पर है, ये घटित होने जा रहा है, समझे। बस याद रखें ये घटित होने जा रहा है, ये दर्शन है। इसलिए अब अगली रविवार को मैं टेनिसी में होने जा रहा हूँ, यदि प्रभु ने चाहा अगली शनिवार रात्रि और रविवार भाई एमी लिटिल फील्ड के साथ, वो कलिसिया के गॉड हेडक्वार्टर वहाँ क्लीवलैंड टेनिसी में, भाई एमई लिटिल फील्ड अपनी कलिसिया में, और यहाँ मैंने उनके लिए समर्पित किया है 2 या 3 वर्षों पहले यहाँ क्लीवलैंड टेनिसी में, अगले शनिवार रात्रि और रविवार प्रातः, बस एक रविवार प्रातः की सभा रविवार को। मुझे समय दिया गया कि मैं अपने परिवार के साथ जाऊं और हम वापस आए, और मैंने उनसे वायदा किया कि वापस आकर उनकी कलिसिया में फिर से प्रचार करूं, ये अगला रविवार। तब उसके बाद वाला रविवार भाई एर्गन ब्राइट भाई रो के साथ यहाँ होने जा रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के राजनयिक हैं, जिन्होंने 3 या 4 राष्ट्रपतियों की अधीनता में सेवा की है। वे उस रविवार को यहाँ होने जा रहे हैं, और उस नए चित्र के साथ मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक यहाँ आने का यत्न करे, यदि संभव है उस समय के लिए मैं स्वयं भी यहाँ होना चाहता हूँ। आने वाला रविवार ईस्टर का है, हम एक महान सभा की आशा कर रहे हैं यहाँ ईस्टर पर। प्रभु ने चाहा मैं यहाँ ईस्टर रविवार को होना चाहता हूँ, और हमारी सूर्य उदय की सभा जैसे होती है बपतिस्मे, आप जो हमारे प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने वाले हैं, रविवार को यहाँ हूँ, और इसकी आशा या बोल गया हूँ थोड़ी देर पहले। ये सब होते हुए हमारे पास बैठने का स्थान नहीं है, हम बॉयज क्लब ले सकते हैं, 700 या 800 बैठ सकते हैं, यहाँ आसपास से अधिक एक नया क्लब यहाँ हमारे पास कोने पर है, तब यहाँ बपतिस्मे की सभा के लिए वापस, और फिर वहाँ वापस, ताकि सब ईस्टर की सुबह में आराम से बैठ सकते हैं। हम इसके विषय में देखने का यत्न करने जा रहे हैं इस सप्ताह, और देखेंगे। तब आने वाली सभाएं आरंभ होंगी, मैं यहाँ से 25 महीने के 25 या 26 को जाऊंगा, और फिर वहाँ 7वां, 6वां, 7वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं, मैं वापस वहाँ बाहर या विक्टोरिया आइसलैंड में कुछ इंडियंस के पास, जहां आपको उनके पास नाव से जाना होगा। एक मेरा सज्जन मिशनरी मित्र भाई, मैं पिछले बर्फ गिरने के समय उसके साथ शिकार पर था, और अच्छे घर से वो और उसकी पत्नी बाहर थे, और उसकी भुजाएं और हर चीज अलग अलग जगहों से छिली हुई थी। भाई ये क्या है? ये मक्खियों, खटमलों और चीजों से था। देखिए, वे ठीक नहीं रह रहे थे। जहां भी उनको किसी भी चीज में रहना था, उन इंडियंस के बीच में, वो उनमें से कुछ को वहां मुखिया की सभा में लाया था। वे सब कैथोलिक हैं, सही में सारे, और पवित्र आत्मा उनके मध्य में गया और उस मुखिया को ले लिया, और वे जो उसके संग थे, और उन सब को वहीं सभा में चंगा कर दिया। उन्होंने उस किनारे को इधर उधर से जलाया हुआ था अपनी उन नावों से जो बाहर थीं। वे व्यापारी मछुआरे थे वहाँ ऊपर नीचे के किनारे पर। भाई एडी बुला रहे हैं, और मुझमें थोड़ी भावना थी कि जाकर देखूं, वहाँ जाऊं, और फिर वहाँ से चल दिया, और वहाँ से एक दिन की यात्रा और दो या तीन रात्रि फोर्ट संत जॉन में, ये वहाँ अलास्का राजकीय मार्ग में है, और दो रात्रि वहाँ पर। तब घर आ रहा था, और मैं सोचता हूँ ये 7, 8, 9 और 10 जून का। अब यहाँ ये स्थान है जहाँ आप सब जा सकते हैं इन सारी सभाओं में। ये दक्षिणी पाइन में होगी। आप जानते हैं कि भाई ने जिसने अच्छा लिखा है, अधिक समय नहीं हुआ मौके से, उन्होंने कुछ और पत्रिकाएं मुझे भेजी, मुझे उन्हें लाना चाहिए था। प्रभु ने चाहा तो अगले रविवार मैं लाऊंगा। और ये दक्षिणी पाइन में यहाँ से लगभग 6 या 8 घंटे की यात्रा। दक्षिणी पाइन, उत्तरी कैरोलिना, या क्या वो दक्षिणी कैरोलिना है? उत्तरी कैरोलिना, जी हाँ, ये ठीक बात है। तब ठीक वहीं से हम वहाँ से 10 को निकलेंगे, और 11 और 12 भाई बिक्सबी के साथ कोलंबिया साउथ कैरोलिना में। और वहीं वो व्यक्ति है प्रेस्बिटेरियन जिसने लेख लिखा है, इसने मुझे अच्छा प्रभावित किया जो कभी मेरे विषय में लिखा गया। वो एक प्रेस्बिटेरियन दिव्यता में डॉक्टरी, और वो शिकागो में आया और उसने लेख लिखा। मैं भूल गया ये अब क्या था। ये वास्तव में अच्छा, मुझे ये कहीं से मिला और एक पत्रिका में था। कुछ एक प्रेस्बिटेरियन की पेंटिकोस्टल सभा में उपस्थित, या ऐसे ही किसी विषय में पेंटिकोस्टल भविष्यद्वक्ता प्रेस्बिटेरियन को कुछ और उसके साथ होगा। पिछली रात्रि हमने भाई रॉय बॉर्डर्स को फोन किया, जो कि पहले ही पश्चिमी किनारे पर हैं। वहाँ कुछ लोग हैं वहाँ पर, जहाँ 35-40 कलीसियाएं सभाओं के लिए सहयोग कर रही हैं, सडेलिया कैलिफोर्निया, और वहाँ ग्रास सिटी, और वहाँ से, या बल्कि ग्रास वैली, और वहाँ से ओरेगॉन ऊपर वॉशिंगटन में। और फिर भाई अर्गन ब्राइट आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। अभी योजना बन रही है जुलाई के अंतिम सप्ताह में एंकरोनेज अलास्का में होने के लिए एक सभा क्रिश्चियन बिजनेसमैन की आयोजित करें। मैं आशा करता हूँ 6 या 8 दिन की बेदारी सभा होगी, कठोर सख्त अलास्का। आप जानते हैं ये कैसा है, पूर्वर्थक खनिज और हेम और अंडा लगभग $3.50 का है एक प्लेट। ये वास्तव में कठिन स्थान है, परंतु उन्हें सुसमाचार की आवश्यकता है। अब मेरे करने का उद्देश्य क्या है? ये बातें जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, इस खाने को जमा कर रहा हूँ और उन्हें बाहर कर रहा हूँ। अब मैं जाना चाहता हूँ सही में। अब मेरे पास कोई अगुवाई नहीं है कि किसी जगह जाऊँ, परंतु मैं जा रहा हूँ कि बीज को बोऊं जहाँ भी भेजा जाऊँ। आरंभ किया, मेरी पत्नी यहीं कहीं पर है। उसी दिन उसे इलिनॉइस की किसी महिला का पत्र मिला। मैं बस अपने हृदय में, अपने प्राण में जल गया। इस महिला ने कहा, बहन ब्रणम, कहा कोई संदेह नहीं, परंतु जो बहुत बार और एक समय से आपका विवाह हुआ कि आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। भाई ब्रणम गए हुए हैं, ये बालक आपके पास, और कहा बालक निस्संदेह अपने पिता के लिए रोते हैं और आदि आदि, और कहा मुझे मालूम है आपका क्या अर्थ है, क्योंकि मेरे पास मेरा प्रिय पति है। उसने कहा, परंतु मैं आपको बताती हूँ, अपनी स्थिति बताती हूँ। उसने कहा, मेरे 4 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं पिछले 4 सालों में। उसने कहा, मैं दिन में लगभग 15 या 16 ट्रंकलाइजर शांत रहने की दवा लेती हूँ। और उसने कहा, मैं 3 विभिन्न प्रकार के लेक्सरॉन की सुई एक सप्ताह में लेती हूँ, और कहा सोने की दवा ढेर सारी रात्रि में, और सो नहीं सकती, और सोने के लिए मैं दुगनी दवा लेती हूँ। और उसने कहा, मेरे डॉक्टर ने कहा कि तुम किसी पागल वाले अस्पताल में जाओ, इसके पहले मैं वापस नहीं आ सकती। हो सकता है कि कोई आशा हो कि मैं अपना मस्तिष्क बचा लूं और कहा मैं चिकित्सा जगत में कहीं कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। और उसने कहा मैं आत्महत्या का मन बना रही थी, उसकी योजना कि अपने प्रिय पति और अपनी पुत्री को छोड़ दूं। उसने कहा हम कैनसास में रहते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि मैं देखती हूं कि अनाज पक रहा है और कटाई के विषय में मैं सोचती हूं। मैं सोचता हूं कि वो मेथोडिस्ट की थी। और कहा जहां और फिर मैं वहां मेथोडिस्ट कॉलेज ब्लूमिंगटन इलिनॉइस में एक अखबार लिया और मुझे वहां होना था 11 महीने पहले। आप में से बहुतों को ब्लूमिंगटन की सभा याद होगी, आप वहां थे। और उसने कहा मेरे पति ने मुझे लिया और कुछ मित्रों ने और ले गए। और कहा प्रभु जानता था कि मैं एक और दिन भी सहन नहीं कर सकती थी, वो इतनी दूर निकल गई थी। और कहा मैं पहली व्यक्ति थी, आपके पुत्र बिली पॉल ने मुझे कार्ड दिया। और उस रात्रि जब आपके पति ने नंबर पुकारे, मैं पंक्ति में पहली थी कि जिस पर प्रार्थना की जाए। और कहा जैसे ही मैं प्रचार मंच पर आई, कहा उसने मेरा सारा जीवन बता दिया और बताया कि मैंने क्या क्या किया है और जो कभी सबके विषय में। और कहा यहोवा यूं कहता है, ये समाप्त हो गया। कहा उसी क्षण मुझे कभी कोई दर्द नहीं हुआ। कहा मेरा भार लगभग 70 पाउंड का था, मैं 160 कुछ की हूँ अब। और कहा बहन ब्रणम जब आप अकेली हों, मैं जानती हूँ कि आप कैसा अनुभव करती हैं, संसार की बातें पति से बताती होंगी और इस प्रकार की बातें, परंतु कहा याद रखना मैं एक मामूली कैंसास की पत्नी आज स्वतंत्र है, क्योंकि वो चाहता था कि प्रभु को याद दिलाए। मैंने बिली को दिखाया, मैंने कहा बिली मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मेथोडिस्ट कॉलेज को भेज दो। वो गया और ढेर ले आया, कहा इनमें से बहुत कुछ को पढ़ लो। मैंने कहा मैं जानता हूँ ये आश्चर्यजनक है, परंतु यही पर्याप्त है, इसने स्थान बना लिया है। क्या आपने ये सुना, अशुद्ध अशुद्ध प्रेत आत्मा ने उसे चलाया। देखिए साउल उसके मस्तिष्क से बाहर वहाँ कब्र में जब यीशु आया उसने बंधुआई को खोल दिया। और यीशु वचन है, इसलिए वचन को लो, ये बंधुआई को स्वतंत्र कर देगा। यहाँ मैं ले रहा हूँ, अपना समय ले रहा हूँ, आपका समय ले रहा हूँ, कहने के लिए बहुत कुछ है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु मरणहारों के समान हम जानते हैं बातें करने के लिए हमारे पास अधिक समय नहीं है। जब मैं इन भूखे हृदय के परदेशी झुंड को देखता हूँ जो कि खेतों से आए हुए हैं, खेतों में से, इनमें से कुछ सरकारी कामों पर से और इनमें से कुछ पहाड़ों के पार से गाड़ी चलाते हुए रेगिस्तान और मैदान और दलदली और यहाँ जमा हुए, फिर खड़े रहना पड़ रहा है। परंतु ये तीर्थ यात्री हैं, ये संसार के नहीं हैं, वे केवल यहाँ गवाही देने के लिए एक ज्योति के समान जो पहाड़ पर हो, जो कि समाज को उजियाला देती है जहाँ वे रहते हैं। और तब जब वे एक साथ आते हैं फिर से समर्पित और कि चार्ज हो जाएं वचन से, वे खड़े हैं, अकड़ जाते हैं अपने अपने पैरों में, और बूढ़े और युवा एक से, प्रभु ये आपसे प्रेम करते हैं इसलिए ये यहाँ पर हैं। कोई भी जानता है कि एक व्यक्ति मीलों गाड़ी चलाकर यहाँ नहीं आएगा और दीवार के सहारे खड़ा हो, झुका हुआ और अकड़ते पांव, केवल दिखाई देने के लिए। और इस झुंड के संग हम निर्धन लोग हैं, हम शानदार कपड़े में नहीं आते, हम यहाँ आपकी आराधना के लिए आते हैं। हमारे हृदय में एक उद्देश्य, एक यथार्थ, एक अभिप्राय, वो ये कि आप प्रभु हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें बहुत सारा प्रतिफल देंगे, उन्हें पाए यहाँ से एक भी व्यक्ति दरवाजे से ऐसा बाहर ना निकले जो अनंत जीवन ना पाए, तो फिर मार्ग की कठिनाइयाँ कुछ भी नहीं लगेंगी। जब हम अंत पर आते हैं, यदि वे बीमार हैं प्रभु उन्हें चंगा कर दें। और हम दूसरी सभाओं में बोलें या बिना निश्चित जाने, तो फिर मैं जा रहा हूँ। यदि ये आपकी इच्छा हो बीजों को बखेरने के लिए, वे उगेंगे यदि वे अच्छी भूमि में गिरते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनका अच्छी भूमि की ओर निर्देशन करेंगे। यहाँ मंच या प्रचार मंच पर रखे हुए हैं, मैं कहूँ तो यहाँ रुमाल और छोटे छोटे डाक के ढेर, जिसका अर्थ है लोग बीमार और आवश्यकता में हैं। ओ स्वर्ग के पिता जिसने मसीह को मरुओं में से जिलाया और इन अंत के दिनों में उसे हमें पवित्र आत्मा के रूप में दिया है, उन्हें पाए वो जो सर्वव्यापी है नीचे देखे, सर्व ज्ञाता इन सब बातों को जानता है, सर्व सामर्थी शक्तिमान इन डाक के ढेरों को देखता है और होने पाए वे जब ये बीमारों अपाहिजों को स्पर्श करे तो होने पाए पवित्र आत्मा प्रार्थना को परमेश्वर के कानों में जीवित कर दे और वे तुरंत चंगे होने पाए। प्रभु उस बेचारी स्त्री का विचार करें, मैंने अभी अभी उसकी गवाही दी है, आज वहाँ कैंसास में आनंदित है, कोई दर्द नहीं, कुछ भी डॉक्टर उसमें कुछ भी गलत नहीं पाता, कोई दर्द नहीं, कोई प्रशांतक नहीं, कोई नींद की गोली नहीं, अच्छी तरह गहरी नींद सोती है, सब कुछ ठीक है। ओ प्रभु, सच में जब आप आते हैं तो सब ठीक हो जाता है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, अब जब हम आपके वचन की ओर मुड़ते हैं, अपने वचन को आशीषित करें, होने पाए ये आपके पास खाली ना लौटे, परंतु होने पाए जिस उद्देश्य के लिए ये समर्पित किया गया है उसे पूरा करे। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब क्या सबको ठीक सुनाई पड़ रहा है? वहाँ पीछे पीछे ठीक सुनाई दे रहा है, क्या ठीक है? यदि मैं इससे बात करूँ या इस प्रकार बात करूँ, यहाँ से इस ओर से ज्यादा ठीक है? क्या ये आप पीछे वालों के लिए और अच्छा है? ठीक है, मैं इसे इधर की ओर खींचूंगा थोड़ा सा और पास को। पिछले सप्ताह रविवार मैंने थोड़ी सी देर कर दी और सभा लंबी हो गई थी, इस प्रकार से नहीं करना चाहता, और अब कभी कभी मुझे ये परेशान नहीं करती यदि कोई बैठा हुआ है, उन खड़ुओं को देखता है और उनके साथ जगह का आदान प्रदान करना चाहता है थोड़ी देर के लिए कि उन्हें विश्राम मिले, तो ये बहुत ही अच्छा मसीह व्यवहार होगा। और अब हो सकता है इस ईस्टर पर हम किसी दूसरे स्थान को मुख्य सभा के लिए ले सकते हैं। अब इस प्रातः हम निकलना चाहते हैं, अब सारे सिपाहियों अपनी तलवार निकाल लें और हम शत्रु के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा करने जा रहे हैं। आपको याद है एक छोटा सा गाना गाया करते थे, युद्ध जारी है ओ मसीह सिपाही, आमने सामने कठोर व्यूह रचना, आपने गाना सुना है? शस्त्र चमक रहे, रंग झलक रहे, आज सही और गलत भिड़ रहे हैं। देखा, ये ठीक बात है, युद्ध जारी है परंतु थकान नहीं, मजबूत हो जाओ और उसकी सामर्थ्य में कस कर पकड़ लो। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, उसका झंडा हमारे ऊपर है और अंत में हम जय का गीत गाएंगे, ये ठीक बात है। अब हम पहले वचन को पढ़ना चाहते हैं, वचन को पढ़ने के लिए पढ़ने को संत यूहन्ना 10 में पाते हैं, पहले 5 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं, परंतु वे पराओं के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। अब आज इस प्रातः का विषय जिसको सिखाने के लिए मैंने चुना है थोड़ी देर के लिए, वो है बुद्धि बनाम विश्वास, बुद्धि बनाम विश्वास। अब केवल दो ही स्रोत हैं, दो स्रोतों के द्वारा जिसमें कि हमें जीना है, क्या आपको नहीं मालूम? अब हम मैंने यहाँ पर बहुत सारे वचन लिख रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप संभवतः हम उसका उल्लेख करेंगे जबकि आगे बढ़ते हैं, और मैं यत्न करूंगा कि जल्द ही पूरा कर दूं, और कोशिश नहीं करूंगा कि इसे सामने रखूंगा ताकि आप इसे वहाँ से ले सकें, समझे? केवल दो ही स्रोत हैं जिनसे कि हम अपना जीवन ले सकते हैं, और उनमें से एक बुद्धि है और दूसरा विश्वास है। और यदि हम सोचते हैं कि जो बुद्धि उत्पन्न करती है और फिर जो विश्वास उत्पन्न करता है, परंतु वे दोनों स्रोत इस प्रातः हम पीछे जा रहे हैं और उन्हें संडे स्कूल के पाठ के लिए लेंगे और प्रभु की सहायता से इन्हें बाइबल में से निकालेंगे और दिखाते हैं कि ये क्या है और ये क्या करने जा रहे हैं और इन्होंने क्या किया है।
We'll notice that in Genesis, the first chapter, we find that.
अब विश्वास और बुद्धि। अब इससे आरंभ करके हम ध्यान देंगे कि उत्पत्ति में पहले अध्याय में हम पाते हैं कि विश्वास प्रस्तुत किया गया और बुद्धि प्रस्तुत की गई और आज ये दोनों स्रोत अब भी मनुष्य जाति के सामने प्रस्तुत किए गए। हम पाते हैं कि परमेश्वर विश्वास का स्रोत था कि विश्वास करें लोगों के लिए कि विश्वास करें और उसके वचन का भरोसा करें।
And Satan is the author of wisdom, trying to
और शैतान बुद्धि का स्रोत है, लोगों को बुद्धि ग्रहण करवाने का यत्न कर रहा है और उन्हें विश्वास से दूर करने का यत्न कर रहा है जो कि परमेश्वर के वचन में है। ये दोनों स्रोत हैं।
We find it so strange that Genesis, this seed chapter,
हम पाते हैं कि ये कितना अद्भुत है कि उत्पत्ति ये बीज का अध्याय इस प्रकार से आरंभ होता है और हम देखते हैं कि सारी चीजें जो हमारे पास हैं वास्तव में उत्पत्ति में आरंभ हुई, क्योंकि उत्पत्ति शब्द का अर्थ आरंभ है। और यदि हम इन चीजों को देखते हैं जो आज हम हैं, जिस प्रकार ये हैं, तो इनका कहीं आरंभ है। आपको इन सारी चीजों का वापस आरंभ तक पीछा करना है। और यहाँ आपके लिए एक विचार है, हर चीज जिसका आरंभ है उसका अंत है, परंतु वे चीजें जिनका आरंभ नहीं है उनका अंत नहीं है, केवल वही चीजें अनंत हैं। इसलिए मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, कैसे हम कभी इस वचन को उचित ठहरा सकेंगे, परमेश्वर के पुत्रत्व का अनंत होना। यदि वो एक पुत्र था उसका एक आरंभ था, यदि वो अनंत पुत्र था तो वो कैसे एक पुत्र हो सकता है और अनंत हो, क्योंकि पुत्र किसी चीज का उत्पाद है। परंतु यदि वो था तो वो अनंत पुत्र नहीं हो सकता था, ऐसी कोई चीज नहीं। परमेश्वर का अनंत पुत्र, क्योंकि यदि उसका कभी भी आरंभ नहीं था तो वो सिवाय इसके कि अंत हो कुछ नहीं हो सकता। परंतु यदि वो एक पुत्र था उसका एक आरंभ था, इसलिए वो एक अनंत पुत्र नहीं हो सकता। ये अनंत परमेश्वर था, पुत्र में प्रकट हुआ। ओ समझे, अनंत परमेश्वर, क्योंकि केवल परमेश्वर ही है जो अनंत है। और केवल एक ही विधि है कि हम सदा जीवित रहें, क्योंकि हमारे पास अनंत जीवन है। ये शरीर मरता है, हमारे सारे भाग मरते हैं, परंतु वो भाग जो अनंत है परमेश्वर है और नहीं मर सकता। अब वचन बाइबल अनंत है, क्योंकि ये परमेश्वर वचन के रूप में है। और परमेश्वर में क्या था उसके विचार में, इसके पहले कि कोई भी बोला गया वचन होता, ये परमेश्वर था। आप इसे समझते हैं, ये परमेश्वर था, इसलिए कि पहले से ठहराए गए हैं। हम जो कह रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, मैं आपके साथ था जो कि ठहराया हुआ था। ये बातें थी जो परमेश्वर के साथ अनंतता में थी। और तब यदि आप परमेश्वर में नया जन्म पाए हुए बालक हैं, आप हैं और आप में पवित्र आत्मा है, आप परमेश्वर के बोले गए वचन का प्रकटीकरण हैं। इसके पहले ये एक वचन था। इसके पहले कि ये वचन हो सके इसे विचार होना है। एक वचन, एक बोला गया विचार, और वचन परमेश्वर में था, और फिर हम परमेश्वर में थे अनंतता में, और हम वचन के द्वारा बोले जाने से अस्तित्व में आए। ओ क्या, किस वचन के द्वारा? ये वचन, परमेश्वर का वचन। अब परमेश्वर विश्वास का स्रोत है, शैतान बुद्धि का स्रोत है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पहले बालक को अपना वचन दिया और उन्हें बताया कि इन्हें इसका विश्वास करना है और मृत्यु को रखा, अलगाव, दंड, यदि वे इसका विश्वास करने में असफल हों। और शैतान आसपास आया और हवा को बुद्धि देने का यत्न किया, तुम बुद्धिमान हो जाओगी गलत और सही को जानकर, परमेश्वर के समान। अब देखिए, इससे आरंभ करके आप सीधे जल्द देखते हैं कि बुद्धि शैतान से आती है। ये विचित्र बात है क्या नहीं? परंतु ये सत्य है, बुद्धि शैतान की ओर से आती है, वो बुद्धि का स्रोत है। अब निसंदेह कोई भी चीज जो शैतान के पास है वो मूल का बिगड़ा हुआ रूप है। पाप एक विकृति है, धार्मिकता की विकृति, व्यभिचार, वैध व्यवहार की विकृति, झूठ सत्य का विकृत रूप। और इसी प्रकार से बुद्धि, जो कि मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, इसके पहले कि हम आरंभ करें, परमेश्वर की एक बुद्धि है, परमेश्वर की बुद्धि वचन के साथ टिके रहना, परंतु शैतान अपनी बुद्धिमानी में वचन को घुमाने की कोशिश। इसलिए वो बुद्धि जिस पर मैं बोल रहा हूँ, विश्वास की एक निश्चित मात्रा जो शैतान के साथ जाती है, शैतान को स्वीकार करने में कि आप शैतान का विश्वास करें। इसलिए एक विकृत या दूषित विश्वास ने चीजों को विकृत कर दिया। और कोई भी चीज जो परमेश्वर के वचन को घुमाने का यत्न करे या कोई ऐसी बात कहे जो कि नहीं है, वो गलत आत्मा है। देखिए, परमेश्वर की बुद्धि के विरोध में बुद्धि दे रहा है, इसलिए हम इसे बुद्धि कहकर उल्लेख करने जा रहे हैं, ना कि शैतान का विश्वास। उनमें से बहुत से वे लोग जो इसका विश्वास करते हैं, ईमानदार हैं और अपने सारे उस विश्वास से जो उनमें है विश्वास करते हैं कि वे सही हैं, समझे? अब आपको ध्यान देना है कि अब कंबल दो तरफ से खींचता है, परंतु वे निश्चित होने का केवल एक ही मार्ग है कि मूल वचन पर वापस आएं, जहां की हर चीज वचन पर आधारित है। अब हम पाते हैं कि ये दो कल्पनाएं या स्रोत हैं, एक बुद्धि और दूसरा वाला विश्वास, और उत्पत्ति से ये एक दूसरे के विपरीत हैं, अदन की वाटिका में। अब यहाँ दोनों ओर बालक हैं। अब बुद्धि क्या है जिस विषय में हम बातें कर रहे हैं? कुछ ऐसा जो इस बात के लिए सहमत नहीं कि सारा वचन सत्य है। ये कुछ ऐसा जो सत्य से अलग करता है और अपने को उच्च ज्ञान के समान प्रकट करता है, अधिक बुद्धि। अब यदि इस प्रकार की बुद्धि शैतान की ओर से आती है, उसके बालक उस बुद्धि के द्वारा जीते हैं। और यदि परमेश्वर का विश्वास परमेश्वर के द्वारा आता है और परमेश्वर वचन है, परमेश्वर के बालक विश्वास के द्वारा जीते हैं। बाइबल ने कहा धर्मी बुद्धि के द्वारा जीवित रहता है, विश्वास। धर्मी विश्वास के द्वारा जीता है, ना कि वो जो सीखता है, परंतु वो जो विश्वास कर सकता है। ठीक है, अब हम पाते हैं, आइए पहले बुद्धि को लें। बुद्धि के पास तर्क है, विश्वास के पास कोई तर्क नहीं, परंतु बुद्धि के पास तर्क है। आइए बाइबल में से निकालना आरंभ करें और अब उत्पत्ति को निकालें, उत्पत्ति में तीसरा अध्याय, और इसे सिखाएं। अब हम क्या कर रहे हैं इस प्रातः? क्या करने का यत्न कर रहे हैं? जो प्रभु ने कहा उसका अनुकरण करना, भोजन रख लें। आपको इसकी आवश्यकता पड़ने जा रही है इन्हीं किन्हीं दिनों में, भोजन रख लें। अब उत्पत्ति 3:1, आइए इसे पढ़ें। देखें बुद्धि के पास कैसे तर्क हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। वचन का उल्लेख कर रही है। अब विश्वास इसे थामे रहता है, समझे। अब ध्यान दें, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। एक तर्क दे रहा है। परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आप आज उसी पुराने शैतान को सुनते हैं, परमेश्वर इसे करने को बहुत भला है, परमेश्वर ये नहीं करेगा, परमेश्वर दंड नहीं देगा, वो ठीक वही करेगा जो उसके वचन ने कहा है, वही करेगा, समझे। निश्चय ही तुम नहीं मरोगे। देखा, वो क्या करने का यत्न कर रहा है कि वो उसके साथ तर्क करे। एक मिनट में आप परमेश्वर के वचन पर तर्क करते हैं, तब आप विश्वास को खोते हैं, समझे। नहीं नहीं है, जी हाँ, नहीं का हो सकता है ऐसा हो, ठीक उसके साथ बने रहें, समझे। हवा का प्रस्ताव सही था, परंतु उसने उसके तर्क को सुना। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सही ज्ञान है, जो जानते हैं कि ये वचन परमेश्वर का वचन होना चाहिए और ये परमेश्वर का वचन है, परंतु वे पक्ष लेते हैं और कोई धर्म विद्यालय का विद्यार्थी उनसे इस पर तर्क करता है। पवित्र आत्मा से हटकर, परमेश्वर की बातों से हटकर, तर्क हमें उन्हें अलग हटा देना चाहिए। अब चौथा पद, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों शैतान ने कहा। पहले मैं चौथा पद पढ़ूंगा, तब पांचवा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए, वो उसे एक तर्क दे रहा है, क्या तुम परमेश्वर के बराबर बनना चाहोगे। लो, दूसरे शब्दों में, तुम वास्तव में परमेश्वर के संग होना चाहोगे। मेरी सलाह ले लो, मेरी सुनो। परमेश्वर का ये अर्थ नहीं, बस उसने नहीं किया। जब आप इसे सुने तो इससे अलग हो जाएं। ये ठीक बात है, ये सर्प की फुंकार है, सुनने में तर्कपूर्ण लगता है, परंतु बिल्कुल भी तर्क ना करें, बस इसका विश्वास करें जो परमेश्वर ने कहा। अब जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखिए ये क्या था, उसका तर्क उसे इस बात पर ले आया कि ये जाने कि ये ठीक था, ये सत्य था, और देखने में मनभाऊ और वृक्ष चाहने योग्य भी है कि किसी को विश्वास हो जाए, किसी को ज्ञान हो जाए, किसी को बुद्धिमान बना दे। देखिए ये क्या था, शैतान ज्ञान प्रस्तुत कर रहा है, वो ज्ञान जो वचन के विरोध में है, एक को बुद्धिमान बनाने के लिए। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया, और तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब इसने क्या आरंभ किया, तर्क, समझे। विश्वास में तर्क नहीं होता, आप तर्क बिल्कुल नहीं करते, आप विश्वास करते हैं। जब आपने प्रार्थना की और परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया कि चंगाई हो, तो अपनी भावनाओं से तर्क ना करें, किसी भी चीज के साथ तर्क ना करें, इसके लिए कोई तर्क नहीं है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है और ये तय हो गया। ओ, मैं यहाँ पर कुछ मिनटों के लिए रुकना चाहूँगा और इस पर टिकना कि इसमें से मूल पाठ लूँ, इसे नहीं कर सकता और इन 40-50 पाठों पर प्रचार करूँ, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, परंतु तर्क। जब प्रभु एक दर्शन देता है, मैं आपको जरा बताऊंगा अपने छोटे साधारण तरीके से, प्रभु एक दर्शन देता है किसी चीज का कि कुछ घटित होने जा रहा है, क्यों? मैं चिंता नहीं करता ये कितना विरोधी है, और स्मरण रखें, हर चीज जो प्रस्तुत की गई है शैतान उसके विरोध में करेगा, ये तर्क देने का यत्न करेगा, आप ये नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए यही जो अभी कुछ क्षण पहले मैंने जिसका उल्लेख किया जाने के विषय में, अब ये एक प्रकार से मार्ग से हटने जैसा था। इसके पहले कि मेरी माँ जाती और प्रभु जानता था कि मैं योग्य नहीं होऊंगा कि जिन भाइयों को मैंने समय दिया है उसे बनाए रखूं। शिकार पर जाने के विषय में और एक दर्शन दिया और मुझे ब्रिटिश कोलंबिया भेज दिया। और जब वहाँ पहुँचे तो मार्गदर्शक ने कहा, मैंने कभी भी सिल्वर टिप को यहाँ नहीं देखा, मैं यहाँ लगभग सारे जीवन से हूँ और इसके अलावा हम तो भेड़ों के इलाके में घोड़ों पर बैठकर जा रहे हैं, वहाँ कोई सिल्वर टिप नहीं है, वहाँ नहीं है, आप इसे वहाँ नहीं पाएंगे, समझे समझे। यत्न कर रहा है, देखिए वहाँ से हटाने का यत्न कर रहा है। तर्क, शैतान ने मुझसे कहा ऐसा होगा कि तुमने दर्शन को गलत समझा, परंतु मैंने नहीं, ये यहोवा यूं कहता है होने जा रहा है। और जब रेंडियर ऊपर आए और हमें वहाँ मिले जो कि दर्शन में थे, जैसा कि आप सब जानते हैं, तब उसने कहा, मार्गदर्शक ने मुझसे कहा, भाई बहुत अच्छा, कुछ सप्ताहों के लिए उसके साथ होने के लिए एक युवा मसीही। उसने कहा, भाई ब्रणम, मेरे भाई को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और उस दिन आप उस घोड़े पर चढ़े थे और आपने मुझे कुछ विशेष करने के लिए कहा और मेरे भाई के दौरे रुक जाएंगे। उसने कहा, और जब मैंने ठीक वही किया जो आपको पवित्र आत्मा ने बताया कि मुझे ये बताए, बोला उसे उस दिन से कभी दौरा नहीं पड़ा। उसने कहा, अब हम यहाँ पर हैं इस पहाड़ की चोटी पर और 3 मील नीचे तक यहाँ 4 इंच ऊंची की झाड़ी तक नहीं, कुछ नहीं सिवाय रेंडियर वाली काई के एक थोड़ी सी झरबेरियाँ और वे केवल 2 या 3 इंच होती हैं। उसने कहा, रेंडियर की काई और झरबेरी वहाँ पेड़ों की सीमा पर और हमारे घोड़े वहाँ पेड़ों की सीमा पर ही अटके हुए थे। और अब उसके अनुसार यहाँ आने से पहले जो आपने मुझे बताया है कि यहीं कहीं यहाँ से और जहाँ से वे लड़के खड़े हैं उस चेक की कमीज को पहने आप 9 फुट सिल्वर टिप ग्रीजली भालू मारने जा रहे हैं। मैंने कहा, ये यहोवा यूं कहता है, समझे। ये क्या था, शैतान मुझसे अविश्वास करवाना चाहता था। हम पहाड़ से उतरने लगे, हम पास आ गए, वो कहता रहा, भाई ब्रणम, अब हम केवल वहाँ से 1 मील दूर रह गए हैं। मैंने कहा, तुम शक की पुड़िया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लगभग आधे मील के अंदर आ गए। बोला कि अब हम आधे मील में हैं। मैंने कहा, ये ठीक बात है। बोला, जरा सोचिए, आधे मील के अंदर तर्कों को ला रहा है। उसने कहा, देखिए, हम हर चीज को अपने आमने सामने देख रहे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। परंतु मैंने कहा, परमेश्वर जिसने मुझे वचन दिया है वहाँ एक सृष्टि कर सकता है। तर्क ना करें, बस इसका विश्वास करें। तर्कों पर ध्यान ना दें, इसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं, बस इसका विश्वास करें। और जो उसने कहा, बस यही है। मैं वहाँ खड़ा हुआ था, सब तरफ पहाड़ों को देखा, हर तरफ पीली रेंडियर वाली काई, सूरज नीचे जा रहा था, पहाड़ सुंदर, आप कोई सा भी छोटा सा निशान देख सकते थे मेरे ऊपर पहाड़ पर 3 मील। और जब मैं देखने के लिए घूमा अपने से 2 मील आगे या 1 या आधा मील या 2 मील, 9 फुट का सिल्वर टिप ग्रिजली वहाँ खड़ा हुआ है। वो कैसे वहाँ पहुँचा मैं नहीं जानता, परंतु वो वहाँ पर था। देखा, तर्क ना करें, विश्वास करें। कोई मतलब नहीं हालात कैसे हैं, हालातों पर ध्यान ना दें, विश्वास करें। अब परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। शैतान ने कहा, मैं आपको कुछ बताऊं? अब देखिए, ये यही है। ओ हाँ, हम कहते हैं परमेश्वर सत्य है, निश्चय ही ये ठीक बात है, हम वचन का विश्वास करते हैं। ओ, शैतान ने कहा, मैं ये विश्वास करता हूँ, वास्तव में निश्चित। परंतु सुनिए, मैं आपको बता दूं, उसका सही में ये अर्थ नहीं था, उसका ये अर्थ नहीं था, उसका जो उसने कहा है वही अर्थ है। शैतान ने कहा, अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा उसने ये क्यों किया। ये वास्तव में आप देखिए, आप बुद्धिमान नहीं है, अब भी आपके पास बुद्धि नहीं है, समझे। आप एक भेड़ के समान है कि अगुवाई में रहें, आप अपने नहीं, परमेश्वर आपको इस प्रकार से चाहता है। आपने कभी भी नहीं, तुम्हारे पास PhD नहीं है अब भी, आपके पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है, समझे। परंतु मेरे पास बुद्धि है, मैं इसे आपको सिद्ध कर दूंगा। अब देखिए, आप नहीं जानते कि क्या गलत और सही है, आप जानते हैं कि कुछ ऐसा है, परंतु आप नहीं जानते कि वो क्या है। मैं आपको दिखाऊं ये कैसे किया गया। बस यही वो उस स्त्री को बताना चाहता था, कुल मिलाकर वो यही करना चाहता था, मैं आपको दिखाऊं ये कैसे किया गया। वो बोली, परंतु हम मर जाएंगे। उसने कहा, निश्चय ही परमेश्वर ये नहीं करेगा, परंतु वो ये जानता है कि तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे। देखा, अपनी बुद्धि परमेश्वर के वचन के विरोध में रख रहा है। ये बुद्धि है जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। देखा, बुद्धि विश्वास के विरोध में, वहाँ पहला युद्ध था और परमेश्वर का वचन स्थिर और सत्य बना रहा। जब उन्होंने उसको लिया जिसके लिए मना किया गया था, वे मर गए। और तभी से देखा जहाँ पर ठीक प्रमाणित किया गया, किसी भी संदेह की छाया से परे। अब हम इस पर कुछ देर रहेंगे। अब मेरे पास उत्पत्ति 3:1-17 और अब यानी 1-7 और अब जहाँ बुद्धि के पास तर्क है, अब कितने इसका विश्वास करते हैं? आमीन कहें। समझे? अब आप कहते हैं डॉक्टर कहता है, अच्छा मैं आपको बताऊं। अब देखिए, छोटी सी स्त्री को लें, मैंने हाल ही में उसकी गवाही दी है। डॉक्टर कहता है आप कुछ नहीं कर सकते, आपका हो चुका, अब आपके लिए कोई आशा नहीं है, पागल खाने चले जाए, इसे वहाँ पर ले जाएं। उसने कहा इसके पहले कि मैं उनमें से किसी कोठरी में जाऊं, मैं अपने आप को मार डालूंगी। और फिर क्या, परमेश्वर दृश्य पे आ गया और उसके विज्ञापन के द्वारा कैनसास में कहीं अखबार में ब्लूमिंगटन इलिनॉइस से उसने सुना। विश्वास सुनने के द्वारा आता है, समझे? ठीक है, उसके पति ने उसे साथ लिया। वे बहुत ही वास्तविक एक दूसरे के लिए प्रिय और प्रेमी। सोचिए, 4 वर्ष और 4 बड़े ऑपरेशन, 15-16 प्रशांतक यानी ट्रंकुलाइजर, जो कि मरणहार को मारने के लिए पर्याप्त हैं। देखा? और वे सारी सुइयां सप्ताह में 2 या 3 बार, और मैं जानता हूं कि उनमें से एक लेक्स्ट्रॉन था और दूसरा वाला क्या था मैं भूल गया, ये कुछ दिमागी परिस्थितियों के लिए था। वो ये सुइयां लगवा रही थी और उसको छोड़ दो, नींद की गोलियां, और इससे भी सो भी नहीं पाती थी। दुर्दशा, सारे दिन रात बीमार, सारे वर्ष भर कुछ भी नहीं हो सका, परंतु विश्वास सुनने से आता है। देखा? अब जब वो वहाँ पहुँची, परमेश्वर ने उसे प्रचार मंच पर बुलाया। देखा? और उसमें क्या, क्यों, क्या? जब मैं उसके समीप गया और मैंने कहा, बहन आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? उसने इस विषय में कभी नहीं सुना, वो इस विषय में कुछ नहीं जानती, परंतु कहा, आप श्रीमती अमुक अमुक हैं, आप कैनसास से आई हैं। अब एकदम से इससे उसने सोचना आरंभ कर दिया। एक मिनट रुकिए, मैंने उसे ये कहते सुना कि मसीह कल आज और सदा तक एक सा है, और यहाँ आज रात्रि हमने सिद्ध कर दिया है बाइबल में कि मसीह की प्रतिज्ञा की गई है कि अंत के दिनों में अपनी कलीसिया में प्रकट हुआ, और वे चीजें जो उन्होंने सादोम में की और आदि आदि, जैसा कि उसने प्रचार किया, जो कि मेरे आरंभ का उपदेश है, क्योंकि अब मैं उसे होते हुए ठीक यहाँ पर देखती हूँ। देखा? अब हाँ, अब आप बहुत से डॉक्टरों के पास गई और आपके 4 ऑपरेशन हुए हैं, इसे ये सारी बातें कहाँ से मालूम हुई? ये कहाँ से आ रहा है? ये छोटा बिना बाल वाला मनुष्य ये नहीं जानता ये कहाँ से आ रहा है। और आपके रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ, कहता है। देखा? अब ये बिल्कुल ठीक है जो उसने प्रचार में कहा, ये वचन है। परंतु आप जानिए, शैतान ने कहा, आप जानते हैं कि आप ये मानते हैं, आपका पास्टर, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं, समझे? तर्क को छोड़ दें, समझे? परंतु आपके डॉक्टर ने आपसे कहा है कि तुम्हें पागल खाने जाना होगा, तर्क को छोड़ दें। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि देखूं परमेश्वर इस विषय में क्या कहने जा रहा है, समझे? तब परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम कि क्या कहना है, तब आत्मा ने इसे लिया और इसे उड़ा दिया। उसने इसका विश्वास किया, कभी तर्क नहीं किया। एक के बाद दूसरा, वर्ष फिर वर्ष बाद तंत्री का विघटन मस्तिष्क से चला गया, ऑपरेशन और हर चीज, ये सारी चीजें, क्यों? ये चीजें तर्कहीन है। सोचिए, मैं यहाँ चंगा हो सकता था एक सेकंड में, परंतु उसने कोई तर्क नहीं किया, ना सोचा, उसने केवल विश्वास किया, विश्वास ने ये किया, और वो उसी क्षण चंगी हो गई। आप उसे लिखना चाहते हैं, बिली आपको उसका पता दे सकता है। अब ठीक है, बुद्धि तर्क करेगी अब, परंतु विश्वास के पास कोई तर्क नहीं होता, ये कुछ नहीं करता, परंतु वचन को थामे रहता है, ये प्रतिज्ञा को थामता है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, आइए रोमियो का 4 अध्याय निकालें और इसे थोड़ा सा पढ़ें, और ये जब तक कि समय की वास्तविक चुटकी नहीं भरता, हम जरा इन वचनों को पढ़ेंगे, रोमियो का 4 अध्याय, क्योंकि मैं वास्तव में वचन को पढ़ना पसंद करता हूँ, पढ़ने से ये आपका भला करता है। रोमियो 4 अध्याय और इसे 17वें पद से आरंभ करेंगे। सुनिए, पौलुस अब्राहम के जीवन पर टिप्पणी करता है, आप जानते हैं, अब्राहम के गरार भाग जाने के विषय में कुछ नहीं कहा गया। आप जानते हैं टिप्पणी में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। पौलुस एक महान चेला अब्राहम पर टिप्पणी लिख रहा है। 17वां पद, जैसे कि ये लिखा है, मुझे ये पसंद है। पौलुस वचन के साथ बना है, जैसा कि ये लिखा है, मैंने तुझे बहुत से राष्ट्रों का पिता ठहराया। मैंने अब्राहम 75 वर्ष का था, अपनी पत्नी के संग रह रहा था जब वो थी, दोनों ही युवा थे, एक प्रकार से वो उसकी बहन थी, कोई संतान नहीं, वो फलहीन था और वो बांझ थी। परंतु परमेश्वर ने उससे भेंट की और कहा, मैंने ठहराया, भूतकाल, निसंदेह इस पृथ्वी के रचने से पहले, मैंने तुझे बहुत से राष्ट्रों का पिता ठहराया है, बहुत से बालकों का नहीं परंतु बहुत से राष्ट्रों का। जरा इस पर सोचें, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं, बिल्कुल भी तर्क नहीं करता, सुनिए, और वे बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है निराशा में भी, ओ जिसकी आशा भी नहीं, क्या होता यदि वो तर्क करता, यहाँ तक कि आशा भी नहीं, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा ही होगा, कोई मतलब नहीं कि क्या कहा गया, परमेश्वर ने ऐसा कहा और बस ये तय हो गया। ओ यदि हवा इसी पर टिकी रहती, समझे, परंतु वो तर्क के लिए रुक गई कि थोड़ी बुद्धि प्राप्त करे। अब्राहम को किसी बुद्धि की कोई इच्छा नहीं थी, उसे बस वचन की इच्छा रही, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ये पूरा हो गया। आप जानते हैं, इस पर मैंने बहुत सी बार प्रचार किया है कि जाकर सारे कलोट और पीने और हर चीजें खरीदी बालक के लिए तैयार, और सारा ने छोटे छोटे जूते बनाए, वर्ष वर्ष बीतते गए, परमेश्वर का धन्यवाद हो हमें ये मिलने जा रहा है, जो भी है ये ठीक बात है। क्यों, वो डॉक्टर कहेगा, भाई ये नहीं जन्मा सकती, आपको आप नहीं पा सकती, और मुझे मत बताओ, ये हमें मिलने जा रहा है, जो भी है यही है, आशा के विरुद्ध। तब भी आशा में विश्वास किया, सारी आशाएं जाती रहीं, फिर भी इसी पर विश्वास किया, जब आशा मर चुकी है, उसके लिए विज्ञान की रीति पर आशा मर चुकी है, बुद्धि का हर स्रोत आशा समाप्त हो गई, परंतु फिर भी उसने इस बात का विश्वास किया। ये क्या था, इसमें विश्वास, आशा में विश्वास करना, जबकि वहाँ आशा नहीं थी। इस पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। फिर भी उसने आशा में विश्वास किया, देखा, क्योंकि उसने कहा, उसने मुझसे कहा, तेरा वंश ऐसा होगा। अब 19वां पद, और बुद्धि और ज्ञान में निर्बल नहीं हुआ, उसके पास उसकी डिग्री थी, नहीं विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, हाँ आप वहीं पर हैं, ना ही अपने मरे हुए शरीर पर विचार किया, आशा जा चुकी थी, उसका शरीर मर हुआ था। आगे सुनिए, वो जो 100 वर्ष का था, ना ही सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा, आशा मर चुकी थी, उसका शरीर मरा हुआ था, सारा का गर्भ मरा हुआ था, उसने क्या किया, अगला पद, वो डगमगाया नहीं, ओ प्रभु, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, बुद्धि पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, ओ क्या बात है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है, हाँ कोई मतलब नहीं कैसे, इसके लिए कोई तर्क नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बस वचन को लेता है और इस पर टिक जाता है। यदि ये परमेश्वर का वचन है, आप इसका विश्वास करें, तो फिर किसी वचन पर क्यों संदेह करें, इसकी किसी प्रतिज्ञा पर? आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये भाग ये अच्छा नहीं है और ये है, जो आप चाहे निकाल लें, ये नहीं कर सकते, था तो ये सारा अच्छा है या फिर इसमें कुछ भी अच्छा नहीं, ठीक है, इसलिए जैसे ही आप देखते हैं कि ये सत्य है तो इसको पकड़ लें, इसे ना छोड़ें, कोई मतलब नहीं कि क्या परिस्थितियां हैं, वे कैसे तर्क करने का यत्न करते हैं, क्योंकि आप नहीं सकते, ये ना करें, ठीक इसके साथ बने रहें, परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है। यदि मैं मसीह का पक्ष लेने जा रहा हूँ और वो मुझे पवित्र आत्मा देता है, उसका आत्मा उसके जीवन की गवाही मुझ में रखता है, तब जब मैं मरने पर आता हूँ, शैतान कहने का यत्न करता है, अब आप देखिए आप किस संस्था के सदस्य नहीं है। ठीक वचन के साथ बने रहें। आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, कोई मतलब नहीं वो क्या है। शैतान के पास इस विषय में तर्क नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। वचन के साथ बने रहें, समझे। ये सारे तर्कों को हटा देता है, आपके पास कोई तर्क नहीं है, बस वचन को पकड़े रहें। देखा, अब विश्वास, बस उसके वचन में विश्वास करता है, समझे। यही है जो वो उनसे करवाना चाहता है, ये कि अब आपके पास भूमिका है, यही है जो कि परमेश्वर ठीक मनुष्य जाति से करवाना चाहता है, कि उसके हर वचन पर जो उसने कहा है विश्वास करे। और हवा ने इस पूरे भाग पर विश्वास किया, परंतु उसने एक छोटी सी बात स्वीकार कर ली। ठीक है, यदि मैं बुद्धि से भर जाऊं, हो सकता है ये उस तरह से हो सकता है ये इस प्रकार से होना चाहिए, समझे। तो फिर ठीक वहीं जहां उसने अपनी पकड़ खो दी, यहीं जहां से उसने डूबना आरंभ कर दिया, ठीक वहीं, यहीं जहां से समस्त मानव जाति कब्र में चली गई, ठीक वहीं से, क्योंकि उसने एक वचन पर संदेह किया। उनमें से कुछ कहते हैं, भाई मैं विश्वास करता हूं कि ये सत्य है, मैं विश्वास करता हूं कि वो सत्य है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर बचा सकता है, परंतु मैं विश्वास नहीं करता कि वो चंगा करता है। मैं पवित्र आत्मा का विश्वास करता हूं कि वो पेंतिकोस्त के दिन उतरा, परंतु ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहां ये कहता है कि पेंतिकोस्त के बाद पवित्र आत्मा उतरा। ओ भाई, वे से इसी प्रकार कहते हैं, स्वयं को मसीह की कलीसिया कहलाते हैं, समझे, भक्ति का भेष धरते हैं, परंतु वचन का इनकार करते हैं। ओ, यही है, देखा। आपको विश्वास करना चाहिए, तर्क ना करें, विश्वास करें, बुद्धि पाने का यत्न ना करें, बस वचन का विश्वास करें। बुद्धि तर्क का यत्न करती है और अच्छा मार्ग दर्शाती है, और ठीक यही जो शैतान ने हवा को बताया। अब तुम मरने वाली नहीं, निश्चय ही तुम नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, और केवल एक ही मार्ग है कि मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ कि वो भला परमेश्वर है, कि वो अपने वचन पर स्थिर रहेगा। कैसे आप मुझसे सच्चा होने की आशा करते हैं, जबकि मैं सच्चा हूँ ही नहीं। यदि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, करता कुछ और हूँ, तो मेरा वचन बहकाने वाला है। यद्यपि क्या है जो उसे भला परमेश्वर बनाता है, क्योंकि वो वचन बोलता है और हमें उस वचन के द्वारा जीना है। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा, परंतु परमेश्वर के हर उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है, परमेश्वर के, तब परमेश्वर को वचन के साथ स्थिर रहना है। यही है जो उसे भला परमेश्वर बनाता है। अब यदि वो कहता है ठीक है, मैं उन्हें इसके साथ चलने दूंगा, मैं उन्हें ये करने दूंगा, अच्छा है ये, ठीक है, ओ मैं वहाँ चला जाऊंगा, क्यों, वो नीरस है। देखिए, वो परमेश्वर नहीं है, वो बस एक साधारण मनुष्य है, समझे। परंतु भला परमेश्वर होने के लिए उसे अपने वचन पर बना रहना है, जो हर बालक को रखता है। यदि वो इस वाले को व्यभिचार करने देगा, ये दूसरा वाला थोड़ी पिएगा, और ये दूसरा वाला थोड़ा झूठ बोल सकता है, ये दूसरा वाला थोड़ी सी चोरी, और ये दूसरा इस पर वो कर सकता है, फिर मुझे किनारे पर ले आता है कि अंदर आए। उसके पास एक मार्ग है, और वे सब जो अंदर जा रहे हैं उस फाटक में, सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग, उसमें कोई गंदगी प्रवेश नहीं करेगी। प्रकाशित वाक्य में कहा गया, सारे जादूगर, वैश्यगमन करने वाले और कुत्ते और आदि आदि बाहर रहेंगे। धन्य हो जो तुम उसकी सारी आज्ञाओं को पूरा करते हो, और उसको जीवन के वृक्ष के लिए अधिकार मिलेगा। ये ठीक बात है, केवल एक ही मार्ग है, और वो परमेश्वर का मार्ग है। हम इस पर तर्क नहीं करते, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भाई, रोमन कलीसिया कहती है हम ही कलीसिया हैं, वो बाइबल योगी ही नहीं, क्यों, क्यों ये आप नहीं कर सकते। बिशप सीन ने कहा कि इसके अनुसार जीना का यत्न करना ये गंदले पानी में चलने के समान है, समझे, समझे, आप ये कैसे करने जा रहे हैं। देखा, तब यदि वो ठीक है तो बाइबल गलत है, बाइबल सही है वो गलत है। अब आप क्या कहने जा रहे हैं, यदि परमेश्वर का वचन सही है तो दोनों में से बिशप सीन या बाइबल। केवल बिशप सीन नहीं, परंतु रेवरन अमुक अमुक और डॉक्टर अमुक अमुक और अमुक अमुक, मुझे व्यक्ति का नाम नहीं लेना था, चाहे उसने रेडियो पर ये कहा, उसने ये रेडियो पर कहा, इसलिए मैं समझता हूँ मैं उसका नाम ले सकता हूँ, डॉक्टर अमुक अमुक और अमुक अमुक और अमुक अमुक। अब आप किसका विश्वास करने जा रहे हैं, परमेश्वर का या उनका। अच्छा, कहते हैं वास्तव में उसका ये अर्थ नहीं इस प्रकार से, इसका मतलब यही है जैसा ये लिखा है। भाई देखिए, ये शैतान का पहला झूठ है, उसने हवा से कहा, सही में इसका ये अर्थ नहीं है, निश्चय ही परमेश्वर बहुत ही भला है, ये करें कि आप नहीं मरेंगे। परंतु उन्होंने किया और वे करेंगे। इस बार वचन से मिलना है। बुद्धि अच्छा मार्ग लेना चाहती है, आधुनिकता का मार्ग, लोकप्रियता का मार्ग, एक सरल मार्ग, अपने को उसके समीप पाती है। अब आप यहाँ एक व्यक्ति को लेते हैं, हो सकता है परमेश्वर उसके साथ व्यवहार करने जा रहा है। अब वो सोचता है उसे ऊपर उठना है, उसे अपनी पत्नी को ठीक व्यवहार में लाना है, उसे अपनी ताश की मंडली को छोड़ना है, उसे नाचने जाने को छोड़ना है, उसकी पत्नी को बाल बड़े करने हैं, उसे श्रृंगार छोड़ना है, उसे धूम्रपान पीना छोड़ना है, उसे उस बड़े समाज को छोड़ना है जिसमें वो है, और वेदी पर जाकर नम्र होना है, उसे खड़ा होना है और धर्मांध, पवित्र, शोर करने वाला, बालजबूब और कुछ भी कहलाया जा सकता है। मैं धर्मी होऊंगा, परंतु मैं यहाँ नीचे जाऊंगा और कलीसिया का सदस्य बनूंगा। आप बहुत ही संकीर्ण हैं, आप वही हैं, समझे? एक कारण, कारण इस पर कुछ ही मिनटों पर हम उस बिंदु पर आते हैं, समझे? आप कैसे जानने जा रहे हैं कि कौन सा गलत और सही है? फिर देखिए, अब यत्न करते हैं कि वचन कुछ कहता है, ज्ञान करता है, ज्ञान, बुद्धि, तर्क का यत्न करते हैं। बुद्धि अच्छा मार्ग ढूंढती है, वहाँ कोई और मार्ग नहीं है सिवाय परमेश्वर के मार्ग के। बुद्धि उधर की ओर संकेत करती है, कहती है, ओ अब आप जानते हैं कि इस समय में हम ये नहीं कर सकते, जो भी है हमें ये करना है, समझे? सरल मार्ग ढूंढने का यत्न करते हैं कि कहें बाइबल उन बातों को कहती है जो वो नहीं कहती। अब आप कहते हैं, ओ भाई ब्रणम, अब आप एक क्षण रुकें, हम फिर से बीच पर वापस आएंगे। ये क्या था जो शैतान ने बुद्धि से करने का यत्न किया? परमेश्वर के वचन को ऐसा बना दिया कि कुछ और कहा जो वो नहीं कह रहा था। ये ठीक बात है, उसने यत्न किया कि परमेश्वर का वचन कुछ वो कहता है जो उसने नहीं कहा। इसलिए इस प्रकार से ये आज आता है, जब वे परमेश्वर के वचन से ऐसा कहलवाने का यत्न करते हैं जो वो नहीं कहता। ठीक है, वे कहते हैं, ठीक है भाई ब्रणम, मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास सही अनुवाद नहीं है। बाइबल ने कहा, भविष्यवाणी अपनी ही इच्छा से नहीं होती। क्यों? अपनी इच्छा से ये नहीं है। क्यों? प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ताओं के पास आया, ये भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अनुवाद किया गया, ये अपनी इच्छा से अनुवाद नहीं है। भविष्यद्वक्ताओं ने पहले ही आपके लिए अनुवाद कर दिया, यही है जो वहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इसे होना चाहिए। परमेश्वर के पास कुछ आधार होना चाहिए कि सब लोगों का इसके द्वारा न्याय किया जाए। यदि ये कलीसिया के द्वारा, तो कौन सी सही है? वे लगभग 900 हैं, 900 विभिन्न संस्थाएं, मुझे क्षमा करें, उनमें से कौन सी सही है? आप कैसे जान सकते हैं कि आप भीतर जा रहे हैं? क्या हो यदि आप एक मेथोडिस्ट हैं और बैप्टिस्ट सही है? क्या यदि आप पेंटिकॉस्टल हैं, प्रेस्बिटेरियन सही है? क्या हो यदि आप एक कैथोलिक हैं और लूथरन सही है? क्या हो यदि आप एक लूथरन हैं और कैथोलिक सही है? समझे, इसका कहीं तो आधार होना चाहिए। इसलिए यदि वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, समझे, वचन परमेश्वर में था, ये परमेश्वर था, ये उसका विचार था जो सदा उसके साथ था। वहाँ परमेश्वर का विचार ऐसे ही अनंत है जैसे परमेश्वर है। आमीन भाई, ये कोई कम मलाई वाला दूध नहीं, समझे? यहाँ पर ये आता है, परमेश्वर का विचार उसका वचन था, आरंभ में, ये अनंत में, अनंतता में। और जब आरंभ, पहले समय आरंभ हुआ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का विचार, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, समझे? उसका विचार वही था जो वो था। ये आप भी हैं, आप वही हैं जो आपके विचार हैं। कोई मतलब नहीं आप कैसे जीने का यत्न करते हैं किसी और चीज के साथ, आप वही हैं जो आपके विचार हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे व्यक्ति के समान व्यवहार करते हैं, परंतु आपके हृदय के अंदर आप व्यभिचारी हैं, और ये जो भी है यही जो आप हैं, आपके विचार। परमेश्वर के विचार परमेश्वर के वचन थे जो उसके साथ था, और उसमें ये परमेश्वर था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर का विचार मनुष्य की देह में प्रकट हुआ, देहधारी हुआ, और हमारे बीच रहा। आप वहीं पर हैं। अब यदि आज आपके पास अनंत जीवन है, आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर आप में होने के द्वारा आप परमेश्वर का प्रकट किया हुआ विचार हैं, ओह, तो फिर किसी तर्क को ना सुने, कहीं आपका ताज ले लिया जाए और दूसरे को दें। बिल्कुल कोई तर्क ना लें, बस वही विश्वास करें जो परमेश्वर ने कहा, यही सत्य है, और इसी के साथ स्थिर रहें। तर्क बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के वचन से वो कहलवाता है जो वो नहीं कहता। अब आप कहते हैं भाई ब्रैनम क्या ये सही है? अच्छा आइए वापस उत्पत्ति में वापस चलें और देखें। आइए उत्पत्ति पर वापस चलें, तीसरा अध्याय उत्पत्ति का, और हम चौथा पद पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यदि बुद्धि यत्न नहीं करती कि परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसा कहलवाए जो वो नहीं है, उत्पत्ति का तीसरा अध्याय चौथा पद, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। देखिए ये क्या प्रस्तुत करता है, ये क्या है? वचन से कुछ ऐसा कहलाने का यत्न कर रहा है जो ये नहीं कहता है, समझे? परमेश्वर ने कहा तुम मर जाओगे। बुद्धि, जैसा कि शैतान स्त्री के सामने प्रस्तुत कर रहा है, कहा तुम निश्चय ही ना मरोगे, समझे? ये यत्न किया जा रहा है कि वचन कुछ और कहता है जो कि ऐसा नहीं है। आज बुद्धि यही है। ओ भाई, कैसे हम इस पर रुकेंगे? धर्म विज्ञान, धर्म के विद्यालय, यही उनका घोंसला है, यही उनका आधार कि परमेश्वर के वचन से वो कहलवाने का यत्न करते हैं जो वो नहीं कहता। मैं चुनौती देता हूँ किसी को भी कि आकर मुझे बाइबल में चेलों का धर्मसार दिखाए। मैं किसी को भी चुनौती देता हूँ कि मुझे संतों से बातचीत दिखाए बाइबल में। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ये विश्वास करते हैं। मैं चुनौती देता हूँ कि मुझे बाइबल में से ये चीजें दिखाएं। देखा, ये बुद्धि की जड़ है, तर्क करने का यत्न कर रहे हैं। हमारा युद्ध शारीरिक नहीं, परंतु सामर्थ, सारे तर्कों को हटा देना, देखिए शैतान की पकड़ को खींचकर बाहर कर देना। वो महान फूल सा सुंदर प्राणी, न कि एक चालाक, नहीं नहीं, ये अंदर से है, परंतु बाहर से पाप दुगना सुंदर है। आप जानते हैं पाप सुंदर है। यहाँ कितने पुरुष और स्त्रियाँ 50 वर्ष से ऊपर के हैं, अपने हाथ उठाएं। मैं नहीं, मुझे स्त्रियों से नहीं पूछना चाहिए, परंतु हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप आज देखते हैं स्त्री अब लगभग दुगनी सुंदर है जैसे कि सामान्यता में सारे संसार में होती थी? यदि ऐसा है तो अपने हाथ उठाएं। जैसी हुआ करती थी, वे अब दुगनी सुंदर हैं। कुछ पुराने चित्र लें, दादी को देखें, उनके लंबे स्कर्ट, चुटिया में कसे बाल, उनकी पीठ पर लटकते हुए, वो देखने में इतनी आकर्षक नहीं। आज आधुनिक वाली को देखें, चिपके हुए कपड़े की हर आकार, वो बिना पाप के हिल नहीं सकती, सड़क पर टक टक करके चली जा रही है, सारे श्रृंगार और श्रृंगार का मैक्स फैक्टर उस पर जितना हो सकता है, अपने बाल छोटी लड़की के समान, ऊंचा छोटा सा स्कर्ट उसके घुटनों से लगभग ऊपर, जैसे कि उसने कुछ पहन ही नहीं रखा, परंतु आप उसे देखें, वो सुंदर है। शैतान जानता है कि कैसे करना है, वो सुंदरता का रचने वाला है, ऐसी सुंदरता जिसका परिणाम पाप में है। पृथ्वी स्वयं में एक गर्भ है। परमेश्वर ने अपने बीज कहाँ डाले, बीजों को कहाँ डालते हैं? एक गर्भ में परमेश्वर बीज डालता है। और मनुष्य क्या करता है? जैसे शैतान एक गर्भ में वो टेढ़े मेढ़े बच्चे को बनाएगा, यदि हो सके तो यही जो शैतान ने पृथ्वी पर किया, मिलावट, ऐसे जीव बना रहा है जो ऐसा नहीं है। अच्छा है कि मैं इसे यहीं छोड़ दूं, मैं बाकी को कभी नहीं ले पाऊंगा, मैंने लिख रखा है। आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है? यही कारण है कि क्रूर सृष्टि है निकाले जाने पर। परमेश्वर इससे उकता गया है। संसार क्रमिकता से बाहर है, हर चीज गलत है। जल धाराएं गंदी, हवा गंदी, गंदा बदबूदार। एक बूढ़ा इंडियन, अधिक समय नहीं हुआ, उसने कहा, गोरा मनुष्य, मैं अधिक जीना नहीं चाहता, मेरी उनसे लड़ाई है रही है। कहा, मेरे बालक कहाँ हैं? क्या वो भूख से मर गए? मेरी पत्नी कहाँ है? कहा, इसके पहले तुम अपनी स्त्रियों और विस्की के साथ और पाप के साथ यहाँ आते, हम शांति में रहे। ये हमारी भूमि है, परमेश्वर ने हमें दी है, परंतु तुमने इसे हमसे ले लिया। किसी दिन तुम इसका भुगतान करोगे। आज इसे देखिए, वे बड़े सुंदर रेगिस्तान और पहाड़, बदबू, पाप, विस्की, बोतलें टीन के डिब्बे से रौंदे जा रहे हैं। हर जगह शराब खाने और अनाप शनाप से भरे हुए हैं। रीनो नवादा, वो बड़ा रेगिस्तान कुछ नहीं सिवाय एक व्यभिचार के बड़े बड़े शहर। यहाँ तक कि हवा, वातावरण दूषित है। जहाँ कभी सुंदर पहाड़ हुए, अब उन्हें काट दिया गया है। और हर चीज, जहाँ पेड़ उगे हुए थे, वे काट दिए गए। जहाँ खाली जगहों में पानी खुलकर बहता था, अब गंदा हो गया। समस्त संसार अब छितरने जा रहा है। संसार अब अपने बालक बीज से उत्पन्न करने जा रहा है, जो शैतान के द्वारा तोड़े और दूषित कर दिए गए। इस पर चल रहा है, निश्चय ही ये दूषित सृष्टि हो गई। परमेश्वर इसे फेंक देगा और फिर से आरंभ करेगा। ये ठीक बात है। ये कहाँ से आया है? एक व्यक्ति ने एक छोटे पर विश्वास, परमेश्वर के वचन के एक छोटे भाग पर अविश्वास किया। सारी पृथ्वी कर्रा रही है। बाइबल कहती है कि यहाँ तक प्रकृति स्वयं में छुटकारे के लिए कर्रा रही है, परमेश्वर के पुत्रों की प्रतीक्षा कर रही है। पेड़ बेकार में संघर्ष कर रहे हैं, फूल चमकने का यत्न कर रहे हैं, परंतु वे कर्रा और रो रहे हैं और जानते हैं कि कुछ गड़बड़ है, मिलावटी हो गया। गर्भ सिद्ध उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मिलावटी हो गई। भूमि सड़ रही है, उसे निर्दोष के लहू से नहला दिया गया है। वो जैसे एक, मैं कुछ सीधा साफ कह सकता हूँ, ये बदबू है। परमेश्वर ने कहा, ये बदबू मार रही है, उसके सामने इतनी गंदी है। विश्राम गृह में जाएं, शौचालय गंदे बदबूदार। ठीक ऐसी ही दुर्गंध संसार से आ रही है, जैसा कि परमेश्वर इसे सूंघ रहा है। गंदी, सारी चीजें गंदी हैं। परमेश्वर इसको टुकड़े टुकड़े कर देगा और नए आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करेगा। उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, ये क्या है? उसका गर्भ सिर्फ शताब्दी को नहीं उत्पन्न कर पाया, उसने दूषित चीजें उत्पन्न की। क्यों? बुद्धि का यत्न कर रही है। फ्लोरिडा के विरुद्ध में कुछ नहीं, मेरा अर्थ आप फ्लोरिडा से आए लोगों से नहीं है, परंतु जब मैं पार करता हुआ पहली बार फ्लोरिडा पहुंचा और वापस जॉर्जिया के क्षेत्र में वहां आया, मैं वहां खड़ा हुआ और मैंने एक अमेरिकन नागरिक के समान, मैंने अपना भाग उन सेमिनोलोस, एक जनजाति जो यहाँ के हैं, दिया। क्यों? वे अपने प्रांगणों को की अच्छी देखभाल करते हैं, उससे जो मैं अपने बालों की करता हूँ। हर चीज तेज धारदार, ताड़ के वृक्षों पर लाइटें लगी हैं, सारे में बड़े चमक धमक वाले पानी की नावें और आदि सरस शताब्दी लाने का यत्न बिना प्राश्चित के कर रहे हैं। मेरे लिए कुछ नहीं है। लाखों बार मैं ब्रिटिश कोलंबिया में ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा हूँ और पहाड़ों को जो परमेश्वर ने रचे उनको देखा, और मनुष्य के हाथों ने उन्हें नहीं छुआ, निश्चय ही नहीं। इन शहरों में जाएं, बड़े बड़े घर, ये मुझे आकर्षित नहीं करते। मुझे इस प्रकार की चीजें अच्छी नहीं लगती, संजय, परंतु मैं जानता हूँ कि एक दिन ये सब बदल जाएगा। वो अपने अपाहिज बालकों को हटा देगी, ये पृथ्वी एक दिन बदल जाएगी। ठीक है, विश्वास, ये विश्वास करता है कि ये लिखा है और कहता है वचन में कोई कमी नहीं। क्या आपने कभी किसी सेवक को कहते सुना, भाई मैं आपको बताता हूँ कि किंग जेम्स का संस्करण या ये रिवाइज संस्करण या ये यहाँ, इसमें थोड़ा सा अंतर है, वास्तव में उसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है। क्या आपने ये सुना? ओ प्रभु, संसार इससे दूषित है, देखा? परंतु विश्वास इसका विश्वास नहीं करता। विश्वास ये विश्वास करता है, एक परमेश्वर जो मुझे बना सकता है, वो इस पुस्तक को मेरे लिए व्यवस्थित रख सकता है कि मैं इसके द्वारा जीवित रहूं। यदि परमेश्वर जिसने मुझे बनाया और मेरा न्याय करने को जा रहा है, वो अपनी इस पुस्तक को व्यवस्थित रख सकता है, नहीं तो वो बहुत ही बेचारा प्रभु है। आप वही हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इसका हर वचन सत्य है। जी हाँ श्रीमान, ये क्या करता है? इस पर विश्वास करने को ये विश्वास देता है। इसमें एक सिद्ध विश्राम का स्थान, समझे? आप अविश्वास नहीं कर सकते कि वचन किसी प्रकार से गड़बड़ हो गया। आपको जैसा ये है उसी प्रकार से विश्वास करना है। यदि आप अपनी बुद्धि से यत्न करते हैं कि कहें, अब यहाँ देखिए, ये तर्क संगत नहीं है कि परमेश्वर ने कहा कि वो इस प्रकार की बात करेगा, परंतु परमेश्वर ने ये किया है, समझे? ये ठीक बात है। अब यदि आप कहते हैं, अच्छा, अब यदि परमेश्वर ने ये किया है, यदि उसने व्यक्ति का जीवन ले लिया क्योंकि वो लेवी नहीं था और उसने अपना हाथ वाचा के संदूक को लगाया जबकि वो गिरने वाला था, कोई मतलब नहीं कि वो कितना भी था, इसके लिए उसने उसका जीवन ले लिया। परमेश्वर ने कहा केवल लेवी इसे छुएगा, उसने इसे ले लिया, इससे दाऊद हिल गया। और आप जानते हैं, देखा, एक लेवी कुछ नहीं था, केवल लेवी को ही वो वाचा का संदूक छूना था। और यहाँ संदूक वापस एक बेदारी के लिए वापस लाया जा रहा था और एक जो बाहर का था उसने वचन को हाथ में लेने का यत्न किया। ये दर्शाने जा रहा है कि केवल परमेश्वर के अभिषेक को ही वचन को हाथ लगाना है। इन मत्सार और नामधारियों का इससे कोई मतलब नहीं कि इसके साथ छेड़छाड़ करें। केवल पवित्र आत्मा का वचन पर अधिकार है और किसी और के लिए ये मृत्यु है। इसका अविश्वास करना और इसे सिखाना, वही अपना भाग निकाल लेगा। जीवन की पुस्तक में से अपना हाथ इस पर ना डालें, इससे दूर रहें। सुनिए, ये जो कहता है केवल उसका विश्वास करें, किसी और का शब्द ना लें, जो ये कहता है उसी को लें। ठीक वचन के साथ बने रहें, इसके साथ कुछ भी करना मृत्यु है। अब क्योंकि ये विश्वास क्या करता है, ये जैसा है वैसा ही विश्वास करता है। परमेश्वर ने इसे युगों से इसे संभाल कर रखा है और ये यहाँ पर है मेरे लिए। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इसका सम्मान करता है। ये अपनी सच्चाई में सिद्ध विश्वास देता है। आप कभी ऐसी स्त्री से विवाह कर सकेंगे? यदि वो युवा लड़की भागी हुई हो और सब कुछ किया हो और व्यभिचार में जीवन बिताया हो और सब कुछ, और वो फिर भी आप गए और उसे वेश्यावृत्ति के अड्डे में पाए, बाहर आए और वो कहती है, अच्छा, मैं एक अच्छी लड़की बनने का यत्न करूंगी। आप उस स्त्री में विश्वास नहीं कर सकते। देखा, आप ये नहीं कर सकते। कैसे एक स्त्री एक व्यक्ति में विश्वास कर सकती है जिसने ऐसी बातें करी हो? आप अपना विश्वास वहाँ नहीं रख सकते। वहाँ विश्वास बनाने के लिए कुछ नहीं है, समझे? आप ये नहीं कर सकते। आप कैसे वहाँ जाकर ये कर सकेंगे? यहाँ एक नाव है, इसमें बहुत सारे छेद हैं और मैं उसमें कुछ घास के बोरे डालूंगा, संभव है वो लहरों का सामना कर लेगी कि नदी को पार कर ले, और मैं तो इस पर भाग्य नहीं आजमाऊंगा, जबकि वहाँ एक ठीक बनी हुई और निश्चित है। क्यों हम मनुष्य के बनाए धर्म विज्ञान को जहाँ सारे में छेद हों लूंगा? ये सिद्ध हो चुका है कि ये गलत है, समझे? जबकि एक यहाँ पर रखा है जो वास्तव में परमेश्वर का वचन है, जो लहरों का सामना कर सकता है, हर बड़े तूफान और छक्कड़ का, वो ठीक जितनी सच्ची है बनी रह सकती है, ये सदा रहेगा। ठीक है, यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं। क्यों? वे अनंत हैं, वे आरंभ में थे। वो यहाँ परमेश्वर का वचन प्रकट करने आया। वो परमेश्वर का प्रकटीकरण था। परमेश्वर स्वयं को अपने पुत्र के द्वारा प्रकट कर रहा था। ये सब उत्पत्ति में आरंभ हुए, बीच का अध्याय, और तब से हो रहा है जब से ये दृश्य पर आया। ये वही चीज रही है, बुद्धि और विश्वास के बीच संघर्ष, सदा युद्ध। इसलिए बुद्धि शैतान की ओर और उसके बालकों के लिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया? आप सब ने भेड़ों को देखा है, आप सब ने बकरी को देखा है, उन दोनों की आवाज बहुत मिलती हुई है। ये तो वास्तविक चरवाहा उसके अंतर को बता सकता है। आप एक पुरानी बकरी को लें, उसे बोलने दें, और तब इधर आकर भेड़ को लें और उसे बोलने दें, इसे सुने, वे एक सी आवाज निकालते हैं, परंतु वास्तविक चरवाहा आवाज को पकड़ लेगा। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द जानती है, समझे? वे बता सकते हैं कि ये बकरी है या नहीं। भाई वो एक भेड़ है स्वयं में, ओ वो नहीं, मेरी भेड़ मेरा शब्द जानती है, अनजान के पीछे वो नहीं जाएगी। उसकी आवाज क्या है? ये यहाँ है, वो वचन। देखा, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। देखा, वे किसी को नहीं कहने देंगे, ओ अब यहाँ मैं भी परमेश्वर की आवाज में बात कर रहा हूँ, ये यहाँ ये कहता है। परंतु ये देखिए शैतान, हम अभी थोड़ी देर में इसमें जाएंगे, इसको आपके लिए ठंडा होने दें, समझे? अब आप देखिए, बीज वचन ज्ञान के वातावरण में नहीं बढ़ सकता। ये ठीक बात है, समझे? जैसे ही ज्ञान विश्वास में घुलता मिलता है, ये वही मर जाता है। हवा ने आकर कहा, प्रभु परमेश्वर ने कहा है, जिस दिन हम इसे खाएंगे उसी दिन मर जाएंगे। तब वो ये देखने को रुकी, वो क्या कहता है। उसने कहा, परंतु मेरी प्रिय सुन, तुम छोटी प्यारी सी चीज समझे, निश्चय ही परमेश्वर ने तुझे इसी उद्देश्य के लिए बनाया है। आप जानते हैं ये ठीक बात है। देख, तू स्त्री है, तुझे इसी उद्देश्य के लिए बनाया है। यही जो अब तू इसे नहीं जानती, परंतु तुझे इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, और तू छोटी प्यारी सी चीज है। ओ, इन छोटे कोमल से हाथों को देख, समझे, क्यों निश्चय ही तुम होगे, निश्चय ही। परंतु उसने कहा, यदि हमने किया, हम मर जाएंगे। उसने कहा, परंतु क्या तू सोचती है कि एक अच्छा प्रेमी पिता परमेश्वर इस प्रकार की चीज करेगा? वो क्या करेगी? उसने तर्क को सुना, उसकी बुद्धि को लिया, कहा, ये एक आनंद देने वाला वृक्ष है, कोई भी इसे चाह सकता है, और वो उसके लिए गिर गई। ये ठीक बात है। और जब उसने किया तो क्या हुआ? जैसे ये किसी भी स्त्री के लिए, जैसे ही आप इसके लिए गिरते हैं, ये वही समाप्त हो जाता है। ये ठीक बात है। अब आप देखते हैं, वो बीज जो वो थामे थी, और अंततः माँ बन जाएगी, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, बोले गए वचन के द्वारा, अंततः वो माँ हो गई थी, परंतु वो प्रतीक्षा ना कर सकी, उसमें चली गई। तब देखिए, जैसे ही उसने ये किया, वचन के साथ बुद्धि को स्वीकार किया, और बुद्धि वचन के विरोध में थी। आप समझते हैं? आमीन। समझे, यदि बुद्धि वचन के साथ है, और वचन के साथ होने का प्रमाण है, और वचन स्वयं को उसी चीज से उत्पन्न करता है, तो फिर ये वचन है। परंतु यदि बुद्धि वचन के विरुद्ध है, और वचन के साथ नहीं, परंतु इसमें कुछ मिलाने या इसमें से निकालने का यत्न कर रही है, तो ये शैतान का है। और बाइबल के पवित्र आत्मा का बीज बुद्धि के वातावरण में नहीं बढ़ता। ये राष्ट्र के हर धर्म विज्ञान को मार डालता है, ये उसमें छेद बना देता है, उसमें छेद कर देता है, और उसमें न्याय आ जाता है। ये ठीक बात है। निश्चय ही ये करता है, क्योंकि वचन बुद्धि के साथ नहीं बढ़ सकता। सांसारिक बुद्धि ये नहीं चलेगा। हवा को वचन का ही विश्वास करना था, जैसे कि उसे दिया गया था। ये ठीक बात है। उसे किसी की भी नहीं सुननी थी इस विषय में, कुछ भी। जैसा कि उसे दिया गया था, उसे उसी प्रकार से विश्वास करना था, तो वहाँ कभी भी मृत्यु नहीं होती, यदि उसने इसका विश्वास कर लिया होता था। ये ठीक बात है। और पुरुष या स्त्री जो परमेश्वर के वचन को ठीक वैसा ही लेगा जैसा हमें ये दिया गया है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, वैसे ही पकड़े रहे, तो ये जीवन है। परंतु इसे किसी संस्था की बुद्धि से मिलाया जाए, तो आप वही मर जाते हैं जैसा कि इसने पहले किया। ये तो बीज है, यही मार्ग है। पहली बार में उसने ऐसा ही व्यवहार किया, ये हर बार उसी प्रकार करेगा। ये सदा से रहा, परमेश्वर ने अनुमति दी। हम इसे बाइबल से सिद्ध करेंगे आज प्रातः। केवल यही मार्ग है कि वो बढ़ सकता था। सैम को सारे तर्कों से अलग करें या कुछ भी, बस वचन का विश्वास करें। हवा को इसे इसी प्रकार से लेना चाहिए था, जिस प्रकार से ये हमें दिया गया। और मैंने ये प्रकट किया और आपको बताया कि मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इस बाइबल को संभाला और बनाए रखा है, और इसी प्रकार से उसने मुझे दिया है। मैं कोई और बुद्धि नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर ने यहाँ ये कहा है। अब मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको आघात नहीं पहुँचा रहा हूँ, परंतु यदि बाइबल ने कहा कि मुझे प्रायश्चित करना ही है, इसका अर्थ प्रायश्चित, न कि तपस्या, परंतु प्रायश्चित। बाइबल ने मुझसे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने को कहा, इसका कोई और अर्थ नहीं है। ये मतलब नहीं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये कहा गया। अच्छा, आप कहते हैं मत्ती 28:19 ने कहा कि इन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो, ठीक यही जो ये था। अब यदि ये ठीक नहीं है, यदि उसके पास सही चीज नहीं है, तो वो विश्वास जो पत्रस के पास था कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो और बाकी सारी बाइबल, तो फिर परमेश्वर ने उन्हें गलत प्रकाशन से आशीषित किया। ये उसे ठीक वापस लाता है, तो उसे हवा को आरंभ में आशीषित कर देना चाहिए था। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम जो तीन उपाधि है, केवल एक ही नाम है। आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं दे सकते जब तक आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ना दें, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का यही नाम है। और सारी बाइबल इसी प्रकार से लिखी गई है। हर व्यक्ति बाइबल में जिसका कभी बपतिस्मा हुआ, वो यीशु मसीह के नाम में था। बाइबल में किसी का भी बपतिस्मा उपाधियों में नहीं हुआ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और हर कोई को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया, उसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया था। हर कोई जिसका पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपाधि में बपतिस्मा हुआ, उसका किसी नाम में बपतिस्मा नहीं। एक उपाधि जैसे सेवक, आदरणीय, डॉक्टर, और चाहे जो पिता, पुत्र, मनुष्य, पत्नी उपाधियां हैं, कहा इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो फिर अपनी उपाधि अपने चेक पर लिखें और अपना नाम नहीं, और देखिए ये कहाँ जाता है। ओ, मैंने इस चेक पर गृहिणी नाम के हस्ताक्षर किए हैं। इसका वैसे ही तात्पर्य है जैसे कि परमेश्वर के वचन का अविश्वास करना, जबकि प्रकाशन ठीक आपके सामने है, निश्चय ही। ठीक है, इसका उसी प्रकार से विश्वास करना है जैसा परमेश्वर ने कहा है। ये स्वयं में विरोधाभास नहीं है, बिल्कुल नहीं। शैतान आप में विरोध ला सकता है, परंतु वो वचन में नहीं कर सकता, नहीं। इसलिए वचन इसका पक्ष नहीं करता। नहीं श्रीमान, ये पुरानी बात है और ये सिखाया जा चुका है, परंतु ये अभी भी कभी प्रमाणित नहीं किया गया। आइए हम दोनों स्रोतों को देखें, या आप जिसे वातावरण भी कह सकते हैं, और देखिए ये क्या उत्पन्न करते हैं। आइए हम इन पर कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें। वातावरण, ये दोनों स्रोत एक वातावरण की सृष्टि करेंगे। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी आराधनालय में गए हैं? मैं इसे आदर भाव में कहता हूँ और एक दिशा पर लाने को परमेश्वर ना करे। क्या आप किसी कलीसिया में गए हैं जहाँ पास्टर एक घमंडी हो, भक्त मंडली भी उसी प्रकार की? ये ठीक बात है, समझे? ये क्या है? ये वो वातावरण है जो इसे लाया। ऐसे स्थान पर जाएं जहां पास्टर कहता है, अब एक मिनट रुको, ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे कि ये निरर्थक है। मैं ऐसी किसी बात में विश्वास नहीं करता जैसे दिव्य चंगाई, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में। आप जानिए, आप उनमें से हर एक को देखेंगे, भक्त मंडली को, यदि वे नहीं है। यदि वहां कहीं उकाब है तो वो उन चूजों के झुंड में से बाहर निकल जाएगा। ओ, निश्चय ही होगा, बिल्कुल सही, वो इसे छोड़ देगा। जी हाँ, या निश्चय ही वो उसे छोड़ देगा, वो नहीं रुक सकता। वो एक उकाब है, वो आकाश के लिए बनी हुई चिड़िया, ना कि कूड़े खत्ते के लिए। जी हाँ श्रीमान, अब ये यहाँ पर है और हम पाते हैं कि वे वातावरण और आप उसमें चले जाते हैं। इन बातों में जहाँ विश्वास कलीसिया में सिखाया जाता है, आप कलीसिया को उसी वातावरण में पाएंगे। ओ परमेश्वर, मैं आपको ये बता दूं, इसलिए आप यदि आप ये देख सकते हैं, समझे, जाएं। इसी कारण लोग संतों के मध्य में आ जाते हैं जहां वे प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वासी लोग। पौलुस ने कहा उस नगर में कोई नहीं मिला, केवल तिमोथियस। आप जानते हैं वो एक बहुमूल्य विश्वास जैसा था जो उसके पास था। आप जानते हैं वे बाकी सारे नामधारीवादी थे, समझे। परंतु जब वो उस वातावरण में आया, देखिए आप पाते हैं कि बातें आगे बढ़ रही थी जो वातावरण वहां उत्पन्न किया गया था। आप पाते हैं कि लोग विश्वास के द्वारा जी रहे हैं। जब आप उस स्थान में पहुंचते हैं जहां वो ये कहता है, ओ प्रभु क्यों, बाइबल ही सत्य है, परमेश्वर चंगा करता है। आप वहां उनकी मंडली में संग संग चलते हैं, आप पाते हैं, क्यों मैं कैंसर से मर रहा था, मैं चंगा हो गया। एक समय मैं अंधा था, मैं देखता हूँ। परदेशी कहता है, ओह आपका क्या अर्थ है, तुम्हारे साथ क्या बात थी? मैं आपको अपना अभिलेख दिखाऊंगा, तुम मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ खाना खाओ और मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। वहाँ मेरे पास अभिलेख है, मेरे पड़ोसी जानते हैं कि मैं ऐसी अवस्था में था, मैं वर्षों से अपाहिज था, मेरे लिए प्रार्थना की गई, समझे। ये क्या है कि उस वचन उस कलीसिया में है, वो विश्वासियों का झुंड है, उन्होंने एक वातावरण बनाया। अब वचन कैसा है, अपनी सादगी में परंतु फिर भी अपनी पूर्णता में, कभी ऐसे स्थान में बढ़ा जहां ज्ञान उस पर छा गया और कहता है ये ऐसा नहीं हो सकता, समझे, ये नहीं हो सकता। जहां ज्ञान धर्म विद्यालयों से प्रचारा जाता है, बालक मरते हैं। जहां वचन विश्वास से प्रचारा जाता है, बालक जीते हैं। आमीन, यही अंतर है, जीवन और मृत्यु। यही चीज अदन वाटिका में हुई, उनके साथ यही हुआ। वहाँ दो वातावरण थे, जब हवा सही वाले से हट गई और गलत वाले पर आ गई, वो मर गई। देखा, मैं ये करूँगी हर बार, इसलिए वे टिके नहीं रह सके। यदि आपकी कलीसिया इस प्रकार के वातावरण में है, ओ बालक, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो तू वचन का विश्वास कर। अब यहाँ एक छोटी सी जलन पैदा करने वाला हूँ, और मेरा अर्थ कोई कठोर तरीके से नहीं, मैं बस ये शिक्षा है, आपको होना ही है। जब आप इन बातों पर विचार करते हैं, आपको प्रहार और ज्वलंत करना ही है, थोड़ा सा। अब देखिए, अब थोड़ी प्रतीक्षा करें, जैसे बछड़े पर गर्म ठप्पा लगाना। मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता था कि बछड़े पर लोहे का दाग लगाऊं, बेचारा छोटा सा, हम वहाँ से भाग जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आपने कभी बछड़े को रस्सी से बांधा या नहीं, और उन्हें बांध दिया, आप उन्हें दोनों ओर से बांधते हैं आर पार, और बेचारा छोटा सा, आप वहाँ भाग कर उस गर्म ठप्पा लगाने के लोहे को लाते हैं और उस पर लगाकर दबा देते हैं। ओ भाई, ये भयानक दिखाई पड़ता है। जब आप उठाते हैं तो वास्तव में उछलकर भागता है, और बस भागता है और लाते मारता, चीखता, उछलता और चला जाता। परंतु मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद से वे जान गए कि वे किससे संबंधित हैं। ये ठीक बात है, वे जान गए क्या वो किस चरागाह से हैं? इसके लिए इस विषय में कोई उपहास नहीं। इसलिए आइए लोहे का ठप्पा लगा लें, हम ठप्पेदार हो जाएं। जी हाँ श्रीमान। जब उन्होंने कहा, आप जानते हैं, आप में से बहुत सो ने चरवाहों का ध्यान करने सुना या पढ़ा होगा, काउबॉय मेडिटेशन, और वर्ष भर भटकते रहना, और वे उसे भीतर लाते हैं, वहाँ अंत में एकत्र करना, वर्ष भर विचरण, वे बस उससे एक ऐसा रसा तैयार करते हैं, क्योंकि उस पर ठप्पा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए बाकी अपनी अपनी चरागाह में चले जाते हैं, परंतु उस झुंड का मालिक अपने पशुओं को पहचानता है। इसलिए यदि आप ठप्पे से घात हैं, अब देखिए, शैतान इसे वैज्ञानिक रीति पर सिद्ध करता है अपनी बुद्धि के द्वारा। अब मैं यहाँ कुछ मिनटों के लिए एक डॉक्टर की भूमिका करने जा रहा हूँ। शैतान वैज्ञानिक रीति से अपनी बुद्धि के द्वारा सिद्ध कर सकता है वो मिट्टी जो वो मनुष्य जाति को बढ़ने के लिए देने जा रहा है उसमें विटामिन थी। निश्चय ही वो विज्ञान से ये सिद्ध कर सकता है, वे जो भी चाहे विज्ञान से इसे लगभग सिद्ध कर सकते हैं, समझे। निश्चय ही इसमें विटामिन पी थी, प्लेजर, पॉपुलरिटी, विलासिता, लोकप्रियता, ये इसमें है, ये इसकी बुद्धिमानी की मिट्टी में है। निश्चय निश्चय ही संसारिक सारी विलासिता, सिनेमा के शो, सारे नाच, सारी चीजें आगे बढ़े, ये ठीक बात है, कोई भी हानि नहीं होगी। निश्चय ही देखा, लोकप्रियता, आप नगर की सबसे बड़ी कलीसिया हैं, ठीक है, इसमें विटामिन सी है जिसे ये सामान्य ज्ञान समझकर इसका उल्लेख करता है, तर्क देता है। आप देखिए, जी हाँ, इसमें विटामिन आर है जिसका अर्थ रीजनिंग, तर्क, जी हाँ, वो तर्क दे सकता है, परंतु आप देखिए ये काम नहीं करेगा। इसमें विटामिन बी है जिसका अर्थ ब्यूटी, सुंदर, शैतान सुंदर है, पाप सुंदर है, और जैसे कि पाप और होता जाता है ये और अधिक सुंदर हो जाता है। आज हमारे पास कितने अच्छे घर हैं बजाय उस लट्टे के घर के, ये कितने अधिक सुंदर हैं। आज हमारी स्त्रियां पहले के मुकाबले कितनी अधिक सुंदर हैं, समझे। फ्लोरिडा कितना सुंदर है, अब ये था और जैसा परमेश्वर ने इसे सृजा था, समझे, ये सुंदर हो गया। कितने जानते हैं शैतान एक सुंदरता है और उसकी लालसा सुंदरता है और सुंदरता को सृजाने का यत्न करता है, अधिक सुंदर राज्य और आदि आदि। निश्चय ही हम ये जानते हैं शैतान सुंदरता में है। अब ध्यान दें, उसके पास विटामिन आर था जो रीजनिंग यानी तर्क है, विटामिन बी जो कि ब्यूटी यानी सुंदरता, विटामिन एम जो कि मॉडर्न यानी आधुनिकता। ओह, आप आधुनिक होना चाहते हैं, उसके ज्ञान को लें और देखें कि आप उन चीजों का विश्वास करते हैं कि या नहीं। ये आपके अंदर बढ़ जाएगा, विटामिन ठीक वहीं आएगा जहां आप स्थित हैं। कुछ लोग खड़े होते हैं और आपको उसका ज्ञान देते हैं। मित्रों, आप देखें क्या हो यदि हम इस महान आराधना को लें, प्यारा सा आराधना ले, यहाँ पर और बहुत सारा चिल्लाना और रोना और अन्य अन्य भाषा बोलना और ऊपर नीचे भागना और पागल कुत्ते के समान मुंह से झाग निकालना और अब क्या सोचते हैं इस नगर का मेयर क्या सोचेगा और कहें डीकन बोर्ड, यदि आप ऐसी बातों को यहाँ होने की और आने की अनुमति देते हैं। ओ, निश्चय ही ये आधुनिक है। आप क्या सोचते हैं कि हमारे लोग वहाँ सड़क पर अपने हाथों में खंजड़े लेकर खड़े होंगे और ये क्या करेगा यदि हमारी बहनें अपने बड़े लंबे लटकते बालों के साथ वहाँ आएंगी और बाकी नगर कलीसिया की स्त्रियाँ नगर में से होकर जा रही हैं। देखो वहाँ क्यों इस कलीसिया की अध्यक्षा या वो जो भी है आप जानते हैं। अच्छा, देखो देखो वहाँ, देखो एक पुराना नमूना, क्या वो नहीं, उसका अतिरिक्त पहिया वहाँ पंचर हो रहा है, समझे। आप जानते हैं कुछ इस प्रकार का, हम आधुनिक होना चाहते हैं। देखा, ये शैतान की बुद्धि है, यही जो बढ़ती है, यही वे विटामिन है जो मिट्टी में है, ये उसी उत्पाद में आते हैं जिसे ये उत्पन्न करता है। आगे बढ़ो तुम आधुनिक जिजाबेलो, ठीक है, आज की स्त्री के समान आधुनिक। निश्चय ही ओ आधुनिक, ठीक है, इस नगर के सबसे आधुनिक लोग कलीसिया में आएंगे। निश्चय ही ये क्यों, वे इस आधुनिक विटामिन में बड़े हुए हैं, तर्क की विटामिन, ठीक है, ये सब उसमें बढ़ते हैं, समझे, ये वही है तर्क। परंतु जैसे ही आप इसमें बढ़ना आरंभ करते हैं तो आप वचन के लिए मर जाते हैं। इसके पहले कि आप वो हो सके आपको वचन का इनकार करना होता है, समझे। केवल एक ही मार्ग है कि आप कभी पापी हो, ये कि आप परमेश्वर के वचन का इनकार करें। पाप क्या है? अविश्वास। अविश्वास किस में? परमेश्वर का वचन, समझे। आपको पहले वचन का इनकार करना होता है। अब ओ, मैंने यहाँ लगभग 10 और विटामिन लिख रखे हैं, परंतु यहाँ एक विटामिन है जो उनको बताने में असफल रहा, उसमें वो विटामिन डी है। ये वहाँ सबसे बड़ा विटामिन वहाँ है जिसका प्रतिफल मृत्यु, समझे। ये सुंदर वेशभूषा वाले लोगों का झुंड है, बहुत ही आधुनिक, सबसे सुंदर आराधना स्थल, सबसे बड़ी संस्था, देखिए बहुत ही आधुनिक वो थी, वहाँ सबसे सुंदर, बहुत ही बुद्धि संपन्न बातें कह सकते हैं। क्यों नहीं होंगे? यदि परमेश्वर ने हमें अपनी सृष्टि बनाया है तो फिर क्यों वो इन स्त्रियों को दोषी ठहराएगा जो उनके सबसे अच्छे रूप में दिखाई पड़ती हैं, छोटे बालों में? क्यों वो थोड़े से श्रृंगार को दोषी ठहराता है? भाई, उसके पास एक बाइबल में है जिसने ये किया और उसने उसे कुत्तों को खिला दिया। इसलिए आप इस विषय पर सोचें, आप देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। क्यों होगा? परमेश्वर क्यों करेगा? क्यों? ओ, वो हमसे ये आशा नहीं करता कि हम बाइबल के अनुसार जीवन बिताएं। निश्चय ही उसने ये किया। उसने हवा को बताया उसे जीना चाहिए, या उसने बताया, यीशु ने कहा कि मनुष्य हर वचन से जिएगा, हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ये किसने कहा? यीशु ने। ये ठीक बात है। उसने कहा यदि कोई दूसरा व्यक्ति कोई और भिन्न बात कहे वो झूठा ठहरे। उसका वचन सच्चा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। आप वही हैं, इसलिए विटामिन डी उसके नुस्खे में है, आधुनिक। ये ठीक बात है। अब परंतु बाइबल के वचन का बीज इस प्रकार की भूमि में नहीं बढ़ सकता। कैसे एक व्यक्ति उन आधुनिक कलीसियाओं में जा सकेगा? परमेश्वर का आत्मा इस पर आएगा और वे शोर मचाना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। आप जानते हैं क्या? क्यों आप एक प्रचारक से उसका उपदेश सहन करवा सकते हैं? क्यों? मैं आपको बता दूं, मैं उसे ये कहते हुए देख सकता हूं, और वे सारे सारस वहां अपनी गर्दन घुमाते हैं, आप जानते हैं, चारों तरफ देखते हैं ये देखने को, अच्छा ये क्या कहा। तब कुछ मिनटों में प्रचारक कहेगा, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की महिमा हो। ये ठीक बात है डीकन। हाँ, तुम कुछ मिनटों में दरवाजों पर होगे, वे आपको बाहर फेंक देंगे, समझे? वचन वहाँ नहीं बढ़ सकता, बस वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, समझे? बस ये नहीं हो सकता। और फिर वो इसके ऊपर विष छिड़कता हुआ आता है ताकि आप में से जीवन का जीवाणु मार डाले। अब आज देश में एक लोगों का झुंड है जो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चंगा करता है। क्यों? निसंदेह हम जानते हैं, बुद्धि संपन्न चेतना ये दर्शाती है कि परमेश्वर ने हमें चंगा करने के लिए डॉक्टर दिए हैं। अब आप एक अच्छे समझदार डॉक्टर से पूछें, क्या वो चंगा करने वाला है? वो आपको बताएगा, नहीं श्रीमान, मैं एक दांत को निकाल सकता हूँ, परंतु उस खाली स्थान को जो उससे बनता है मैं चंगा नहीं कर सकता। ये ठीक बात है। मैं एक बांह को बैठा सकता हूँ परंतु मैं चंगा नहीं कर सकता। निश्चय ही ठीक बात है, परमेश्वर चंगा करता है, समझे? अब कैसे कोई चीज कभी ऐसे प्रकार की चीजों में बढ़ सकती है? कैसे वचन का बीज कभी ऐसे में बढ़ सकता है? बस ये नहीं होगा, ये इस प्रकार के वातावरण में नहीं बढ़ेगा, निश्चय ही नहीं। परंतु विश्वास केवल एक ही विटामिन में बढ़ता है। इसका केवल एक ही विटामिन है, आपको कोई मिश्रण नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। विश्वास केवल एक ही विटामिन में बढ़ता है और वो वचन है। केवल यही एक चीज है जिसमें विश्वास बढ़ता है, वो वचन है। और केवल एक ही मार्ग है जिसमें ये बढ़ सकता है, क्योंकि ये वचन का विश्वास करता है और इसे पूरा पूरा वचन लेना होता है और इसके सच होने का विश्वास करता है। और विश्वास विटामिन का अक्षर विन्यास चार छोटे वर्णों से होता है, LIFE, लाइफ, जीवन। इसमें विटामिन L है, विश्वास में विटामिन L है, बुद्धि में विटामिन P, विटामिन R, विलासिता और विटामिन तर्क, विटामिन और सारी विटामिन है वे FARE, ज्ञान में ये सब कुछ है, समझे? बुद्धि में ये सब कुछ है, इस पर तर्क करें, परंतु विश्वास में केवल एक चीज है, जीवन, यही जो ठहरता है। तेरा वचन जीवन है, तेरा वचन सत्य है, वो वचन है मार्ग, सत्य, ज्योति। विश्वास ठीक वही पाया जाता है बस, और इसे नहीं लेगा। पवित्र आत्मा जीवन, अनंत जीवन, जहाँ विश्वास बढ़ता है, वचन जोई, परमेश्वर का अपना जीवन, केवल यही स्थान है जहाँ विश्वास कार्य कर सकता है। और तब उस जोई में ये बढ़ता है और जो वचन ने जो कहा उसे उत्पन्न करता है। परमेश्वर, उसने कैसे संसार की रचना की? क्या आप विश्वास करते हैं कि संसार परमेश्वर के विचारों में था? निश्चय ही ये था, इसे होना ही था। कैसे उसने इसे बनाया? बस उसने कहा। कहाँ से वो चीजों को लेने जा रहा था? कैसे आप परमेश्वर के साथ कभी कोई तर्क कर सकते हैं? कहें, परमेश्वर तूने पदार्थ कहाँ से लिया कि उससे चट्टान बनाए? तूने कहाँ से क्या किया? वे गैसों से आए, गैस तुझे कहाँ से मिली प्रभु, समझे? आपने जल को कैसे बना दिया? फार्मूला क्या है? H2O, हाइड्रोजन कहाँ से आई ऑक्सीजन के ऊपर, समझे? यही है, समझे? ये कोई बोध नहीं बनाता। परमेश्वर ने क्यों कहा? ये उसके विचारों में था और उसके विचार उसके वचन थे। इसके पहले कि वो प्रकट होते, तब जब उसके विचारों ने कहा ऐसा हो जाए, और वहाँ था, यही है, यही जहाँ विश्वास रखा है द्वारा। वो इब्रानी 11 ने कहा विश्वास के द्वारा संसार की सृष्टि हुई थी, संसार विश्वास के द्वारा बना। परमेश्वर ने संसार को उन चीजों से बनाया जो प्रकट नहीं होती। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने बोलकर संसार को अस्तित्व में ले आया, क्योंकि ये पहले से मनन किया हुआ वचन था, परंतु जैसे ही उसने कहा वो जीवन बन गया। अब आप कह सकते हैं भाई ब्रैनम मैं इसका विश्वास करता हूँ, अपने हृदय में आप इसका विश्वास कर सकते हैं, तो फिर इसे प्रकट करें, मैं इसका विश्वास करता हूँ, इसे कभी ना बदलें, बिल्कुल नहीं, इसी के साथ बने रहें। ध्यान दें, इसमें से क्या बढ़ेगा, ये वचन को उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये विश्वास है, समझे। बुद्धि आपको इससे दूर ले जाएगी, विश्वास आपको इसके पास लाएगा, इसे समझा। ये मनुष्य द्वारा बनाए हर मत्सार को काट देता है, ये शिक्षा के हर विद्यालय को काट देता है, मनुष्य के द्वारा बनाए हर धर्म विज्ञान को इन्हें निष्क्रिय कर दे। वे वहाँ हैं, उनके प्रोफेसर डीडी पीएचडी एलएल क्यूयूडी और इन सबको विद्यालय जाकर और मनोविज्ञान सीखना होता है, और वे सारी दूसरी बातें। उसने केवल एक बात को छोड़ दिया कि अपने आप को मनोविज्ञान के साथ कैसे प्रस्तुत करें और किस प्रकार के वस्त्र पहने और कैसे आमीन बोलना चाहिए ऐसे, और ओ निरर्थक। पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई परमेश्वर के पुत्रों की अगुवाई परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होती है, ना कि धर्म विज्ञान की बुद्धि, परंतु परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों की अगुवाई करता है, निश्चय ही ये सत्य है, आमीन। अब आइए हर मत्सार को दूर कर दें, हर विद्यालय को जो सिखाता है हर मनुष्य के बनाए गए धर्म विज्ञान को। कोई आश्चर्य नहीं वे विश्वास नहीं कर सकते, उनमें इसे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, समझे। उनके पास विटामिन आर है, रीजनिंग तर्क, जिसे कि हमें बाहर निकालना है, विटामिन लोकप्रियता, विटामिन विलासिता, थोड़ा सा मनोरंजन। किस प्रकार का मनोरंजन, वो बाहर आओ और थोड़ी सी पी लियो। कभी कभी आप समझते हैं कि थोड़ा सा मनोरंजन, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप जानते हैं वहाँ इस प्रकार की छोटी मोटी चीजें हैं, वहाँ बस यही है, वे सारी विटामिन है, समझे। और इस प्रकार की विटामिन कैसे कभी एक वचन को बढ़ने देंगी, ये तो इन विटामिनों को नहीं चाहती। कैसे आप इसे करने जा रहे हैं, समझे। वचन इसका इनकार करता है, यदि आप संसार से प्रेम करते हैं या संसार की चीजों को, तो फिर आप में परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं, बाइबल ने कहा, समझे। इसलिए कैसे कैसे परमेश्वर का वचन कैसे इन विटामिनों के प्रभाव में इस प्रकार बढ़ने जा रहा है। ये कुछ निश्चित विटामिन भूमि से लेता है कि दाने को उत्पन्न करे, इसे सही प्रकार की भूमि में होना है, हम इसे थोड़ा सा ले रहे हैं, समझे। सही प्रकार की मिट्टी होनी ही चाहिए या फिर ये दाने को उत्पन्न नहीं करेगा। आप किसी निश्चित भूमि को लें, ये इसे नहीं उगाएगा, ये कुछ और उगाएगा, रेतीली भूमि, विभिन्न विटामिन आदि आदि, कुछ विशेष चीज उगाती है। यदि ये नहीं, क्यों, ये आपके पास नहीं है, ये इसे नहीं उगाएगा, बस। अब झाड़ियाँ कहीं भी आसपास में उगेगी, किसी भी प्रकार की भूमि में, क्या ये ठीक बात नहीं। पुरानी नामधारी झाड़ियाँ कहीं भी उगेंगी, परंतु भाई मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप जीवन के फल उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उसे वचन में से ही होकर उगना होगा। ये ठीक बात है, निश्चय ही ठीक है। मैं आशा करता हूँ मैं आपसे बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ इस पर आता है, समझे। अब नहीं, ठीक है, कोई आश्चर्य नहीं कि वो विश्वास नहीं कर सकते, उनके पास इसमें जीने के लिए कुछ नहीं है। यीशु ने उनके विषय में मत्ती 13 अध्याय में बोला है, और पहला पद आइए निकाल कर देखें कि यीशु ने इस बारे में कैसे कहा है, ये बात जो हम कर रहे हैं, मत्ती 13 अध्याय और पहले पद में। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि में गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से वे सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले, बुद्धि नहीं कान, देखा, ठीक है, सुनना, ठीक है, ध्यान दें, उसने कहा कुछ आगे बढ़े, जब बीज आगे बढ़ा वचन प्रचार आ गया, कुछ मार्ग के किनारे गिरे जैसे बत्तख की पीठ पर पानी, तभी नीचे बह गया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, पथरीली इस पर थोड़ी सी मिट्टी थी जो वहाँ पड़ी हुई थी और उगे, परंतु इसके पास जड़ें नहीं थी, उसकी जड़ों को जड़ फैलाने की जगह नहीं थी। अब मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपकी भावनाओं को आघात नहीं पहुँचाता हूँ, समझे। ये कैथोलिक कलीसिया थी, उन्होंने कहा वे एक चट्टान पर बने हैं। मैं उनके साथ सहमत होऊंगा, मैं निश्चय ही उनके साथ सहमत होऊंगा, ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। इसके नीचे मिट्टी नहीं जिससे कि वो उगे, क्यों? ये उत्पन्न नहीं कर सके, वे बाइबिल की विटामिन उत्पन्न नहीं कह सके, क्योंकि उन्होंने इसका विश्वास तक नहीं किया। उनकी शिक्षाएं धर्म सिद्धांत हैं, ये ठीक बात है, रोमन धर्म सिद्धांत, इसमें कोई भी वचन नहीं, बिल्कुल नहीं, समझे। पत्थरों पे गिरे, ये सबसे अच्छी बुद्धि थी। ओ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने इसे उसी प्रकार से लिया, उन्होंने इसे मनोविज्ञान के मार्ग से प्रस्तुत किया और बड़े महान भवन और अच्छी वेशभूषा, पवित्र देवताओं जैसे दिखाई पड़ते हैं, याजकों और सब चीजें। कितनों ने ये छोटी नन की गवाही सुनी है जो बाहर आ गई, आपको यहाँ मिला, मैं किसी बुधवार रात्रि को कलीसिया में बजवाना चाहता हूँ, और यहाँ हर व्यक्ति की गवाही होनी चाहिए, और उनमें से एक बहुत समय तक मेरे साथ चलता रहा। कैसे वे, मैं स्वयं वहाँ नीचे मेक्सिको में गया और उन चूने के गड्ढों को देखा, वे गड्ढे जहाँ उन ननों के बच्चे, जब पादरियों के बच्चे उनसे हुए, जहाँ उनको उन चूने के गड्ढों में जलाया गया, इस प्रकार की बातें। यही जिन बातों ने मेक्सिको को साम्यवाद में जन्म दिया, उन्होंने इस अनाप शनाप को तोड़ दिया, इसी से साम्यवाद को जन्म मिला। आप कभी साम्यवाद से न डरें, परमेश्वर साम्यवाद का प्रयोग कर रहा है, इसमें विश्वास न करें ये शैतान का है, परंतु परमेश्वर एक शैतान को लेता है और फिर वापस आता है, जैसे उसने नबूकदनेस्सर से किया और आकर इसराइल को ले लिया, समझे। जी हाँ, आप ध्यान दें और देखें कि बाइबल इसको सिद्ध करती है, एक दिन हम इसी में जाएंगे। परमेश्वर इसे उठा खड़ा करता है कि परमेश्वर के बालकों से बदला ले, उस पुरानी वेश्या से। बाइबल ने ठीक यही कहा है, उन्होंने उसे आग से जला दिया, वो अपने अंत पर भी आ गई, ठीक यही उसके साथ भी यही होने जा रहा है। ये वही है, यही वाला जो पत्थरों में गिरा, बहुत थोड़ी सी मिट्टी और वो छोटी चीज बढ़ ना सकी, मर गया, तब वो ऊंची बुद्धि थी। तब कुछ प्रोटेस्टेंटों की भूमि पर गिरा, परंतु थोड़ी देर के बाद बड़े बड़े नामधारियों की महान बुद्धि ने आकर उसे दबा डाला, आत्मा को दबा डाला। आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, डॉक्टर अमुक अमुक ने ऐसा ऐसा कहा है, समझे, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही दबा डाला, जो भी बाहर आया था उसे दबा डाला, बुद्धि के लिए आत्मा को रोक दिया, समझे। मार्टिन लूथर के दिनों में पवित्र आत्मा उतरा था, जॉन वेस्ली के दिनों में पवित्र आत्मा उतरा, आरंभिक पेंटिकॉस्टल कलीसिया में पवित्र आत्मा उतरा, परंतु नामधारियों ने क्या किया, अपनी बुद्धि से इसे दबा दिया। किसको दबा दिया? बीज को। बीज क्या है? वचन। इसका ये मतलब नहीं, इसका मतलब ये वो आदि आदि, समझे। उन्हें ये मिला, और बहुत से ईमानदार हृदय के लोग, वे सेवक गण, मैं उन लोगों से मिला हूँ, बैठकर उनसे बातें की हैं, यहाँ तक कि बपतिस्मे के विषय पर भी, और बहुत सी चीजें, मैं किसी में भी, किसी से भी कहता हूँ कि आकर इस पर बात करें। उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम, यदि हम ये करेंगे तो हमारी कलीसिया उन्हें बाहर निकाल देगी। मैंने कहा, कौन आपके लिए कौन अधिक है, परमेश्वर का वचन या आपकी कलीसिया? आप नामधारी की धूल मिट्टी में कभी भी नहीं आगे बढ़ेंगे, समझे, ठीक है। यदि वो वचन का इनकार करता है तो ये गलत है, समझे, ये दिखाता है ये मनुष्य द्वारा निर्मित बुद्धि है। अब प्रोटेस्टेंटों ने इसे दबाकर रोक दिया, इसने उनके अंदर आत्मा को वही दबा दिया, जब उन्होंने वचन में बुद्धि को विश्वास से अधिक चाहा। संस्था की बुद्धि, संस्थागत बुद्धि, बजाय वचन पर विश्वास करना, वे जो इसे समझते हैं आमीन कहें, समझे। विश्वास किस में? मनुष्यों के झुंड में, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, एवेंजेलिकल और सब एक साथ मिल गए हैं, और जैसे ही वे कलीसियाओं का संघ बनाते हैं जो कि पशु की छाप होगी, और इस राष्ट्र में उसकी वही सामर्थ होगी, प्रकाशित वाक्य 13:11 जो उनके पास वहाँ थी, और ये संतों पर अत्याचार का कारण होगा, जैसा कि उन्होंने आरंभ में किया, वो रोमन कलीसिया, देखा, यही जिस और अब वे बढ़ रहे हैं। अब यही कारण है कि वचन सब और बोया जा रहा है, इससे अलग रहें, उससे बाहर आ जाएं, समझे। अब बुद्धि ने उसे दबा दिया, उनकी अपनी बुद्धि पवित्र आत्मा को उनसे उसे दबाकर अलग कर रही है। मैं बाइबल से इसे आपको सिद्ध कर दूंगा, प्रकाशित वाक्य 3:3, जिसे हम इसे कलीसिया कालों में से होते हुए लोग लेंगे। यीशु को उसकी अपनी कलीसिया से दबा दिया और वो बाहर था और द्वार पर खटखटाने का यत्न कर रहा था कि वापस आ जाए, ठीक यही कहा गया है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई भी जो प्यासा होगा जो मुझे अंदर आने देगा मैं अंदर आऊंगा, परंतु किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, देखा उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। ये क्या था? उनके पास बीज उनमें गिरा, देखा, परंतु कुछ पीड़ाओं की घाटी में गिरे, कुछ बीज पीड़ा की घाटी में चले गए। अब इस घाटी में जहां आप जल को पाते हैं, सबसे अच्छा तेल, अब जब आप किसी को लेकर उसे तब तक पीटते हैं जब तक आप उसके अंदर से उसका सारा धर्म विज्ञान बाहर नहीं निकाल देते, उस पर हंसते हैं और उसका उपहास उड़ाते हैं, जहां कि वो पीसा जाता है और उसमें से तोड़कर बाहर निकाला जाता है, जब तक धातु प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, आप उसमें थोड़ी सी नमी पाएंगे, ये ठीक बात है। उस घाटी में उस व्यक्ति का उस घाटी में पड़ाव डाला गया, अपनी संस्था से बाहर निकाला गया, वो कबाड़ में पड़ा है जैसा वे कहते हैं, समझे, ना कि उदास, परंतु घाटी में हमें सिखाया गया, वहाँ नीचे घाटी में आप जानते हैं जहाँ कमुदनी भी बढ़ती है, आप जानते हैं, ओ ये ठीक बात है, देखिए घाटी में।
Alright, some fell in the valley of persecution.
ठीक है, कुछ पीड़ाओं की घाटी में गिरे कठिन परीक्षाएं, उनमें से कुछ बीज वहां गिरे पीड़ाओं की घाटी में कठिन परीक्षाएं, और बहुत कुछ कहा गया, जैसे कि कमुदनी को कहा गया, बालजबूब उपहास उड़ाया, परंतु इस घाटी में जल की नदियां हैं। भजन संहिता एक ने कहा, धन्य है वो पुरुष, मैं जरा सा पढ़ दूं, मैं दिखाऊं कि इस घाटी में क्या है, भजन संहिता क्या, मैंने सोचा मेरे पास समय नहीं होगा, परंतु हम थोड़ा समय लेंगे, इसे पढ़ें, देखिए इसे यहां से लें, हम इसे पढ़ने जा रहे हैं कि ये पुरुष क्या है, जहाँ पर उसे लगाया गया, वहाँ मिट्टी रेगिस्तानी चट्टान पर जहाँ बिल्कुल भी मिट्टी नहीं, या वो एक घाटी में लगाया गया। ठीक है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, वो बुद्धि, आमीन 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 आमीन, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता है, और वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। नदियों, ये क्या है? नौ आत्मिक वरदान, नदियाँ, एक जल, एक आत्मा, एक जल, परंतु अलग अलग नौ स्रोतों से आ रहा है, नदियाँ एक ही जल की, समझे, नदियाँ एक जल की, और अपनी ऋतु में फलता है, आत्मा के फल अपनी ही ऋतु में, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। देखिए, कुछ वहाँ घाटी में गिरे जहाँ ये नदियाँ हैं और लाए, क्या आपने ध्यान दिया, मैं कुछ और लेना चाहता हूँ, इसने क्या किया, वो नदी में गिरा, ये जमा नहीं था, वो एक वृक्ष के समान होगा जो कि इससे उसमें स्थानांतरित किया गया, वो लगाया गया, क्या पहले से ठहराया गया, परमेश्वर का वो विचार संसार के रचने से पहले उसे वहाँ रखा गया, समझे, ना कि वहाँ संयोग रखा गया, परंतु लगाया गया था, पहले से ठहराया हुआ, क्या जल की नदियों पर, ओ जिसकी जड़ें मुरझाती नहीं, ओ हालेलुया, यद्यपि वो मर जाए मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा, ये ठीक बात है, वो वहाँ होने के लिए पहले से ठहराया गया, ना कि संयोग से, वो उस वचन को जो वहाँ बोया गया पकड़ने के लिए ठहराया गया, मतलब वे ठीक वहाँ होंगे जब ये पकड़ता है, वो वहाँ है, उसने उसे बोया, ना कि वहाँ रखा, वास्तव में वो वहाँ पर बोया गया, ये ठीक बात है, बहुत अंतर है, एक छड़ी को जमीन में लगाना बजाय कि किसी चीज को बोना, ये भिन्न है, बीज बोया गया, ये अपनी जड़ के लिए स्वयं स्थान बना लेता है, जब जल भीतर आने लगता है और इसका जीवन फूट निकलता है, आत्मा ये कहने लगता है, आप कहते हैं नौ आत्मिक वरदान हैं, उसने कहा आमीन, यीशु कल और सदा तक एक सा है, आमीन, वो अब भी वैसे ही चंगा करता है जैसे उसने सदा किया, आमीन आमीन आमीन, समझे, वो नदियों के किनारे लगाया गया और हर तरफ से नदियां आ रही थी, जल की नदियां, कोई आश्चर्य नहीं कि वो सूख नहीं सकता, कोई आश्चर्य नहीं, वो लगाया गया, उनमें से कुछ बीज वहाँ गिरे, वो मर नहीं सकता। ये ठीक जीवन की धारा में है, ये फलता रहता है, ये ठीक बात है। वो अपना जीवन उन नदियों से पाता है, नदियाँ, नया नियम, पुराना नियम, आमीन, बस निरंतर उससे होते हुए पाला पोसा जाता है। ओ भाई, क्या आप उससे प्रेम करने जा रहे हैं? आमीन। क्या आप उसकी स्तुति करने जा रहे हैं? आमीन। क्या आप उसकी आराधना करने जा रहे हैं? आमीन, आमीन, आमीन। जी हाँ श्रीमान, ओ मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते? जी हाँ, वो अपने उत्पन्न करता है, अपने फल अपनी ऋतु में उत्पन्न करता है। उत्पत्ति 1:11, अपने फल उत्पन्न करता है। कौन से फल? किस चीज के फल? उसके फल। कैसे फल? उसके अपने फल। ये फल क्या है? बाइबल, समझे? इसके सारे यहाँ है। फल, प्रेम यहाँ बाइबल में है, आनंद यहाँ बाइबल में है, सामर्थ, पवित्र आत्मा, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। दिव्य चंगाई, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, ये फल हैं, ये यहाँ पर हैं। यदि ये यहाँ पर लगाया गया है, विश्वास में सही प्रकार की भूमि। विश्वास क्या करता है? विश्वास इसे बढ़ाना आरंभ करता है। आमीन। उसे ऊपर की ओर बढ़ाना आरंभ करता है, समझे? यही है, इसे ऊपर उठाता है। निश्चय ही वो उस वृक्ष के समान है जो नदियों के किनारे लगाया गया, ऋतु में अपना फल लाता है। अब ये किस प्रकार के फल ये उत्पन्न करेगा? यूहन्ना 14:11 उसने कहा, यीशु ने कहा, वो मैं विश्वास करता हूँ, ये 14:12 है, और यीशु ने कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है तो जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। क्यों? वही वचन उसमें है, वो वचन था। क्या ये ठीक बात है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो चाहो जो मांगो। मैं अधिक समय नहीं हुआ भाई इवान से बात कर रहा था, वो यहाँ आए थे, वो बहुत दूर से गाड़ी चला कर आए, उसकी कार खो गई, वहाँ मिलर पर बैठे हुए थे, उसमें चाबी छोड़ दी, कोई आया और चुरा कर ले गया, उसके जो भी था उसी में रखा था। वो आया, वो स्वयं और भाई फ्रेड और भाई टॉम और उनमें से कुछ घर पे आए, बोले वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बालक से उसकी टॉफी ले ली हो। आप जानते हैं, वो हालत का मारा हुआ। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा, भाई अब ये क्या है? अब वे आ रहे हैं, पहली बात क्या है? वचन पर, पिता से मांगो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो चाहे जो मांगो। क्या? वचन के साथ बने रहो, बस वचन के संग बने रहो। मैंने कहा, आइए प्रार्थना करें। हम फर्श पर झुक गए और प्रार्थना करनी आरंभ कर दी, और जबकि हम प्रार्थना कर रहे थे, मैंने कहा, पिता मैं आपके पास प्रभु यीशु के नाम में आता हूँ। यहाँ एक भाई है जिसने खर्च किया और सप्ताह के कुछ दिन काम किया, उसके हाथ खाली हो गए, पुरानी कार और इस प्रकार की चीजें, और इतने पैसे कमाए कि 1400-1500 मील हर रविवार कार चलाए ताकि सभाओं में आए, थोड़े से अपने बच्चों का पालन करे जो कि उसे लगभग $50 या $75 प्रति सप्ताह लगते हैं, ताकि ये यात्रा कर सके, ताकि कलीसिया में आ सके, समझे? ठीक है। वो यहाँ आया और वचन को सुनने का यत्न किया, जैसे कि इसके यत्न के लिए उत्साहित कर रहे हैं, और मैंने कहा, अब कुछ दुष्ट लोगों ने उसकी कार चुरा ली, ये क्या था? मैंने कहा, अब प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसकी कार वापस करवा दें यीशु मसीह के नाम में। मैंने क्या किया? मैंने वचन को रखा परमेश्वर के समीप, उस प्रतिज्ञा को, और यीशु नाम से मोहर कर दी और वचन को भेज दिया। वो सीधा सड़क पर चला गया, सीधा वहाँ जाकर उस स्थान को पाया जहाँ से ये आरंभ होता है, जैसे कि शिकारी कुत्ता खरगोश की पगडंडी पर, समझे? सड़क पर हुआते हुए वहाँ पहुँचा, बॉलिंग ग्रीन कैनलकी के आधे रास्ते पर। क्या खुलासा हुआ? वचन ने उसे ढूंढ लिया। तभी दर्शन वापस आया, मैंने एक मनुष्य को देखा, पीली सी कमीज पहने हुए गाड़ी चला रहा है, एक युवा जो कभी मसीही था। वचन ने उस पर प्रहार किया कि तुम गलत कर रहे हो। वचन ने उसे पकड़ा, उसने अपना वचन भेजा ताकि, देखिए देखिए, उसे पकड़ लिया। किसी दिन तू इसके अंदर पकड़ा जाने वाला है और कानून तुझे ये करने के लिए पकड़ लेगा। घूमा और वापस हो लिया, वचन ने उसे पकड़ लिया। एक समय वो मसीही था, मैंने उसे इसे वापस लाते देखा और सड़क के किनारे उसे खड़ा कर दिया। मैंने कहा, अब भाइयों आप यहाँ उसे इस निश्चित स्थान में अपनी कार को पाएंगे, थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा करें जब तक कि वो वापस आता है। अब आपका पेट्रोल की टंकी पूरी भरी थी? हाँ, उसने कहा। मैंने कहा, कोई चीज परेशान नहीं करेगी, परंतु आधी टंकी तेल है, क्योंकि वो आधे तक ही गया है। वो बॉलिंग ग्रीन के लगभग आधे रास्ते में था, लगभग 100 मील का समाप्त हो गया जब उसने ये पाया कि ये इस प्रकार से तय हो रहा है। ठीक यही है, ये क्या था? वचन गया और उसे ले लिया, वापस आया और उसके बाद अधिक समय नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति ने उससे कार खरीद ली। वो भाग गया और उसका भुगतान नहीं किया। देखा, बोला भाई ब्रणम, मैंने सोचा बेचारा व्यक्ति, उसने $400 बाकी थे। मैंने कहा मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने वचन भेजा, वचन गया और उसके मार्ग पे जाके उसे ढूंढ लिया। जब उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए गए, वो कभी भी मसीह नहीं था। उसने किया, वो हंसा। उन्होंने उससे कहा एक बार कलीसिया में जाओ। उसने कहा कि जब प्रचारक प्रचार कर रहा है, मैं उन सुंदरियों को देख रहा हूँगा। इसलिए आप देखिए, आप नहीं ढूंढ सकते। जी हाँ, ये शैतान है, देखिए। इसलिए वचन उस पर पकड़ नहीं कर सकता, परंतु वचन ने क्या किया, उसे अपनी दृष्टि में रखा। समझे? बस नहीं भाई वेल्च, इसी पर टिके रहे, ये ठीक हो जाएगा। वचन उसके पीछे गया, समझे? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो तुम चाहो मांगो। देखा, वचन उसके पीछे है। पहली बात आप जानते हैं, उसका एक लड़का यहाँ सड़क पर गाड़ी चला रहा था और वो वहाँ था। उसने उस व्यक्ति को कार में देखा, उसका नंबर लिया और वापस घूमा और भाई वुड के पास गया। उन्होंने उसे फोन किया और ढूंढ लिया कि वो कहाँ था। वो बॉलिंग ग्रीन में था, स्वर्ग में। परमेश्वर जानता है, मैंने इस विषय में एक भी शब्द नहीं सुना, इस विषय में कुछ नहीं जानता। पिछले रविवार, ये एक सप्ताह पहले दोपहर बाद, जब हम यहाँ प्रचार कर चुके, वहाँ गए और मैंने अपने कपड़े बदले और फ्लोरिडा जाने को तैयार हुआ, वहाँ के लिए या नीचे भाई वेल्च अगली रात्रि की सभा के लिए। जब मैं कार में बैठा, मैंने उस व्यक्ति को देखा। मैंने कहा भाई वेल्च, मैं अब उसे नहीं बता सका, उसे अब ये स्वयं करना होगा। देखिए, जैसे मेडा को अपना निर्णय स्वयं लेना है, वहाँ देखिए। मैंने कहा हम बॉलिंग ग्रीन होते हुए जा रहे हैं। उसने कहा वो हमारे रास्ते से 3 मील हट करके है, उस मार्ग पे गया। मैंने सोचा ओह, वो उसे पा लेगा, उसे इसे पाना ही है। आगे बढ़ता गया बहन इवान और मैं, और थोड़ी देर बाद उसने कहा भाई ब्रणम, आप जानते हैं, उसने कहा मैं इतनी मोटी बुद्धि का हूँ। बोला आपने थोड़ी देर पहले बॉलिंग ग्रीन कहा? हाँ। उसने कहा आप जानते हैं वो व्यक्ति को जो मेरे साथ मेरे पैसे लेकर भाग गया? हाँ। बोला कि वो बॉलिंग ग्रीन में है। मैं इस विषय में सोच रहा था, बस मैं, मेरे पास एक बात है, मैं इसे बदलने जा रहा हूँ और ढूंढूंगा कि वो कहाँ है, तब मैं वापस आऊंगा। मैंने कहा तुम क्या करोगे? क्या तुम वहाँ जाओगे और अपने पैसे लोगे? अब देखिए, यदि मैं उसे बताता हूँ तो, देखिए, उसे स्वयं ही कुछ करना है। मैं उसे नहीं बता सका, यदि मैंने किया तो ये दर्शन को वहीं पर तोड़ देगा, समझे? इसलिए इसे होने देना था, समझे? जैसे कि यीशु क्यों वहाँ खड़ा हुआ और मरियम और मार्था से कहता है तुम पत्थर को हटाओ, क्यों? वो परमेश्वर था, वो कह सकता था कि पत्थर हट जाए और ये वहाँ नहीं होता, परंतु उसे ही कुछ करना था। वो क्यों वहाँ खड़ा हुआ और पके हुए खेतों को देखा? आप विश्वास करते हैं वो कटाई का स्वामी है? उसने अपने चेलों से कहा तुम प्रार्थना करो कि खेत का स्वामी कि वो खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। दूसरे शब्दों में, तुम मुझसे वो मांगो जो मैं करने जा रहा हूँ, समझे? हम मित्र हैं, हम ये कलीसिया है, हमारे पास अपने कुछ करने को है, आपके पास कुछ करने को है, यहाँ सुसमाचार है, मैं ये जानता हूँ, परंतु यदि मैं बस बैठा रहूँ और इसका प्रचार ना करूँ तो फिर ये क्या भला करने जा रहा है, समझे? आपके पास करने को कुछ है, आपको यत्न करना है। आप कहते हैं आपके पास है, ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर चंगा कर सकता है, परंतु मुझे नहीं पता। खड़े हों और वो वचन आपका वचन हो जाए, इसका विश्वास करें, इस पर तर्क न करें, बस इसका विश्वास करें। मैंने कहा अच्छा, मुझे मालूम है यदि वो नहीं गया तो वो इसे खोने जा रहा है। मैंने कहा यदि ये मैं था तो मैं जाकर अपने पैसे अभी ले लेता, और उसने किया। जब उसने उसे पलंग से उतरता हुआ पाया, उसके पास कुछ पैसे थे, उसने पड़ोसी को बुला लिया और बाकी उससे लेकर इसका भुगतान कर दिया। ये क्या है? ये वचन है। देखिए, यदि वो अपना स्थान पा सके, अब ये इसे घुमा सकता है। यही चीज दिव्य चंगाई पर है। अब क्या होता यदि भाई वेल्च ने कहा होता, ठीक है, नहीं सोचता मैं वहाँ जाऊँगा, थोड़ा सोचता मैं किसी और दिन जाऊँगा। क्या हो यदि वो पुरुष कहता मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ जहाँ वो कार नहीं है, समझे? तो ये घटित नहीं होता, परंतु आपको विश्वास करना ही है, आपको विश्वास करना ही है, और यही तब ये विश्वास के वातावरण में आ जाता है और इसे उत्पन्न करना ही है, इसे होना ही है। ओ, यही है। क्या आपने कभी इस विषय में सोचा, जब कोई मरुओं में से जी उठता है क्या हुआ? क्या आपने कभी सोचा वहाँ फिनलैंड में उस समय वो छोटा लड़का मृत्यु से जी उठा, उसका आत्मा उसमें से चला गया था। अब वचन को वहाँ दूर अनंत स्थान में जाना था और उस छोटे प्राण को लेना था और उसे वापस लाना था। ये इसे कैसे कर सकता है? ये वचन है, बीमार को चंगा, मुर्दे को जिलाना, समझे? वो इसे कैसे करने जा रहा है? इसे तो सींचे हुए वचन के द्वारा आना है। उसने दर्शन दिखा दिया था और इसे होना ही है। वहाँ एक लड़का पड़ा है, वहाँ हर चीज वैसी ही पड़ी है जिस प्रकार से उसने कहा था 2 वर्ष पहले, और वो वहाँ पड़ा है। यही कारण है कि मैं पहाड़ से उतरते हुए भालू के विषय में बता देता हूँ, ये जो भी था इसे होना ही है, इसको ऐसा ही होना है, समझे? ये क्या करेगा? वचन। मैंने कहा, स्वर्गीय पिता, अपने देश में आपने मुझे ये 2 वर्ष पहले कहा था कि ये छोटा लड़का मरकर जी उठेगा, इसलिए आपके वचन के आधार पर आपकी प्रतिज्ञा, पहले जो वचन ने कहा वे जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे, आपने अपने चेलों को आगे आगे भेजा, आपने उन्हें बताया कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, प्रेतों को निकालो, और तब दर्शन के द्वारा अपने मेरे देश में दिखाया कि ये छोटा लड़का फिर से जीवन में वापस आने वाला है, इसलिए मृत्यु तो इसे और अधिक पकड़े नहीं रह सकती। मेरे पास प्रभु का वचन है, मैं नहीं, मैं वचन नहीं हूँ, वो वचन है, समझे? यदि मैं वचन था, केवल एक ही व्यक्ति वचन हो सकता है, वो यीशु था, वो परमेश्वर का बोला हुआ वचन था, कुमारी से जन्म के द्वारा। मैं तो मिलावटी हूँ, देखिए, मैं तो अपने पिता और माता के मिलन का परिणाम हूँ, इसको तो मरना है, ये मैं हूँ, देखिए, वो शरीर जिसे मरना है। यीशु के साथ ऐसा नहीं था, वो वचन था, वो कुंवारी से जन्मा था, भाई, स्त्री पुरुष या कुछ भी, उसका उससे कुछ लेना देना नहीं था। वो स्त्री उष्मा यंत्री इंक्यूबेटर थी, ये ठीक बात है, और उसने उसको दूध पिलाया और आदि आदि, ये इस विषय में सही हो सकता है, परंतु मैं आपको बता दूं कि वो परमेश्वर था, यही जो वो था, इस विषय में यौन संबंधी कुछ नहीं था, उसे यौन क्रिया से स्वतंत्र होना था कि जीवन को लेकर आए, उस लहू से होकर आए, जैसा कि हम इसे कुछ मिनटों में देखेंगे। अब देखिए, वो वचन था, परंतु प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता वचन नहीं था, परंतु प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ताओं के पास आया, ना कि वे वचन नहीं थे, वचन उनके पास आया, और इस प्रकार से आज हमारे साथ है। जब वचन उस छोटे लड़के के लिए आया, ये क्या था? एक दर्शन। भालू के लिए क्या था? ये और दूसरी चीजों के लिए क्या था? सब दर्शन। ये प्रभु का वचन था जो आया, तब फिर ये क्या करता है? ये वहाँ टिका रहता है। अब इसे पहले बोला जाना चाहिए, मृत्यु उसे वापस दे देती है। यीशु मसीह के नाम में मैं वचन भेजता हूँ, पकड़ता है, जैसे कि उसने बॉलिंग ग्रीन जाते हुए लड़के को पकड़ा, उस चोरी की कार, गई कार के साथ, यहाँ ये जाता है और फिर पकड़ता है। ये क्या करता है? ये उसे पकड़ता है, उस छोटी आत्मा को, और उसे यहाँ वापस ले आता है और देह में वर्तमान कर देता है, ठीक जैसा वचन ने कहा ये करेगा, यही है। ये क्या करता है? विश्वास, न कि ज्ञान। आप कहते हैं चलो हम देखते हैं, हवा ऐसे ऐसे बनी है, इसमें इतना तेजाब है, इसमें इतनी गैस है, इसमें इतनी अंतरिक्ष की ज्योति है, मैं इसे जान सकता हूँ, और हो सकता है यदि मैं, ओ आप समय को नष्ट कर रहे हैं। बुद्धि नहीं, विश्वास, न कि बुद्धि आपको बताएगा कि ये हो सकता है, विश्वास सिद्ध करता है ये हो गया, देखिए ये ठीक बात है, दर्शाता है कि वो कल आज और सर्वदा एक सा है। ठीक है, आइए अब जल्दी जल्दी करें, हमें जल्दी करना है। अपने ही प्रकार का फल उत्पन्न करता है। यूहन्ना 14 कहता है कि वो जो मेरा विश्वास करता, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, कार्य चिन्ह जो मैं करता हूँ। अब आप कहते हैं क्या ये चिन्ह वो करता है? वो उस घर में गया जहाँ छोटी लड़की, एक सेवक की इकलौती लड़की मरी पड़ी थी, ठंडी पीली पड़ी हुई थी, संभवतः वो कुछ घंटों से मरी हुई थी। उन्होंने उसे छोटे से पलंग पर लिटा रखा था और उस पर मसाला लगाने की तैयारी में थे। यीशु सीधा कमरे में गया जहाँ वो थी, वे विलाप और रो रहे थे। उसने उन सबको बाहर कर दिया, यहाँ से निकल जाओ, बाहर जाओ, कहा पतरस, याकूब और यूहन्ना, यहाँ आओ, मैं जानता हूँ कि तुम विश्वास करते हो। पिता ने कहा, तूने विश्वास किया या तू मेरे पीछे नहीं आएगा? और माँ ने कहा, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। देखा, कहा यहाँ खड़े हो जाओ। उसने देखा वहाँ बाहर वो छोटी लड़की खड़ी है, तभी था ये कुमारी, हालेलुया। उसे प्रार्थना नहीं करनी थी, वो वचन था। मुझे प्रार्थना नहीं करनी है यदि मैं दर्शन देख सकता हूँ, क्योंकि वचन तैयार हो चुका है। मुझे वचन पाने के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर क्या कहता है उसे पाना है, तब मैं इसे बोल सकता हूँ जो उसने कहा उसे पाने के बाद, परंतु वो वचन था। आमीन। लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उसे हाथ पकड़ कर उठाया, यही है, देखा, ओ प्रभु, यही प्रगटीकरण अपने ही प्रकार का उत्पन्न करता है। यीशु ने कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे। इसलिए ये देखिए, नामधारियों की ये सारी बातें और चीजें, उनके पास ऐसी चीजें जो कि मिली जुली है, गंदगी की, पाप, जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ में सृष्टि, ये ठीक बात है। ओ, ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर का वचन कैसे कटे हुए बालों में बढ़ सकता है, छोटे कपड़ों में, सिगरेट पीने में, गेंद खेलने में, हॉल में, कलीसिया के सदस्यों में, ये कैसे कर सकता है जबकि सुख विलास चाहने वालों की भीड़ जैसे ये बाहर रहते हैं और ऐसी चीजों से प्रेम करते हैं और संसार से प्रेम करने वाले, परमेश्वर का प्रेम कैसे भीतर आ सकता है? परमेश्वर का बीज इस प्रकार की भूमि में कैसे बढ़ सकता है? ये कभी जड़ नहीं पकड़ेगा, ये इसमें कभी भी जीवन नहीं लाएगा, ये नामधारी के धूल कंकड़ों में पड़ा रहेगा और सड़ जाएगा, परंतु ये जीवन में कभी भी नहीं आएगा। जी हां श्रीमान, जी हां श्रीमान। सुख विलास के खोजी, परमेश्वर के प्रेम से अधिक सुख के खोजने वाले भयानक, फिर भी वे बुद्धिमान हैं, वे दूसरे वर्गों से अधिक बुद्धिमान, जैसे कि दूसरे वर्ग हैं, निश्चय ही बुद्धिमान, शिक्षित, बुद्धि के चाहने वाले जैसे हवा थी, और उन्हें भी वही खुराक मिलती है जो उसे मिली, ठीक वैसे ही ये सत्य है। एक कुमुदनी कैसे जी सकती है? एक कुमुदनी का बीज जीता और बढ़ता है जबकि ये जल पर बढ़ता है, उन धूल मिट्टी के नामधारी में बढ़ेगा? ये इसे कैसे कर सकता है जबकि ये जल पर बढ़ता है? जल आत्मा है, वे भक्ति का भेष धरते हैं परंतु आत्मा की सामर्थ्य का इनकार करते हैं, समझे? यद्यपि वचन उन पर गिरा, ये नहीं बढ़ सकता, ये नहीं बढ़ सकता, जैसे कि वचन हवा पर था, परंतु ये बढ़ नहीं सका। क्यों? उसने बुद्धि को स्वीकार, शैतान की बुद्धि, उनके पास वचन आया, वचन उनके ऊपर गिरा, निश्चय ही ये करता है। जी हां श्रीमान, बढ़ता और ये उन पर गिरेगा, वे प्रचारे गए वचन को सुन सकते हैं। क्या आपने लोगों को कलीसिया में बैठे हुए देखा? वे कभी भी हलचल नहीं करेंगे। बाल कटी स्त्री को प्रचार करें, वर्ष दर वर्ष प्रचार करें, उसके बाल अब भी कटे हैं। व्यक्ति से सिगरेट पीने के विषय में बात करें, स्त्रियों से पीने के विषय में, वे वैसे ही पीते रहते हैं जैसे कि बत्तख की पीठ पर पानी डालना। यहाँ पर बढ़ने का कोई स्थान नहीं है, समझे? ये पुराने विलासिता के चाहने वाले, लोकप्रियता के, अब पहले बाकी स्त्रियों को करने दो, तब मैं करूँगी, मुझे चिंता नहीं वो क्या करते हैं। परमेश्वर के वचन का पालन करना आपका कर्तव्य है, ये ठीक बात है, समझे? यद्यपि वचन उन पर वहाँ डाला गया, ये बढ़ नहीं सका, शैतान की बुद्धि, इसलिए नामधारी की धूल मट्टी बन गया। वे इब्रानी 13:8 का विश्वास नहीं कर सकते, सारी बुद्धि से फूले हुए हैं, उसमें बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, समझे? वे इब्रानियों 13:8 का कैसे विश्वास कर सकते हैं? यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है, इसे नहीं कर सके, समझे? ओ, वे कहते हैं वे इसका विश्वास करते हैं, आप उन्हें ये बताएं, वे कहते हैं निश्चय ही हम इसका विश्वास करते हैं, तो फिर मुझे इसके फल दिखाएं, मुझे ये देखने दो, मुझे देखने दो, ये हो गया, मुझे वो कलीसिया देखने दो जिसमें आप प्रचार कर रहे हैं, वही करें जो पहले प्रेरितों की कलीसिया में हुआ, उन्होंने वचन का विश्वास किया, आपने अपने बपतिस्मों को घुमा दिया, आपने अपने प्रमाणों को घुमा दिया, अपने मतसारों के अनुकूल बना लिया, बजाय कि वचन को लेते, वचन को अपना फल उत्पन्न करने दो। आप किसी प्रकार की चीज बनाते हो, आपको ये करना है कि आपको एक प्रमाण पर लाना है, और शैतान आपके हर प्रमाण का अनुवाद दे सकता है जो आप सामने रखना चाहते हैं, निश्चय ही वो निश्चय ही कर सकता है, परंतु वचन को उत्पन्न नहीं कर सकता, यही एक चीज जो उसे जलाती है, वो ये नहीं कर सकता। जी हां श्रीमान, ओ हाँ। अब केन और हाबिल को देखें, वे दोनों ईमानदार थे, केन ने अपनी बुद्धि से लिया अपनी माँ की कलीसिया के पीछे, वो उसकी माँ थी, कितने इस बात को जानते हैं कि हवा केन की माँ थी, ठीक है, अपनी माँ के समान उसने तर्क को लिया, देखिए बुद्धि उसकी अपनी बुद्धि, एक सुंदर बलिदान, उसके पास फूल थे, उसके पास मैदान के फल थे, कहा है ठीक है, अब निश्चय ही उसने कहा परमेश्वर, ये ऐसा ही था जैसे शैतान ने हवा से कहा, निश्चय ही, निश्चय, निश्चय ही परमेश्वर मेरा बलिदान स्वीकार करेगा, मैंने सुंदर वेदी बनाई है, मेरे पास बहुत सुंदर है, ये बहुत सजी हुई है, जैसा कि ये ईस्टर होगा, सारे राष्ट्र में लाखों डॉलर खर्च किए जाएंगे कि किसी वेदी पर ईस्टर के फूल रखे जाएं। वेदी फूलों के लिए नहीं होती, ये बलिदान के लिए होती है, समझे? ये केन की पुरानी आत्मा को दर्शाता है, देखिए वही पुराना अदन, वही पुराना शैतान, समझे? क्या क्या घटित हुआ? केन ने सोचा निश्चय ही, आप जानते हैं वो ईमानदार था, क्योंकि उसके लिए ये जीवन मरण का प्रश्न था, और वे लोग नहीं सोचते कि वे ढोंगी हैं, वे ईमानदार हैं। आप कहते हैं कि वे ईमानदार हो सकते हैं और गलत हों, निश्चय ही एक व्यक्ति आर्सेनिक ले सकता है ईमानदारी से, ये सोचते हुए कि वो अरंडी का तेल ले रहा है या कुछ और, समझे? ईमानदार ये नहीं चलेगा, ये सत्य है, ईमानदारी नहीं, सच्चाई। अफ्रीका में वे स्त्रियां अपने बालकों को अपने देवताओं पर बलिदान करती हैं, मगरमच्छों पर, क्या आप उतने ईमानदार हैं? नहीं, कितने उनमें से खड़े होते हैं? चीनी अपने रसोई देवता के लिए अपनी हड्डियां तोड़ते हैं, और मुसलमानों के विषय में क्या है? वहाँ आग पर चलते हैं और चीजों पर अपने मुंह में कड़गे कांटे डालते हैं और अपने मुंह को सिल देते हैं और उनमें से कुछ लकड़ी। मेरे पास एक छोटी सी कलाकृति कि कैसे अपने देवता को बलिदान चढ़ाते हैं, ये सोचते हुए कि ये स्वर्ग हो जाएगा। एक पुजारी अपने मुंह में लकड़ी रखता है, अपने सिर के चारों ओर घुमाता है, एक चेन के द्वारा नीचे आते हुए अपने हाथ पीछे रखता है, अपने पैरों में चेन लगाता, और वो ना पी सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ खा सकता है, नहीं कर सकता जब तक वो मरता है। और देखिए, कोई मसीही ऐसा बलिदान करता है? आप यहाँ तक कि सत्य का विश्वास भी नहीं करते वचन का, समझे? अब सुंदरता, उसने कहा निश्चय ही परमेश्वर ग्रहण करेगा। देखो मेरी वेदी कितनी सुंदर है, आज उसी बुद्धि की आत्मा को देखिए। अच्छा, यदि हम ये महान नामधारी बनाते हैं, निश्चय ही परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा, वो सिवाय अपने वचन के कुछ ग्रहण नहीं करेगा, नहीं, समझे? ठीक है, वे कहते हैं अब देखिए भाई ब्रैनम, यदि हम हर वर्ष कुछ सेवकों को बाहर निकालें, पिछले वर्ष हमारी मिशनरी योजना में इतने हजार डॉलर लग गए, ये हो सकता है कभी इतना अच्छा हुआ हो भाई, परंतु आप वचन को जब तक स्वीकार नहीं करते और उस पर नहीं आते, आप मरे हुए हैं। ये ठीक यही बात है। क्यों भाई ब्रैनम, हमारी कलीसिया, आप क्या सोचते हैं कि आप क्या हैं? बस एक छोटा मूंगफली जैसा भेजा वहाँ है, ये सत्य है। अब ये बिल्कुल ठीक बात है, ये सत्य है, परंतु मैं जो भी हूँ, मुझे वचन के साथ बने रहने दो, ये किसी दिन किसी चीज में बढ़ेगा, समझे? बस वचन के साथ बने रहें, कोई मतलब नहीं कि ये क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा आराधना ले, ये उतना ही है जितना हमें चाहिए इस समय के लिए, ठीक है, बैठने के लिए एक स्थान, क्योंकि हम यीशु के आने की राह देख रहे हैं। हमें कोई महान नामधारी नहीं चाहिए कि हर वर्ष लाखों भवन आदि पर खर्च करें और इस प्रकार की चीजें, और लोग वचन प्रचार करने का यत्न कर रहे हैं और दुख उठा रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं और इस प्रकार की बातें, लोगों के साथ क्या मामला है? क्या ऐसा नहीं है? ओ, ऐसा दिख पड़ता है कि लोग जाग सकते हैं, परंतु कोई कैथोलिकवाद को स्वीकार कर सकता है? था इतना अंधा हो सकता था कि कुछ भी स्वीकार कर ले? मैं आपको सत्य बताऊंगा, कोई भी इसे अपने गले उतरने देगा सकता है, बुद्धिमान लोग, कोई आश्चर्य नहीं। बाइबल ने कहा यहाँ तक पृथ्वी के राजाओं ने उसके संग व्यभिचार किया, और बुद्धिमान लोग, ज्ञान देखिए, उन्होंने इसे बनाया, उन पादरियों को तेज बुद्धिमान पुरुष। ओ पुरुष, तुम शिक्षित विषय में बात करते हो, लड़के, उन्हें वर्ष के बाद वर्ष के बाद वर्ष, वर्ष के बाद वर्ष लगाने होते हैं। वे कहते हैं उन नंस के साथ नहीं रहते, तो फिर मैं क्या आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं वो जीवाणुहीन हो जाते हैं? ओ वे वहाँ दुल्हन है, नंस दुल्हन है, और ये दूल्हा है, निसंदेह आप देखिए, ये ठीक बात है। बड़ी माँ बालकों को मिट्टी में मिला देती है और उन्हें चूने के गड्ढे में डाल देती है, आप इसका विश्वास नहीं करते? एक वास्तविक को सुनिए जो वहाँ था, इसकी गवाही देता है। कहते हैं अब आओ मुझे गिरफ्तार करो, और कहा हम वही करेंगे जो उन्होंने रूस में किया, यही चीज मेक्सिको में की, हम इन बातों को खोल कर रख देंगे जब ये सरकार के पास पहुंचेगी। परंतु आप इसे कैसे करने जा रहे हैं जब इसका मुख्य वहाँ ठीक सरकार में है, समझे? देखा, ये वचन है जिसे पूरा होना ही है। उन्होंने एक धारणा को संगठित किया है उस पशु के लिए जो वहाँ बैठा है, और वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं और इस पशु को बोलने की सामर्थ्य देते हैं। ओ भाई, ये वचन वहाँ खड़ा होने जा रहा है, न कि साम्यवाद इसका अधिकार, इसका अधिकरण करने जा रहा है, परंतु रोमनवाद है ये। अब इस केन को देखें, बोला निश्चय ही वो मेरा बलिदान स्वीकार करेगा, परंतु किस प्रकार का? उसने कहा मैंने बलिदान चढ़ाया, परंतु ये किस प्रकार का बलिदान था? वनस्पति जीवन, पौधे, फूल, सब्जियां, वनस्पति जीवन, क्या इसमें कोई भी पीड़ा नहीं थी, कोई दंड? लोग दुख नहीं उठाना चाहते, आज यही मामला है। वे आते, वे अब सीधे आते और इस वचन का विश्वास करते हैं। यदि उन्हें उनकी कलीसिया से निकाला नहीं गया, यदि उनकी हंसी नहीं उड़ाई गई, उनका उपहास नहीं, वे वनस्पति का जीवन चाहते हैं। किस प्रकार की एक बुद्धि भाई, ये जीवन भी वैसा ही अच्छा है जैसा वो, ये नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ से आता है, एक मिनट, प्रभु ने चाहा तो। परंतु हाबिल ने विश्वास के द्वारा, महिमा हो, केन ने बुद्धि के द्वारा, का निश्चय ही परमेश्वर इसे स्वीकार करेगा। यहाँ वेदी है, मेरे पास एक आराधनालय है, यही जो कलीसिया है, एक वेदी, आराधना का स्थान, ठीक है, मेरे पास एक वेदी है, मैं उतनी ईमानदारी से आराधना करूंगा जितनी से मेरा भाई, मेरे पास यहाँ कुछ सुंदर है, इसके लिए निश्चय ही परमेश्वर इसे स्वीकार करेगा। यही बात शैतान ने उसकी माँ को बताई, थोड़ा सा झूठ, बुद्धि। अब हाबिल, इब्रानी 11 में कहा विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है, समझे?
हाबिल किसके द्वारा? बुद्धि, धर्म ज्ञान के द्वारा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाया। विश्वास के द्वारा किस में? विश्वास के द्वारा किस में? विश्वास उसने अपना विश्वास कहाँ से पाया? वह बस उसके पिता और माता थे, माँ थी, और वो उसका सौतेला भाई। संसार में ये कैसे हो सकता है? वो इसे कहाँ से पा सकता था? उसने किस में विश्वास किया? विश्वास वनस्पति में, विश्वास इसमें नहीं श्रीमान, उसका विश्वास वचन में था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो क्यों उस वाटिका से बाहर हुआ, हम क्यों बाहर निकाले गए। माँ को कहने चाहिए था, क्योंकि मैंने शैतान के एक झूठ को सुना, इसी कारण से ये लड़का जन्मा था इस प्रकार से, इसलिए परमेश्वर ने हमें बाहर कर दिया। अच्छा, उसने कहा मैं द्वार के आसपास भी नहीं जा सकता, वहाँ सराफीम तलवार के साथ उस जीवन के वृक्ष की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए विश्वास के द्वारा, देखिए, बुद्धि के द्वारा केन ने बलिदान चढ़ाया, आप जानते हैं, वचन को ना जानते हुए, परंतु बस एक विचार बुद्धि के द्वारा उसने सुंदर स्थान बनाया, उसे सजाया और सुंदर, परंतु हाबिल उसे किसी ने नहीं बताया। अब बस एक लड़का विश्वास के द्वारा उसने देखा, ये वनस्पति का जीवन नहीं था, ये लैंगिक मामला था, लहू से होते हुए। भाई आप वहीं पर हैं, एक बार उसके ऊपर से होकर निकला विश्वास से, उसके बालक अब भी उसी के द्वारा देखते हैं। उसने कभी भी उनको बुद्धि के द्वारा नहीं सिखाया, ये बुद्धि से नहीं आता, ये विश्वास से आता है। बाइबल ने कहा हाबिल ने विश्वास से, उसने क्या बलिदान किया? लहू, जीवते जीवन के द्वारा पशु का जीवन। हम स्वयं एक पशु हैं, हम गर्म लहू के पशु हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, उच्च श्रेणी के, सबसे ऊंचे दर्जे के पशु, परंतु वहाँ प्राण है, यही जो जीवन है। अब ध्यान दें, विश्वास के द्वारा हाबिल ने प्रकाशन से देखा, दर्शन, और जीवित दौड़ता हुआ लहू लेकर आया, क्योंकि जीवन लहू में था। फूल के डंठल में जीवन है, और इसका वनस्पति का जीवन, इसमें कोई संवेदना नहीं है। मैं आशा में था कि ये अंदर ले लिया जाएगा। हाबिल विश्वास से वचन के साथ बना रहा, विश्वास के द्वारा, न कि बुद्धि के द्वारा, विश्वास के द्वारा उसने देखा कि ये काम भावना थी। लहू, लहू कोशिका नर के द्वारा आती है, मनुष्य में लहू कोशिका जीवाणु में होती है, हीमोग्लोबिन लहू है जो नर के द्वारा आता है। और आदम को मालूम था कि ये सेब आड़ू नहीं है, और आलू या जो भी था, यही उन्हें अदन वाटिका से बाहर लेकर आया, यही पाप का कारण हुआ, ये कामुकता लहू, और उसने वापस लहू चढ़ाया। उसने ये विश्वास के द्वारा किया, न कि बुद्धि के द्वारा। कैसे एक मनुष्य इसे बुद्धि के द्वारा समझने जा रहा है, जबकि सारी बाइबल और परमेश्वर की सारी कलीसिया विश्वास के द्वारा दिव्य प्रकाशन पर बनी है। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, समझे? ओह, वे कहते हैं निश्चय ही हम इसका विश्वास करते हैं, तो फिर इन प्रकारों में मसीह का जीवन कहाँ है? मसीह का जीवन कहाँ है? दूसरा, आप इन पवित्र लेखों को लिखना चाह रहे हैं, देखा, जीवन कहाँ है? यदि वे कहते हैं भाई हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, यदि आप करते हैं, तो फिर यीशु ने कहा ये चिन्ह होंगे, न कि हो सकता है, वे जो विश्वास करते हैं उनके द्वारा ये होंगे। यीशु ने कहा यदि एक मनुष्य जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वो भी इन्हें करेगा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा, वो आसपास तमाशे नहीं करेगा, वो इन्हें करेगा। ये कैसे घटित हो सकता है? क्योंकि वही जीवन जो मसीह में है तुम में है, ये कोई बुद्धि प्रकट करना नहीं, ये उसमें नहीं बढ़ेगा, इसे तो बुद्धि का इनकार करना है, ताकि विश्वास को ले सके, वचन में विश्वास को, ना कि वचन में बुद्धि, वचन में विश्वास। शैतान के पास वचन में किसी से भी अधिक बुद्धि है, सारे प्रचारकों, सेवकों और सबको एक साथ जमा कर दो, उसके पास अधिक बुद्धि है, परंतु वो विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास इसे जीवित कर देगा, विश्वास उससे प्रायश्चित करवा देगा, और उसे उसके संस्थान से अलग कर देगा। हाँ, उसके पास बुद्धि है, इसलिए वो उसी के साथ टिका रहेगा, ठीक है। परंतु हाबिल ने विश्वास के द्वारा देखा कि ये कामुकता का व्यवहार था, और उसने लहू का बलिदान चढ़ाया, जीवन का लहू, और परमेश्वर ने इसे स्वीकार किया। अब दूसरे तीमोथियस 2:3 में कहा है, अब वचन उनके पास आया, ये खराब भूमि पर गिरा, सारा का सारा, समझे, वे भक्ति का भेष धरते हैं परंतु शक्ति का इनकार करते हैं, आत्मा की सामर्थ का। दूसरा तीमोथियस 3, यदि आप लिख रहे हैं, ठीक है, भक्ति का भेष धरते हैं, पवित्र आत्मा अनंत जीवन का चिन्ह है, वे इसका इनकार करते हैं। लोगों को अन्य भाषा नहीं बोलना है, नहीं, देवे चंगाई जैसी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जैसी कोई चीज नहीं है, ये सब प्रेरितों के लिए था, रूप धरते हैं। पौलुस ने कहा, इसकी भविष्यवाणी करो, अंत के दिनों में, अंत के समय में ये चीजें घटित होंगी, ना कि उन दिनों में, और आत्मा स्पष्ट रूप में बोलता है, अंत के दिनों में, बाद वाले दिनों में कुछ विश्वास से हट जाएंगे और ये सारी चीजें, यही है धर्मी का रूप भरना। अब पवित्र आत्मा के चिन्ह जो अनंत जीवन के इस पुरोहितवाद की धूल में कैसे बढ़ हो सकते हैं, जहां आत्मा का जल है ही नहीं, समझे, वे नामधारी के उपहास, बुद्धि और कूद फांद में नहीं बढ़ सकते। कैसे जीवित परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार एक स्त्री जिसमें साधारण आचरण जैसा व्यवहार नहीं है कैसे बढ़ सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे ये पुरुष में जो प्रचार मंच पर खड़ा है और जरा सा खाने के कूपन या किसी नामधारी के पक्ष को पाने के लिए परमेश्वर की सच्चाई को छोड़ दे, कैसे बढ़ सकता है? आत्मिक चिन्ह उसमें कैसे हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते। कैसे ये उस प्रचारक में बढ़ सकता है जो अपने नामधारी को नीचा करे, उनकी पोल खोले उधर किनारे पर, और यहाँ अगली रात्रि किसी निश्चित स्थान में जहाँ मैं पिछली रात्रि निकला, किसी बिशप पैरिश में, और वहाँ खड़ा शोर करने वाला नृत्य चल रहा हो, तो आत्मा के फल ऐसे स्थान में कैसे बढ़ सकते हैं? ये पुरोहितवाद की चट्टान पर है, ये ठीक बात है, और ना दुख की घाटी में जिन पर हंसा जाए या उनका उपहास उड़ाया जाए। ये कमुद्री कठिन परिश्रम करती है। आपको मेरा उपदेश अधिक समय नहीं हुआ स्मरण है, कुछ वर्षों पहले श्रीमान कुमुदनी, जहां यीशु ने कहा वो परिश्रम करता है, वो कैसे संघर्ष, ना तो वो काटता है, और फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि सुलेमान अपने सारे वैभव में इसके समान नहीं पहना। कैसे वो कुमुदनी अपने सुंदर होने को जोर लगाती है, किस लिए? बस वो देने वाली हो, निकलने वाले उस सुगंध को लेते हैं, मधुमक्खी सीधी उसके हृदय पर जाती है, उस शहद को लेती है, ठीक उसके अंदर से, वो बस इसे मुफ्त में देती है, इसे करने के लिए संघर्ष करती है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वास्तविक जन है, पास्टर कुमुदनी, श्रीमान कुमुदनी यानी लिली, जी हाँ श्रीमान, वचन पर परिश्रम, अपने मुंह के बल होकर परमेश्वर को पुकारती है, परमेश्वर मैं नहीं देख सकता हूँ ये यहाँ कहाँ मेल खा रहा है, इसे तो वचन के अनुसार ही आना है जहाँ आप इसे देखते हैं, और परमेश्वर इसे आपको देता है, तब स्वतंत्र होकर जाओ, कोई बड़ा अभियान करने के लिए नहीं। यदि आप इतने हजार डॉलर की गारंटी लें, मैं आऊंगा, परंतु मुफ्त में, यदि ये टिम्बकटू या जहां कहीं से भी हो, परमेश्वर जहां आप मुझसे बीज डलवाना चाहते हैं, मैं इसे मुफ्त में दूंगा। हालेलुया, यीशु ने कहा सुलेमान ने अपने सारे वैभव में ऐसा नहीं पहना, कहा कमुदनी का विचार करो, बेचारा छोटा मामूली सा हर प्रकार से सहता है ताकि वो जो पा सके, और उस पर हंसा और उपहास उड़ाया जाए, और उन बड़े पुरोहितवादों ने उसे बाहर निकाल दिया और उसे सारे भेद नामों से पुकारा, परंतु वो वचन और संघर्ष के साथ और रात्रि में घाटी में रहता है। क्या वो एक ऐसे स्थान में जहाँ से वो नदियों का जल पी सकता है? परिश्रम कर रहा है, किस लिए? देने के लिए। तुमने मुफ्त पाया, तुम मुफ्त में दो। जी हाँ श्रीमान, ओ प्रभु, वो कैसे खेत की धूल में बढ़ सकता है उस पुरोहितवाद की चट्टान पर? केन के बालक बुद्धिमान थे, वैज्ञानिक, केन के बालकों पर ध्यान दें। अब जैसे ही वे आते हैं, एक मिनट के लिए उन पर ध्यान दें। केन के बालक, वे क्या थे? इमारतें बनाने वाले, खोजी विज्ञान के महान पुरुष। उनके पास बुद्धि थी, समझे, यहाँ तक कि उन्होंने भवन बनाए और लोहा बनाया, मिलाकर कठोर कर दिया। वे वैज्ञानिक थे, तेज, शिक्षित और धर्मी, परंतु बुद्धि के फसल ने क्या उत्पन्न किया? मृत्यु समस्त जाति के लिए, जब परमेश्वर का न्याय आया। क्या ये ठीक बात है? क्या किया झुंड ने? क्या झुंड क्या करता है? मृत्यु उत्पन्न की। यद्यपि उनकी बुद्धिमानी और समझदारी, क्या हुआ? वे मर गए। उनमें से प्रत्येक परमेश्वर के न्याय में नाश हो गया। क्या यह सत्य है? परमेश्वर ने ऐसा कहा। वे बुद्धिमान, उच्च शिक्षित, शानदार, धर्मी, बहुत अच्छे, बुद्धिमान, शिक्षित, अपनी बुद्धि में आत्मनिर्भर रहने वाले, और लोगों की सारी जाति को मार डाला। यही चीज वे ठीक अब कर रहे हैं। उनके परमाणु बम और चीजें कि ये बुद्धिमान वैज्ञानिक और चीजें सारी जाति को नष्ट कर देंगे और अब इसमें गिर गए हैं। ये अपनी आंखों को जला लेंगे, आपको कैंसर आदि देते हैं। इन्होंने इसमें काफी ढील दे दी है समुद्र में कि वे इसे और नहीं पा सकते। जब ये छोड़ा जाता है तो ये सारे संसार को नष्ट कर देगा। वे कहते हैं लोग अपने ही शरीर में जल जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं, बाइबल ने कहा कि हवा के पक्षी उनका मांस खा जाएंगे, सेनापतियों का मांस और आदि आदि, गलकर उनमें गिर जाएगा और आदि आदि। वे इसे स्वयं ही कर रहे हैं। उनकी तेज बुद्धि मृत्यु का आने का यही कारण है, तेज बुद्धि। सादे रहें, परमेश्वर के वचन का विश्वास करें और जिए। अपनी बुद्धि को लेकर मर जाएं, ठीक है। अंत समय की कटाई में नष्ट हो गए। अच्छा, हाबिल के बच्चे नम्र थे, किसान, चरवाहे, सेवकगण, पास्टर। आप जानते हैं, चरवाहे, किसान, नम्र, बुद्धिमान होने का दावा नहीं करते, परंतु केवल वचन के साथ टिके रहते हैं। अंत समय में उन्होंने क्या उत्पन्न किया? एक भविष्यद्वक्ता। इससे क्या हुआ? एक भविष्यद्वक्ता। किस लिए? अंत समय के चिन्ह। जब नूह उस दरवाजे पर खड़ा हुआ जो नाव में बना हुआ था, उसने कहा वर्षा आ रही है। वो एक धर्मांत कहलाया गया था, परंतु वो एक भविष्यद्वक्ता था। आमीन। उसने क्या किया? विश्वास करने वालों के लिए उद्धार लाया और वे जो बचना चाहते थे। यही जो नम्र अशिक्षित जाति उत्पन्न हुई, जो विश्वास करने में भरोसा करते थे, दूसरे ज्ञान में विश्वास करते थे, वे मृत्यु को लेकर आए सारी जाति के लिए। क्या किया नम्र लोगों ने विश्वास के साथ? क्या किया? उद्धार को उत्पन्न किया। प्रभु का एक भविष्यद्वक्ता जिसने उन्हें एक चिन्ह दिया कि अंत समय आ गया। क्या आप सोचते हैं शिक्षित लोग इसका विश्वास करेंगे? नाक चढ़ाकर वे चले गए कहते हुए, वर्षा कहाँ से आ रही है? वैज्ञानिक रीति पर सिद्ध करें, मुझे वहाँ ऊपर जल कहाँ है? वे वैज्ञानिक बुद्धिमानों का झुंड यत्न कर रहे हैं, वैज्ञानिक रीति पर सिद्ध कर रहे हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। यत्न, जब वो चित्र लिया गया, इससे उनके नीचे की कुर्सी जिस पर वो बैठे थे नीचे से खिसक गई। वो समझ नहीं सका, कहा कि किस प्रकार का उजियाला था जो कैमरे के लेंस से टकराया। वहाँ उनके अपने वैज्ञानिक यंत्र थे जिससे चित्र उतारा गया, कैमरा। जैसा कि जॉर्ज लेसी ने कहा, उसने कहा श्रीमान, बोला कैमरा मनोविज्ञान को नहीं उतारता, उजियाला लेंस से टकराया है, ये वहाँ पर था। कहा ये क्या है? मैं नहीं बता सकता, परंतु ये वहाँ है। कहा मैं इसके लिए अपना नाम लिखूंगा, उसने लिखा, और ये आपके अपने पास है। जी हाँ श्रीमान, ये FBI के पास थी, समझे। हमारा परमेश्वर इस अंत के दिनों में एक भी बात बिना खोले नहीं छोड़ेगा, परंतु जो वो इस संसार को दिखा रहा है, संसार उसके सामने टिक नहीं सकता। बुद्धि और ज्ञान बढ़ रहा है, मक्खी के समान हवा में उड़ रहा है, और जेट, हवाई जहाज, पानी के अंदर युद्ध और सब प्रकार का भ्रष्टाचार और पाप में जी रहे हैं। कुछ ऐसा बनाने का यत्न कर रहे हैं जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। वहाँ केवल एक ही चीज है, परमेश्वर की धार्मिकता नाव के द्वार पर खड़ी है। द्वार कौन है? मसीह ने कहा, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। मैं अपना विषय पढ़ता हूँ, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनेगी, अनजान के पीछे वो नहीं जाएगी। आप उनमें से किसी एक को भी संस्थाओं में नहीं घुमा पाएंगे, वो इसमें से बाहर आ जाएंगे, जैसा कि ये संसार निश्चित है। मैं उन्हें झुंड में से निकाल लूंगा और मैं उनकी अगुवाई करूंगा, मैं उनके आगे आगे चलूंगा। आमीन। वे जानेंगे कि ये मैं हूँ, कोई भी मेरे समान नहीं चल सकता, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो मैं करता हूँ वो करेगा। आमीन। रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि कोई मनुष्य इन आश्चर्य कर्मों को कर सकता है जो नहीं कर सकता जो तू करता है, जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो, समझे। ये ठीक बात है, निकोदिमस का स्वीकार करना यही है। उस नम्र छोटी जाति ने एक भविष्यद्वक्ता उत्पन्न किया, और वो भविष्यद्वक्ता अंत के दिनों में हाबिल के बालक एक भविष्यद्वक्ता उत्पन्न किया जिसमें अंत के दिनों में वे चिन्ह को दर्शाया और चेतावनी दी। वैसे ही लगभग अब है, मैं सोचता हूँ वो जिसके पास सुनने के कान है वो सुन ले। आत्मा हमसे क्या करता है, क्या कहता है? इसलिए देखिए, जीवन का वचन का बीज इस प्रकार के बुद्धि वाले वातावरण में नहीं बढ़ सकता, बस ये इसे नहीं कर सकता। मूसा और यहोशू का वचन में विश्वास था, दूसरे चाहते थे कि नृत्य करें और स्त्रियों के कपड़े उतारें। कोरा क्यों? अपनी मिस्र की बुद्धि के द्वारा मूसा ने ये नहीं चाहा। आज उन कोरा वालों को देखें, सरल मार्ग बना रहे हैं, सारी रात नृत्य करना, दावत, स्त्रियां कटे बाल के साथ, छोटे कपड़े, कुछ भी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। वचन कहता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक बात है, वही बात, समझे। यद्यपि उनमें से प्रत्येक का बपतिस्मा हुआ था, हरेक का, कोहरा आदि सबका बपतिस्मा हुआ, ये दर्शाता है कि ये फिर से एक पुरोहितवाद का प्रकार है। आप कहते हैं कि उनका बपतिस्मा हुआ था, पहला कुरिन्थियों 10 एक से दो। आइए जरा इसे हम पढ़ें। मैं जानता हूं कि हमें देर हो रही है, परंतु भोजन सफाई नहीं करेगा। ये भोजन अधिक समय तक चल सकता है यदि प्रभु हमें खिलाता रहे, समझे। पहला कुरिन्थियों 10, अब इधर देखिए, पहला कुरिन्थियों 10 एक से दो, मुझे मिल गया, नहीं मेरा दूसरा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 10 एक से दो।
I would not
हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। कोरा ने भी वही बपतिस्मा लिया जो बाकियों ने लिया, परंतु वो क्या करना चाहता था, स्त्रियों को नाचने दो और वे थोड़ी सी शराब पीती हैं और एक थोड़ा सा समय उनके कपड़े उतारो और वे भी चार। और ये था, आप जानते हैं कि बाइबल ने कहा उन्होंने ये किया, उन्होंने उन स्त्रियों को लेकर उनके कपड़े उतारे और उनसे नृत्य करवाया और इस प्रकार की बातें, और मूसा उन पर क्रोधित हुआ। आपको वो समय याद है, क्यों उनके साथ डॉक्टर कोरा था, वो बुद्धिमान। उसने कहा मैं तुम्हें वापस मिस्र को ले जाऊंगा जहाँ की वे भी गए थे, परंतु भाई मूसा जब वो नीचे उतर करके आया तो ये भिन्न था। वो और यहोशू वचन के साथ बने रहे, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है वे उसी के साथ टिके रहे। दूसरे भी नाचना और अपने कपड़े उतारना चाहते थे, ये सब कोरा की बुद्धि से था और वे सब बपतिस्मा लिए हुए थे, इज़राइल और मोआब। ओ मैं जरा आप, मैंने इसे एक बार ले लिया है, मैं से नहीं लूंगा, मुझे जल्दी करना, ठीक है। इज़राइल और मोआब आप जानते हैं ये वहाँ कैसे था, एक जितना अच्छा, एक बुद्धि के साथ महान बड़ा नामधारी, दूसरा वाला छोटा अंतर नामधारी। तब एक दिन, मैं जहाँ पर बंद करने के पहले आना चाहता हूँ, एक दिन ये दोनों स्रोत या सामर्थ्य परमेश्वर के वचन पर शक्ति परीक्षण के लिए आ गए। अब हम चरम पर आ रहे हैं, हम वापस जा सकते थे, मैं दर्जनों ले सकता था, मैं यहाँ सत्ता पर खड़ा रह सकता हूँ और इसकी सतह को भी नहीं छू सकता। कैसे मैं इसे यहाँ प्रमाणित कर सकता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे आशा है कि आप समझ गए हैं, समझे। एक दिन ये शक्ति परीक्षण पर आ गया, बुद्धि और विश्वास शक्ति परीक्षण पर आ गए, यीशु और शैतान मिले। ये ठीक बात है, यीशु और शैतान मिले, ये दो महान शक्तियाँ बुद्धि और ज्ञान एक शक्ति परीक्षण पर आ गई, समझे। अब उन दोनों ने वचन का प्रयोग किया, ये ठीक बात है। ओ भाई, ये मेरे लिए अच्छा है, समझे, इस पर ना चूके। अब ओ कहें, परमेश्वर ने मेरे हृदय को खोल। दोनों ही परमेश्वर का वचन ही प्रयोग करते हैं, वही बाइबल, परंतु ये बिना मन परिवर्तन प्रणाली से कार्य नहीं करेगा, निश्चय ही ये नहीं करेगा। दोनों ही परमेश्वर के वचन का प्रयोग करते हैं, परंतु शैतान इसे सर के ज्ञान से करता है, देखिए, मस्तिष्क का ज्ञान, और ये कार्य नहीं करेगा। मेरे पास यहाँ लेख है, बुरा ना माने यदि मैं इसे पढ़ता हूँ। आइए इब्रानियों के चौथे अध्याय को निकालें, जल्दी से, एक मिनट, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक यहाँ इब्रानी 4, और आइए इब्रानी 4 और 1 से 2 आरंभ करें। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रहे, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि क्या सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा ज्ञान बुद्धि। आप सारा वचन ले सकते हैं, आप आरंभ से अंत तक जान सकते हैं, वचन कहाँ से है, ये आपके लिए कभी कार्य नहीं करेगा। क्या आपने देखा कि मनुष्य वचन को लेता है और उसे कार्यवंत करने का यत्न करता है, कहता है भाई परमेश्वर की महिमा हो, ये कार्य नहीं करेगा। आप वचन को बहका नहीं सकते, नहीं, कोई मतलब नहीं कि आप क्या दर्शाते हैं, वचन स्वयं को प्रमाणित करता है, कोई मतलब नहीं आप क्या दावा करते हैं, वचन गवाही देता है, ये ठीक बात है। अब शैतान वचन को जानता है, वो इसे ए से जेड तक अच्छी तरह जानता है। आप जानते हैं क्या, मैं कल्पना करता हूँ यदि मेरे पास डिग्री होती, मेरे पास पर्याप्त उपाधियाँ होती जो कि 4-5 पन्नों में लिखी जाती, डॉक्टर रेवरन एल्डर पीएच एलएल क्यूडी हर प्रकार के सारे अक्षर उस डिग्री की उसकी बाइबल में होगी। वो इसका हर शब्द जानता है, निश्चय ही वो जानता है, समझे। इसलिए शैतान ने कहा, अब मैं वचन जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो वचन को जानता है, परंतु ये काम नहीं करेगा। यीशु ने इसे विश्वास से जाना, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन और उसके अपने पहले से ठहराए हुए जीवन में महिमा हो। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके हृदय के अंदर उतर गया। यीशु को मालूम था कि वो कौन है। शैतान घूम रहा था, वो जानता था कि वो परमेश्वर का पहले से ठहरा हुआ सृष्टि था, कि परमेश्वर स्वयं उसमें प्रकट हुआ। ये वो नहीं जो कार्य कर रहा था, ये पिता जो उसमें वास कर रहा था। आमीन। शैतान को अपने सारे धर्म विज्ञान के साथ भाग जाने दो। यीशु, शैतान ये जानता था, वो वचन जानता था, अब वो वचन का उल्लेख कर सकता है। लड़के, जैसा कि चलती फिरती बाइबल, वो इसका उल्लेख इस प्रकार कर सकता था, समझे। परंतु यीशु शांत खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था वो कहाँ खड़ा है। वो जानता था कि वो पहले से ठहराया हुआ है, वो पृथ्वी के रचने से पहले वध किया मेमना था। वो जानता था कि वो व्यक्ति है। ओ भाई, वो जिसके पास कान है वो सुन ले। वो जानता था कि वो इसके लिए पहले से ठहराया हुआ है, और इस प्रकार से वो वचन को जानता था, समझे। और ये निश्चय ही कार्य करेगा। शैतान इसे बुद्धि से जानता था, वो असफल हो गया। उसने उसी का उल्लेख किया जिसका यीशु ने उल्लेख किया, वही बाइबल। उसने भजन संहिता से उल्लेख किया, वो देगा। ये लिखा है, शैतान ने कहा, वो अपने दूत को तेरे विषय में आज्ञा देगा, ताकि कभी भी तेरे पाँव को पत्थर से ठोकर ना लगे, वे तुझे उठा लेंगे, उसने कहा। और ये भी लिखा है, ओ समझे, शैतान इसे ज्ञान से जान गया। यीशु ये अनुभव से जानता था, वो ये प्रकाशन से जानता था, वो ये जानता था कि वो परमेश्वर का पुत्र था जिसे इस जगत में आना था। वो अपने स्थान को जान गया था, वो जानता था कि वो इस संसार में इस उद्देश्य के लिए जन्मा था, और यही कारण था कि परमेश्वर का वचन उसके द्वारा कार्य कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या था। महिमा हो। क्या अब आप पकड़ पाए, उसे मालूम था कि वो क्या था। इसके पीछे शैतान, वो जानता था कि वो क्या था, और वो जान गया। उसका कोई काम उसकी बुद्धि के साथ नहीं, वचन पर, क्योंकि वचन परमेश्वर था। आप समझे। अब यदि यीशु जानता था कि वो स्वयं कौन था, वो पहले से ठहराया हुआ समय की सृष्टि, या आप इसका विश्वास करते हैं, यीशु वो देह, वो जानता था कि वो पहले से ठहराया हुआ वचन था, परमेश्वर का जन, जिसे उस दिन में पापों के बलिदान के लिए खड़ा होना था। उसे अपने शत्रु का मालूम था, वो जानता था कि वो कौन था। इसलिए वे दोनों शक्तियां एक साथ आईं, ज्ञान और विश्वास। यीशु जानता था कि वो कौन था, शैतान जानता था। बाइबल उतनी ही अच्छी है जैसे यीशु ने किया, परंतु ये काम नहीं करेगा शैतान के लिए, समझे। कोई मतलब नहीं आपके पास कितना ज्ञान है, ये काम नहीं करेगा। अब इन बड़ी बड़ी संस्थाओं को लें, इस पर एक मिनट के लिए सोचिए। वे कहते हैं, भाई हमारे पास वचन है, तो मैं इसे कार्य करते देखूं। आप कैथोलिक, आप कहते हैं कि आप मूल हैं। आइए इसे देखें, अपने कार्य दिखाओ, बिना अपने या अपने कार्यों को दिखाओ के द्वारा, या बिना अपने विश्वास के, और मैं दिखाऊंगा अपने विश्वास के द्वारा। देखिए वचन ने क्या कहा, क्या आप एक बीज बिना उसकी प्रकटीकरण के बो सकते हैं कि वो क्या है। यदि वो बढ़ रहा है, क्या आप बिना बीज के बनाए बीज को बो सकते हैं। यदि ये बढ़ता है, क्या आप आलू को बो सकते हैं। और यदि ये आलू नहीं उगाता, क्या आप फूल लगा सकते हैं बिना उसके प्रकार के फूल के, समझे। तब यदि आपने बोया और परमेश्वर का बीज आपके हृदय में, तो इसे वही उगाना है। यीशु ने कहा, वो मेरे कार्यों को करेगा यदि वो मुझ पर विश्वास करता है। यदि वो कहता है वो इसका विश्वास करता है और ये उसका अनुकरण नहीं करता, तो वो झूठा है। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ, वो भी करेगा, इससे भी अधिक, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। क्यों? यह कठोर बात है। यदि वे इसे फिसलने वाली जगह पर आते हैं और फिसल जाते हैं, किसी चट्टान पर कहीं, वे बस किसी घाटी में गिर जाते हैं, ताकि हवा उन्हें उड़ा न सके और चिड़िया उन्हें नहीं ढूंढ सकती, ये उग जाएगा। इसे अपने हृदय के नीचे छिपा लें। दाऊद ने कहा, मैंने तेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में छिपा रखा है, इसलिए कोई भी नामधारी इसे नहीं ले सकता, चिड़िया इसे नहीं ले सकती। मैंने इसे यहाँ छिपा रखा है, मैं इन पर दिन और रात ध्यान करता हूँ, वे मेरे पलंग के सिरहाने और सब जगह लिखे हुए हैं। मैंने उन्हें ले लिया है, मैंने अपनी उंगलियों पर बांध लिया है, वे भीतर। यीशु ने कहा, तेरा नाम मेरी हाथ की हथेली पर लिखा हुआ है, तो मैं कैसे इसे भूलने वाला हूँ? नहीं हो सकता। तब यीशु ने शैतान को विश्वास के आधार पर हरा दिया, ये जानते हुए कि वो कौन था, वो पहले से ठहराया हुआ जीव। क्या आप तैयार हैं? अब यीशु मसीह की पहले से चुनी हुई दुल्हन के विषय में क्या है? आप विश्वास करते हैं कि दुल्हन पहले से चुनी हुई है? मसीह की पहले से चुनी हुई दुल्हन, अब वो कलीसिया, वचन, बीज, हर उस चीज के साथ जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो कलीसिया को देगा, जो इसमें इस समय है, ये अब उसमें है। हर चीज व्यवस्थित है, पवित्र आत्मा दिया गया है, बीज बोया जा चुका है, सांझ का उजियाला चमक रहा है, सादोम का चिन्ह जिसकी यीशु ने प्रतिज्ञा की है यहाँ पर है, मलाकी चार, एक ठहराई हुई कलीसिया। रे शैतान, यहाँ टेप पर जीते परमेश्वर की कलीसिया भी, क्या आप जानते हो कि आप कहाँ खड़े हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है, कि पवित्र आत्मा आपके हृदय में राज्य करता है और परमेश्वर का हर एक वचन आपके लिए वास्तविक है? ओ भाई, शैतान कैसे इसके विरोध में खड़ा हो सकता है? वो इसे बढ़ने से कैसे रोक सकता है? वो इन चिन्हों को होने से कैसे रोक सकता है? क्यों? आप उन्हें कैद में डाल सकते हैं, वे यदि आप कर सकते हैं, मैं चिंता नहीं करता कि आप क्या करते हैं। उन्होंने ये कोशिश कर ली, वे कैद में सड़ गए, वे सिंहों को खिला दिए गए, उन्हें दो भाग में चीरा गया, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आप इसे नहीं मार सकते, ठीक है, एक कलीसिया जो पहले से ठहराई हुई है, वे जिन्हें उसने पहले से जाना, जैसे उसने यीशु को जाना, उसने बुलाया, उसने न्यायोचित ठहराया, और उन्हें जिन्हें उसने न्यायोचित ठहराया वो पहले ही महिमामय कर चुका, पहले से चुन लिया। और अब इन अंत के दिनों में हर बीज बोया गया, हर चीज व्यवस्थित, संसार अपनी व्यवस्था में है, समय तैयार हो गया है, कलीसिया व्यवस्थित है, सांझ के उजियाले में ऐसे चिन्ह, उसने कहा जैसा सादोम के दिनों में था, परमेश्वर का दूत पवित्र आत्मा नीचे उतरा, आगे बढ़ा, चिन्हों को कर रहा है जो उसने तब किए, मलाकी चार में प्रतिज्ञा दी, वो अंत के दिनों में भेजेगा जिसके उसने प्रतिज्ञा की है। और हम सबको ठीक यहाँ पर देखते हैं, कहाँ? कहाँ? आमीन, 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 आमीन। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आमीन। ठीक यहाँ अंत के दिनों में एक पहले से ठहराई हुई कलीसिया, ये जानते हुए कि वे कहाँ खड़े हैं, बीज के साथ बोए गए पवित्र आत्मा कलीसिया में है, शैतान होशियार हो जा। क्या घटित हुआ? अब एक मिनट, उन सब बातों का क्या हुआ जिनकी प्रतिज्ञा दी गई है, मलाकी चार की भी प्रतिज्ञा? शैतान जब यीशु से मिलता है तो क्या करता है? वो उसके पास सारी पुरोहितवाद की शक्ति के साथ आता है, मैं भी वचन जानता हूँ, उसके पास तेजी से आता है, नामधारी की धूल मिट्टी उसके पास है, वो उसे उस पर फेंकता है, परंतु उसके पास कोई ज्योति नहीं है। क्या वो कभी भागा? जितनी जल्दी वो आता है उससे तेज वो भाग जाता है। क्यों? वहाँ वो करोड़ों अरबों वोल्ट के तार के साथ टकराता है, वो अपने पंखों से चिन्हित करता है, वो उसमें से बाहर आ जाता है, वो उसमें से बाहर निकल आता है, क्योंकि उस तार में बिजली का प्रवाह है। याद रखें, शैतान के पास भी तार है, परंतु कोई मतलब नहीं, तांबे का कितना भी अच्छा तार है, उसमें कोई जीवन नहीं है, वो मरा हुआ है, वो काम नहीं करेगा। वही तार, उसे तो जनरेटर से शक्ति प्राप्त करनी है, उसे दूसरे वाले का तो कनेक्शन ही नहीं है। ये ठीक बात है, यही कारण है कि वो पहले से ठहराए हुए बर्तन में कार्य करेगा, यही कारण है वचन वही कार्य करेगा जहाँ से वो जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा? नामधारी के साथ, नहीं श्रीमान, वो मरा हुआ जोड़ है, भक्ति का भेष रखता है, शक्ति का इनकार करता है, परंतु वचन से जुड़ा है जिसमें होकर कभी नहीं निकलेगा, और उसी शक्ति को उत्पन्न करेगा जो उसके पास है, यही जहाँ वो है। महिमा हो, आमीन, आमीन। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उसकी सेवा करेंगे? आमीन। निश्चय ही किसी संस्था से नहीं जुड़ना है, परंतु उस जनरेटर से जुड़ना है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये वहाँ कार्य करता है क्योंकि ये उसी वचन से जुड़ा है। मोआब भी उसमें जुड़ा था और इसराइल भी। मोआब के मत्सार के मरे झुंड को छोड़ और कुछ नहीं था और एक झूठा भविष्य दिखता, परंतु इसराइल के पास मारी हुई चट्टान, एक पीतल का सांप, एक अग्नि स्तंभ था। हालेलुया, परमेश्वर का चिन्ह। आमीन, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसने कार्य कर दिया, क्यों? ये विश्वास था। जी हाँ श्रीमान, ज्ञान पर नहीं, किसी मनुष्य का मत्सार, परंतु वचन पर विश्वास। स्वयं वचन पर, वचन में से जीवन आता है। मेरा वचन जीवन है, वो करंट वचन में से होते हुए आता है। जल्दी शैतान वहाँ से हट जा, उसके धर्म विज्ञान की धूल वहाँ अब बहुत अच्छी नहीं चलेगी। शैतान के तार में बिजली नहीं है, वो मरा हुआ मत्सार है, ये नहीं चलेगा, इसमें बिजली नहीं होगी। अब देखिए, ये वही तार है। यीशु ने पिता के वचन का प्रयोग किया, शैतान ने पिता के वचन का प्रयोग किया। शैतान शैतान था, यीशु परमेश्वर था, यही अंतर था, यही सत्य है। एक मत्सार है और दूसरा वचन है, एक सच्चा है और दूसरा वाला झूठा है। एक इसे उत्पन्न करेगा, दूसरा इसे उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या आप ये समझे? अब उसी प्रकार के तार, ये बिल्कुल ठीक बात है, वही तार। इब्रानियों 2 हमारे पास है, या इब्रानियों 4:2 हमें ये मिल गया, समझे? जैसे नामधारी नामधारियों के समान कहते हैं बुद्धि के द्वारा, देखा, नामधारी बुद्धि के द्वारा ये कहते हैं करंट या बिजली के दिन बीत गए। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आमीन। क्या आप उसकी सेवा करेंगे? आमीन। क्या आप उसका विश्वास करते हैं? आमीन आमीन आमीन। मैं उसका विश्वास करता हूँ। जी हाँ श्रीमान, आमीन का अर्थ ऐसा ही हो। प्रभु, इस प्रातः मेरी प्रार्थना है, यहाँ हर विश्वासी को ले लें और उसमें बिजली उत्पन्न कर दें। ओ, उसमें जीवन डाल दें, उसे बाधा डालने दो और परमेश्वर की महिमा को चमकने दो। जी हाँ श्रीमान, बिजली चला दो। आप जानते हैं मैं क्या विश्वास करता हूँ? बीज बोया जा चुका है। क्या आप ये विश्वास करते हैं उस महान कलीसिया के लिए, जैसे कि तार सारे भवन में पड़े हैं, हर जोड़ वचन से जांचा हुआ है। ओ प्रभु, हर निकास वचन से जांचा हुआ है। सोचिए, ये कोई विचित्र बात नहीं। जब तेज जलने वाली परीक्षाएं आती हैं, ये आपको परखने के लिए हैं। वहाँ एक छोटी चिंगारी, ये पृथ्वी से जुड़ा है, पूरे स्विच को उड़ा देगा। परमेश्वर उन्हें कलीसिया में नहीं चाहता कि कोई भी स्विच खराब हो या फूके जाने पर इन अंत के दिनों में। नहीं श्रीमान, वो आता है और उसे वहीं वेल्ड कर देता है। जी हाँ श्रीमान, ठीक है। हर ज्योति बल्ब अपने स्थान पर है, केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि स्वामी आकर स्विच को चालू कर दे। ये ठीक बात है। जी हाँ श्रीमान, वचन में निश्चय ही। भाई ये अभी हो सकता है, यदि आपको चंगाई की आवश्यकता है बस स्विच को छुएं, बस आपको यही करना है। यदि आप में वास्तविक तार है, यदि आपको भूमि, यदि आपकी लाइन अर्थ है और कनेक्शन भी है, मसीह में खो गए हैं, आपको बताता हूँ कि क्या करें। आमीन, ये ठीक बात है। अब नामधारी की बुद्धि कहती है, आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, उन तारों में बिजली नहीं है, परंतु विश्वास अधिक अच्छा जानता है। वे इसे अनुभव करते हैं, वे जानते हैं कि ये क्या करता है। विश्वास बिजली है, बिजली आत्मा, और बुद्धि नामधारी का रूप। शैतान ने यीशु को बहकाने की कोशिश की पिता के वचन पर विश्वास करने से। यहाँ जो उसने किया, उसने उसे पृथ्वी के महान बड़े पुरोहितवाद को दिखाने का यत्न किया, परंतु वो उसे बहका ना सका। यहाँ आकर मेरा सदस्य हो जा, मैं इन सब के ऊपर तुझे बिशप बना दूंगा। यीशु ने कहा, ये लिखा है। जी हाँ श्रीमान, वो यीशु को बहका ना सका। नहीं श्रीमान, वो उसमें से निकल गया। परंतु यीशु वचन था, उसका विश्वास अपने अंदर के ज्ञान में था कि वो वचन था। जैसे कि मूसा, क्यों? मूसा जानता था कि वो कौन था। मूसा जानता था कि वो परमेश्वर का दास था, जानता था कि वो परमेश्वर द्वारा बुलाया हुआ है। उसे मालूम था कि वो क्या करने जा रहा था। यही कारण है कि डरता नहीं था कि शैतान ने क्या कहा। शैतान ने बहकाने का यत्न किया, उसे डराने का यत्न किया, परंतु नहीं, मूसा जानता था कि वो कहाँ खड़ा है। ये ठीक बात है। अब मैं जल्द करूंगा, यहाँ मैं कई सारे पन्ने छोड़ रहा हूँ। पौलुस, बंद करते हुए मैं एक बात यहाँ लेना चाहता हूँ। पौलुस ने दुल्हन के भाग में इसे स्पष्ट किया है, जिसे वो प्रस्तुत करेगा। पौलुस दुल्हन का भाग प्रस्तुत करेगा। आप इसका विश्वास करते हैं? पौलुस ने इस बात को दुल्हन के भाग में स्पष्ट किया है कि वो अंतिम दिनों में यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत करेगा बुद्धि या विश्वास के विषय में। आइए इसे थोड़ा सा पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय निकालें। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय, हम जरा इसे पढ़ते हैं। प्रभु चाहेगा तो हम इसे कुछ मिनटों में समाप्त कर देंगे। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय, मैं 18 से 20वें पद तक पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, हम यहाँ हैं।
Now some are puffed up,
कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा। आप जानते हैं ये लोग, अब ये रोमन कलीसिया आना आरंभ कर रही है, ठीक वहाँ आना आरंभ कर रही है, समझे? वो जान गया क्या? आप जानते हैं कि बाइबल ने कहा है वे हम में से निकल गए क्योंकि वे हम में के नहीं थे। अब देखिए, ये ठीक बात है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। देखिए, शब्दों में नहीं, बस कहते हैं भाई मैं शिक्षित हूँ, भाई मेरे पास तुमसे अधिक शिक्षा है उससे जो तुम्हारे पास है, मैं एक याजक हूँ, मैं इसका इससे कोई मतलब नहीं, इसका इससे अधिक अर्थ नहीं है कि तुम एक सुअर हो या कुछ और। देखिए, इससे कुछ अधिक लेना देना नहीं, समझे? शैतान के पास भी बहुत ज्ञान है, समझे? ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है, समझे? तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? अब दूसरा अध्याय, बस एक मिनट, मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं। इसके पहले बंद करूं, दूसरा अध्याय एक पन्ना पलटें। आइए हम इसे पहले से आरंभ करें। अब देखिए, पौलुस वो अब दुल्हन को क्या बता रहा है, वो दुल्हन के इस भाग को मसीह के सामने लाने जा रहा है और वो चाहता है कि वे इसे जाने। अब स्मरण रखें, पौलुस के पास एक प्रकार से समझदारी थी, वो बुद्धिमान था, उसके पास थी, परंतु उसे ये भूलना था। उसने कहा उसके पास सब प्रकार की डिग्रियां शिक्षा थी, परंतु उसे ये भूलना था। अब देखिए, मसीह को समझने के लिए, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं, समझे? मैं बुद्धि के साथ नहीं आया, परमेश्वर की गवाही को प्रकट करते हुए। मैं डॉक्टर अमुक अमुक और मेरे पास ये सब हमें धर्म विद्यालय में सिखाया गया है कि ऐसा ऐसा, नहीं नहीं, पौलुस ने कहा मैं तुम्हारे पास इस प्रकार से नहीं आना चाहता, बुद्धि के साथ। अब और क्या, मेरा विषय क्या है? बुद्धि बनाम विश्वास। पौलुस ने कहा मैं तुम्हारे पास बुद्धि के साथ नहीं आया कि परमेश्वर की गवाही बुद्धि के साथ दूं कहूं। अब इधर देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमने धर्म विद्यालय में सीखा है कि आश्रय कर्मों के दिन बीत गए, हमने धर्म विद्यालय में सीखा है, वास्तव में इन बातों का अर्थ ये नहीं है। उसने कहा भाइयों, मैं तुम्हारे पास इस प्रकार नहीं आया। अब उसने क्या कहा? क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। ओ, जैसे भूत क्लिबर ने कहा हेलो, तो किसी ने खटखटाया। मैं तुम्हारे पास धर्म विद्यालय के ज्ञान के साथ नहीं आया परंतु आत्मा और सामर्थ के प्रमाण के साथ, ताकि तुम्हारा FAITH विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आमीन। आप इसका विश्वास करते हैं? ताकि तुम्हारा विश्वास किसी संस्था की बुद्धि पर निर्भर ना करे परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर। परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास, आपकी आशाएं नहीं। ये दोनों स्रोत अदन से संघर्ष में रहे हैं, परमेश्वर का विश्वास शैतान की बुद्धि के विरोध में। परमेश्वर ने सारे युगों में सिद्ध किया है कि यह आपस में मिलेगा नहीं, इसे बढ़ने के लिए अलग ही होना है। अब मुझे जल्दी जल्दी इस पर दौड़ने दें, बस एक या दो वचन हर पर थोड़ी सी बातें लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। एसाव और याकूब एक सिद्ध प्रतीक थे, दोनों ही धर्मी, दोनों ही जुड़वा। ऐसा पुरोहितवाद का प्रतीक, वो एक बुद्धिमान पुरुष था, वो सभ्य भला मनुष्य और इस प्रकार का, परंतु जन्म सिद्ध अधिकार का उसके लिए कोई महत्व नहीं। याकूब को चिंता नहीं कि उसे क्या करना पड़े, उसने बस जन्म सिद्ध अधिकार पा लिया, और जब तक वे एक साथ थे वे उत्पन्न नहीं कर सके। ये अधिकार एक दूसरे के विरोध में था। क्या आप इसे समझ सके? आमीन। उनके बीच से निकलो, अलग हो जाओ। परमेश्वर ने कहा उनकी शुद्ध अशुद्ध वस्तुओं को न छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। समझे? याकूब को स्वयं को अपने नामधारी भाइयों से अलग होना ही था, इसके पहले कि परमेश्वर उसे आशीषित करे। परमेश्वर ने यही बात अब्राहम को बताई, इज़राइल और मोआब। इज़राइल के 400 भविष्यद्वक्ता मीकायाह के सामने खड़े थे, और मीकायाह ने स्वयं को उनसे अलग कर रखा और परमेश्वर का वचन पाया और उसके साथ वापस आया। मूसा और कोरा, वही चीज, ये मिलेंगे नहीं, इन्हें अलग ही होना था। क्या ये सच बात है? अब्राहम और लूत, लूत धर्मी मनुष्य था, औपचारिकता का प्रतीक, परंतु जब तक लूत अब्राहम के साथ था उसने वर्षों उसके साथ यात्रा की, परंतु वो होगा, परमेश्वर उसे आशीष नहीं करेगा जब तक वो उसका पूरी रीति से आज्ञाकारी नहीं हुआ और स्वयं को लूत से अलग नहीं किया, वो नामधारी कलीसिया। परंतु जैसे ही अब्राहम ने अपने को अलग किया और बाहर आ गया कि अकेला चले, परमेश्वर ने कहा अब अब्राहम तू खड़ा हो जा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर देख, कहा ये सब तेरा है। परंतु ये उसने तब तक नहीं किया जब तक उसने स्वयं को पूरी रीति से अलग नहीं किया। ये बिल्कुल ठीक बात है। परमेश्वर शेत को तब तक आशीषित नहीं कर सका जब तक उसने अपने आप को केन से अलग नहीं कर लिया। उसने केन को चिन्हित किया और उसे नोद नाम देश को भेज दिया, और अपनी चतुर्बुद्धि के साथ वैज्ञानिक आदि बन गया और उसी की फसल बढ़ाई। और शेत धार्मिकता के अधीन और प्रेम और विश्वास परमेश्वर के वचन में उसने एक वंश बढ़ाया जिसने भविष्यद्वक्ता उत्पन्न किए, जिन्होंने अंतिम दिनों में चेतावनी दी। ये ठीक बात है, हर विश्वासी को बचा लिया, और बुद्धि ने उनमें से हर एक को नष्ट कर दिया। वे सब मारे गए, हर कोई, मतलब नहीं कि उनके पास कितनी डिग्री और मनोविज्ञान उनके पास था, हर चीज, वे परमेश्वर के न्याय में नष्ट हो गए। और हर चीज जो सच्चाई, परमेश्वर के आत्मा से जन्म लेना, वो जो हर वचन पर विश्वास करता है और उस पर स्थिर रहता है, उससे बाहर है, वो परमेश्वर के न्याय में नष्ट हो जाएगा। आप इन छोटे छोटे मटकने वालों को गलियों में जाते हुए देखते हैं, ये सब जो चल रहा है और इस प्रकार से चल रहा है, स्मरण रखें, ये संसार में कुछ भी नहीं है सिवाय न्याय में नष्ट होने वाला कबाड़। ये सड़ जाएगा, इसे होना है, इसे इसी के लिए ठहराया हुआ है। स्त्रियों जाग जाओ। मेरे पास एक छोटी सी गवाही है, परंतु मेरे पास समय नहीं कि बताऊं। अधिक समय नहीं हुआ कि एक छोटी महिला कैलिफोर्निया में, मैं सड़क पर जा रहा था तम्बू में बुलाए जाने की प्रतीक्षा में, वहाँ एक छोटी सी लड़की भाग रही थी, ये लज्जाजनक, कोई संदेह नहीं, एक छोटी सुंदर लड़की, वो वहाँ मटकती हुई जा रही थी, चरवाहों की टोपी पहने, जूते पहने और फुंदने लटक रहे थे और सड़क पर मटक रही थी। हर पुरुष उस पर सीटी बजा रहा था और ऐसे हाथ हिला रहे थे। मैंने सोचा मुझे रुक जाना चाहिए, यदि मैं प्रचारक नहीं होता, मैडा साथ में थी, मैं कहता बहन देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप सुंदर हो सकती हैं, आप ये प्रमाणित कर रही हैं, समझे, आप कारों के खिसड़ते हुए ब्रेक लगवा सकती हैं और यहाँ घूमती रहें और लड़के भेड़ियों के समान सीटी बजाते रहें और आदि आदि। परंतु इन्हीं दिनों में किसी दिन ये छोटा शरीर इसमें कीड़े रेंग रहे होंगे और इसे खा डालेंगे, और हो सकता है अब से 6 सप्ताहों में ये इस प्रकार होगा, सड़ा हुआ वहाँ कब्र में पड़ा हुआ होगा। परंतु वो प्राण जो आप में है, जो कामुकता से पेट भर रहा है, शैतान के नरक में रह रहा होगा उन आने वाले युगों में। मूसा और कोहरा, लूत, अब्राहम, यहोना बपतिस्मा देने वाला और महसूल लेने वाले, यीशु और उसके दिनों की नामधारी कलीसियाएं, समझे, विश्वास, बुद्धि। भाई वे याजक खड़े होकर कह सकते हैं, हमने उससे कहा हाँ हमारे पास ये था, ओ हमारे पूर्वज, हमने ऐसा ऐसा किया, कहा हाँ तुमने अपने रीति रिवाजों से परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रभाव रहित बना दिया, मनुष्य की शिक्षाओं के सिखाने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रभाव रहित बना दिया। कहा भाई तुम कौन हो जो हमें सिखाते हो, तुम कौन से विद्यालय से निकल करके आए हो? उसने कहा जो कार्य मैं करता हूँ वे मेरी गवाही देते हैं, यदि मैं मसीह के कार्य ना करूँ तो फिर मेरा विश्वास ना करो। यदि मैं मसीह के कार्यों को करता हूँ तब तुम जानते हो कि तुम कार्यों का विश्वास करते हो। कहा, वो मेरी गवाही देते हैं। यदि मैं उन कार्यों को ना करूँ तो फिर इसका विश्वास नहीं करना। उसके पास उसका नामधारी भी था, वहाँ उनके पक्ष में बुद्धि। यीशु के पास विश्वास था। विश्वास किस में? वो क्या था? परमेश्वर का पुत्र, समझे? संत मार्टिन रोमन कलीसिया के साथ सुधार के दिनों में, परंतु मेरा मतलब जब वे इसके पहले कि वो पागान रोम के दिनों में जाते, जब वो रोमन कलीसिया में आने लगी, मार्टिन वहाँ खड़ा हुआ और उस कैथोलिक के धर्म सिद्धांत पर विरोध प्रकट किया, चिन्ह आश्चर्यकर्म और चमत्कार किए, और उसकी कलीसियाएं सब ने अन्य अन्य भाषा बोली और भविष्यवाणी और महान चीजें की, और परमेश्वर की सामर्थ उनके साथ थी। उसने मृतकों को जिलाया और बीमारों को चंगा किया और सब बातें, और वहाँ कैथोलिक कलीसिया ने उसका इस प्रकार से विरोध किया और उसे जलाने का यत्न किया और आदि आदि। ये क्या था? बुद्धि, विश्वास। अब भी वैसा ही है। आइए इस सब के ऊपर हम सुने जकरिया 4:6, जहाँ मैं समाप्त करने जा रहा हूँ यहीं पर। बाइबल ने कहा, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा, प्रभु ने कहा। ना बुद्धि से, ना ज्ञान से, ना ही नामांकन से, परंतु मैं अपनी आत्मा से करूंगा। क्या? अपने वचन को ऊर्जा से भर दूंगा। चेलों के पास ये था, उनमें बोया गया था, तब आत्मा वचन को ऊर्जा से भरने आता है, समझे? ना तो बल से, ना शक्ति से, ना बुद्धि से, ना समझ से, ना इससे उससे, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा मैं अपने वचन को सामर्थी कर दूंगा। अपने आत्मा के द्वारा, प्रभु ने कहा, ये तो वचन के विश्वास का जल है जो परमेश्वर के वचन को सामर्थी कर देता है और कार्य को कर देता है। कौन सा जीतेगा? इस समय ऐसा प्रतीत होता है बुद्धि कार्य करेगी, परंतु ये नहीं करेगी, नहीं करेगी। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि ये छोटी कलीसिया जो परमेश्वर के पूरे वचन का विश्वास करती है, निश्चय ही अल्पसंख्यक है। परंतु आप चिंता ना करें, बाइबल ने कहा, छोटे झुंड ना डर, ये तेरे पिता की भली इच्छा है कि तुझे राज्य दे। वो ये ठीक बात है, समझे? और डरे ना, बस विश्वास में बने रहें, वचन के साथ बने रहें, वचन को ना छोड़ें, वचन के साथ साथ बने रहें। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आमीन। क्या आप उसकी सेवा करेंगे? आमीन। क्या आप उसका विश्वास करेंगे? आमीन। 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 आइए इसे गाएं। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उसकी सेवा करेंगे? आमीन। क्या आप उसका विश्वास करते हैं? आमीन। 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 क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आमीन। क्या आप उसकी सेवा करेंगे? आमीन। क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? आमीन। 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 ओह, मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्या आप नहीं करते? ये क्या है? विश्वास के द्वारा, बुद्धि से नहीं। हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। क्या ठीक बात है? ना कि बुद्धि के द्वारा, ना ही ज्ञान से, मेरे आत्मा के द्वारा, प्रभु ने कहा। अब उन्हें उस कलीसिया में समा जाने दें। वो तांबे का तार जो कि चालक है, अब एल्युमिनियम का तार चालक नहीं है, समझे? ये नहीं है, नहीं। रबड़ के दस्ताने चालक नहीं है, ये रोधी है। लकड़ी रोधक है, हम कोई भी रोधक नहीं चाहते। अब हमारे पास बहुत हैं और रोधक बनाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं, हमें चालक चाहिए, नया जन्म पाए हुए पुरुष और स्त्रियां जो परमेश्वर के वचन का विश्वास करते हैं। अब डायनोमो ने क्या कहा? मेरे नाम से पिता से कुछ भी मांगो, मैं वो करूंगा। और आप क्या करते हैं? डांट लगा देते हैं। आमीन। ये ठीक बात है, बस डांट लगा दें, बस आपको इतना करना है, तारों में बिजली आने लगेगी। क्या हुआ? वचन बड़ा होने लगता है और वो एक वृक्ष के समान हो जाएगा जो जल की नदियों के किनारे लगाया गया है। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। जो भी वो करेगा वो सफल होगा। दुष्ट ऐसा नहीं होता, दुष्ट ऐसा नहीं होता। अब पापी ना कहें, दुष्ट ये वो होता है जो होने का दावा करता है और उसके संग दुष्टता करता है। अब देखिए, ये सच बात है, दुष्ट ऐसा नहीं होता। वे धर्मियों के साथ न्याय में खड़े नहीं हो सकते, नहीं श्रीमान, वे निश्चय ही नहीं हो सकते। इसलिए समय आ गया है, बीज बो दिया गया है, यद्यपि वे जो पहले से ठहराए हुए हैं पूर्व निश्चित वहाँ केवल मार्ग है। मैं प्रकाशित वाक्य 12 ले सकता हूँ अभी और 13 और आपको सिद्ध कर सकता हूँ बस वे ही हैं। बाइबल ने ये कहा है ये मसीह विरोधी जो पृथ्वी पर आ रहा है सबको धोखा देगा। ऑल दो बार एल वे सब जो पृथ्वी पर थे इन नामधारियों और मत्सारों से वो प्रत्येक को जो पृथ्वी पर है उन सबको धोखा देगा सिवाय उनके जो पृथ्वी के रचने से पहले ठहराए हुए हैं। इसलिए भाई आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते बस आनंद आमीन। ओ मैं इससे प्रेम करता हूँ जी हाँ श्रीमान क्या आप उससे प्रेम करते हैं आमीन। क्या आप उसकी सेवा करेंगे आमीन। क्या उस पर विश्वास करते हैं आमीन आमीन आमीन। क्या आप आसपास इसका अभ्यास करना चाहते हैं आप सब मुझे ये गाना अच्छा लगता है क्या आपको नहीं ये हमारा अमर पक्षी है ये हमारा परंपरागत गाना है। ओ मुझे ये अच्छा लगता है मैं इससे प्रेम करता हूँ आइए इसे फिर से गाएं। क्या आप उससे प्रेम करते हैं आमीन। क्या आप उसकी सेवा करेंगे आमीन। क्या आप उसका विश्वास करेंगे आमीन आमीन आमीन। ठीक है आप जानते हैं कि आप आगे बढ़ते रह सकते हैं क्या आप उसकी आराधना करेंगे और वे सब आगे बढ़ते जा रहे हैं आगे और आगे। ओ हमने ये फीनिक्स में आरंभ किया था हम स्थान को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं जी हाँ श्रीमान आमीन आमीन आमीन। क्या आज प्रातः आप जुड़ चुके हैं आमीन। स्विच को चालू कर दे आमीन। आपको बिजली मिली आमीन आमीन आमीन। अब ये आगे बढ़ेगा आमीन। फल उत्पन्न करेगा आमीन। आप इसे दर्शाएंगे आमीन आमीन आमीन। ओ क्या ये शानदार नहीं है आमीन। ये बहुत शानदार है। खेद है कि आप लोगों को इतने समय तक रोके रखा परंतु मेरे अपने लिए ये एक जयंती है बस एक शानदार समय। ठीक है अगले रविवार अब हर कोई जो आसपास है अब मैं भाई लिटिल फील्ड के पास जा रहा हूँ कि थोड़ा सा वचन फैलाऊं संभवतः थोड़ा सा ये कुछ वचन लेकर और मैं संभवतः किसी वचन पर बोलूं जो यहाँ है। निसंदेह आप आने के लिए आमंत्रित हैं परंतु वहाँ उनका छोटा सा आराधनालय है 1500 कुर्सियाँ मैंने उसे समर्पित किया है अभी कुछ ही वर्षों पहले वो छोटा पड़ने जा रहा है परंतु मैंने भाई लिटिल फील्ड से प्रतिज्ञा की है कि वो एक बहुमूल्य भाई है और जहाँ तक हो सकता है अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखता है। प्रभु ने चाहा तो मैं वहाँ जाऊँगा। ये आराधनालय में भी एक कलीसिया होगी आप लोग इस आराधनालय में आए हैं वे जो आसपास और चीजें हैं और आ सकते हैं आइए बढ़ें और फिर आने वाले रविवार याद रखें भाई ऑर्गन ब्राइट यहाँ भाई रो के साथ होंगे आप भाई रो के साथ आनंद लेंगे। ठीक है अब आइए सभा को भाई नेविल को देता हूँ देखिए उनके पास हमें बताने को क्या है। प्रभु आपको आशीष दे।